نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم دور قرآن 2020 میں پارہ نمبر 28 کا آغاز کریں گے اور اس کے آغاز سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ 27 پارے یعنی پچھلے پارے میں ہم نے جو پڑھا اس کا اس پارے کے ساتھ ربط کیا ہے. ہر پارہ ایک چین ہے, ایک کڑی ہے, اور اگر کڑی کو کڑی میں نہ ملایا جائے تو چین ٹوٹ جاتی ہے. افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج سب تو نہیں لیکن اکثر قرآن پاک کو اسی طرح سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور سنتے اور سناتے ہیں کہ ہمارا رب نہیں بنتا. تو سورت الحدید جو آخری سورت تھی 27 پارے کی, اور حدید لوہے کو کہتے ہیں, کہہ لیجئے کہ لوہا لاٹ سورت ہے. کس طرح دل میں ایمان کی میخیں ٹھوکی جاتی ہیں اور کیا کچھ نہ ہمیں بتایا اور کہا گیا کہ تاکہ اس کے اوپر نظریں رکھ کر ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ڈر جائیں. اور جب انسان یہ باتیں سنتا ہے تو پھر ایک دم اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اپنے آپ سے پوچھئے, کیا وہ وقت آ چکا کہ میرا دل اسلام کے لیے کھل جائے؟ کیا قرآن پڑھتے وقت میری آنکھیں نم ہوتی ہیں, میرا دل ڈر جاتا ہے اور میرے مسلس میں نمنس آ جاتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ بالکل ایسے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں جیسے کہ بس آپ کوئی دنیا کی کتاب پڑھتے ہیں تو پھر یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ احکامات اندر نہیں جا رہے. 27 پارے پڑھ لیے, کیا کوئی حکم مجھے سمجھ آ گیا؟ کیا میں نے کچھ اپنے اندر تبدیلی کی نیت کی؟ کوئی ایک خوبی جو پہلے نہیں تھی اس کو اپنے اندر ڈالنے کی ابھی نیت کرتے ہیں؟ اور 3 خرابیاں پچھلے 10-10 پاروں کو لے کر 30 پارے تک اپنا گول بنا لیجئے کہ ہر 10 پاروں کے ساتھ ایک ایک خامی چھوڑنی ہے. دیکھیے کیا فائدہ ڈاکٹر پہ جانے کا, دو دو تین تین گھنٹے دوا لینے کے انتظار میں, دکھانے کے, پرسکرپشن حاصل کرنے کے, اگر آپ نے وہ دوا خریدنی نہیں ہے پہلی بات, پھر خرید لی تو گھر میں لا کے چھوڑ دی یہ دوسری بات ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان دعاؤں کا. قرآن کے پڑھنے کے وقت کو آپ لے لیجئے کہ آپ ایک ڈاکٹر کی دکان پہ بیٹھے اپنی اندر کی بیماریوں کو چیک کروا رہے ہیں. مجھے یہ تو نہیں, مجھے وہ تو نہیں, میرے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں. اور الحمدللہ قرآن سے بہترین حکیم کوئی نہیں, کیونکہ اس کا تو نام ہی الحکیم ہے. اور جب اس کو حکمت کے ساتھ پڑھتے سنتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے. لیکن پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں اب کیا خریدنا چھوڑو, پیسے لگیں گے. ڈاکٹر کا نسخہ تو 3-4 ہزار کا ہوگا, بہتر ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں. اور اگر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں نا, پیسوں کو نہیں دیکھتے, صحت بھی تو ہوگی, اور وہ دوا لے آئیں تو آپ کہتے ہیں کڑوی پڑی ہے, میٹھی نہیں ہے, کیپسول تو میں کھاتی نہیں اور سیرپ تو مجھے اچھے نہیں لگتے, تو پھر بتائیے کہ بیماری کا کیا ہوگا؟ بس اس کو اگلے قرآن کے سفر کے ساتھ جوڑ لیجئے. اگر آپ نے, میں نے قرآن پاک کے ان مشوروں کو جو اس نے ہمیں دیے اور اللہ تعالیٰ دیتا ہی رہتا ہے, اگر اس کو لے کر اگلی زندگی میں کڑوی میٹھی گولی دوا کھانے کی نیت نہیں کی اور ارادے نہیں کیے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. آج بڑی زبردست آیت آنے والی ہے سورت منافقون میں, کانپ جائیں گے آپ ہی سن کر, یقین ہے مجھے. اللہ کے حکم سے ابھی ہم پارہ شروع کرتے ہیں, اگلا تو پھر آپ کو بتاتی ہوں. پھر دوسری چیز بہت ہی ضروری ہے جو میرے آپ کے لیے, اور وہ کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کل قیامت کے دن جب پل صراط پہ ہوں گے تو کیا ہوگا, کیا دنیا میں جو سنا اس کے اوپر ساتھ ساتھ عمل کیا. آپ دیکھیے کہ جب عمل میں دیر کرتے ہیں نا تو دل سخت ہو جاتے ہیں, پھر حق کے آگے جھکنا نہیں بندے کو آتا, پھر اس کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. مردہ زمین کو زندہ کرنے والا رب آج ہمارے آپ کے دلوں پر بھی قرآن کی یہ بارش کر رہا ہے, اس وقت دلوں کو نرم کیجئے تاکہ کل پل صراط کے اندھیروں سے بچ جائیں. کل بھی بات تھی اور اس پارے میں آج 28 پارے میں بھی آپ کو پل صراط کا ذکر ملے گا. ایسے لگ رہا ہے کہ قرآن پاک کے سفر کے بالکل آخری مرحلوں میں آپ کو مجھے آزمائش کی آخری گھڑی جو پل صراط ہوگی اس پہ روک دیا جا رہا ہے. ہم ذہنی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے تو وہیں پہنچ جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دعوت دیتا ہے کہ سوچو. اور ہم نے 27 پارے میں جو بات دیکھی تھی کہ ہماری ہدایت معلوم ہو جانے کے باوجود بھی اس کو اختیار نہ کرنے کی رکاوٹ, اے لمو جان لو, ये दुनिया की ज़िंदगी अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबों व लाफों व तफाखुरों बैनकुम व तकासरों फिल अमवाली व लौलाद। वो पांच मराहिल बता दिए जो अक्सर हमारी हिदायत के तरफ रास्ते की रुकावट है। आज का ये पारा उसी रुकावट से शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी के हर मरहले को संजीदगी से लो। ये ना करो कि दुनिया की कामयाबियों के चक्कर में अल्लाह के हुक्मों को पीछे डालते जाओ और दुनिया 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 तुम्हारे दिल दिमाग में दुनिया और ख़ुद को फितनों में डाले जाओ। अभी नहीं अगले साल, अभी नहीं 50 साल बाद, अभी नहीं शादी कर लूँ, अभी नहीं बस हज कर लूँ, फिर उम्रा कर लूँ, अच्छा ईद गुजार लूँ, तो अल्लाह ताला कहते हैं इनको छोड़ दो। फतन, तुम निफाक के जो चार मरहले देखे थे उसको जहन में ले आइए। अगर डेली डेली का शिकार हैं, अगर डाउट्स हैं, इफ्स एंड बट्स हैं, तो फिर हाल क्या होता है इंसान का कि वो दुनिया में रहते हुए भी इबरत नहीं लेता। और आज उम्मत मुस्लिमा इस चीज़ की एक मुँह बोलती तस्वीर है। बचपन से लेकर बुढ़ापा आ जाता है हमारे ऊपर, अर्जल उम्र तक आ जाती है, लेकिन हमारी सोच नहीं बदलती। और अब फिर होता क्या है कि जब इस दुनिया से आगे जाते हैं तो उस वक्त फिर एक ही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह एक बार वापस भेज दे। तो आज के पारे का जो थीम है वो है मसूलियत की कमी का फितना। मैंने जान के मुश्किल लफ्ज़ पहले बोला क्योंकि अक्सर को ये लफ्ज़ समझ नहीं आता, तो ज़रूरत है कि पहले इस लफ्ज़ को समझेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो अहलो एयाल का फितना, मसूलियत का फितना, जौज और औलाद का फितना, और जौज में शोहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शोहर है। तो आज की हदीस साथ ही लीजिए, सही बुखारी की रिवायत है 7138, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयति ही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक निगेबान है और हर एक से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। पस इमाम यानी अमीरुल मोमिनीन लोगों पर निगेबान है और इससे इसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। मर्द अपने घर वालों का निगेबान है और इससे इसकी रियाया के बारे में सवाल होगा, और औरत अपने शोहर के घर वालों और इसके बच्चों की निगेबान है और इससे इनके बारे में सवाल होगा। तो रुकिए इसी हदीस पे गौर कीजिए, ये पारा किस तरह से आपको मुझे मसूलियत की कमी का जिक्र करने पे माइल कर रहा है, और इससे क्या पता चला कि माँ जिम्मेदार, बाप से सवाल होगा। और यहाँ एक छोटी सी बात कहूँ कि आज का पारा ब्रदर्स के नाम है, बापों के नाम है, वो भाई हों के वो बेटे हों, और ख़ास तौर पे वो जिनकी औलादें जवान हैं। आज पूरे पारे में आपको जवान औलाद और माँ बाप, और ख़ास तौर पे रंग बाप का। और मज़े की बात देखिए कि इस पारे में हम 9 सूरतें पढ़ने वाले हैं। मैं एक रब जोड़ना चाहूँगी ताकि आप इस मसूलियत के लफ्ज़ को भी समझ सकें और इस फितने को भी समझ सके। पहली तो बात है कि इसमें मौलाद और माल के फितने का लफ्ज़ भी पढ़ने वाले हैं। फिर आप देखिए कि मुझे से लगता है कि 28वां पारा हर साल जब भी बोलती हूँ तो साथ एक जुमला बोलती हूँ कि दीन और घर साथ साथ। आप मैं सिर्फ दीन दीन का नाम लेकर अपनी नमाजों से शुरू करके पढ़ने पढ़ाने से लेकर फिर आगे रास्ते के काम करने के नाम पर घर को इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरह ब्रदर्स भी, चाहे वो कमाने का नाम लें और बड़ी बड़ी मीटिंग्स और उनके बड़े सफ़र हैं बाहर की दुनिया के, या फिर तबलीग के नाम पर, या अपने किसी और सोशल वर्क के नाम पे, घर को पीछे नहीं डाल सकते। घर, घर और घर, होम स्वीट होम, ये आपकी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। आप देखिए कि पहली सूरत का नाम है मुजादिला, यानी मैंने हर साल ही करती हूँ, लेकिन दोबारा आपके लिए भी जो गौर व फिक्र किया तो आप देखिए कि इस पारे की सूरतों में मुजादिला, मुमतहना, अलजुमा, अगर ग्रामर के अतबार से देखें तो फेमिनन है, जिसको आप और कह सकते हैं औरतों के नाम पे। दूसरी बात देखिए कि सूरत मुजादिला में एक औरत है और एक मर्द है। औरत का नाम खौला है, बड़ी उम्र की औरत है और शौहर भी बड़ी उम्र के हैं, और वो शौहर बीवी को कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो उस दौर की रस्म के मुताबिक माँ बना देती है, तलाक की एक किस्म बनती है, आस बिन सामित। यानी यहाँ भी एक कपल की बात है, वो क्या है, वो सूरत के साथ चलेंगे। सूरत हशर में चल जाएं, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगत। अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने बच्चों की सिर्फ ये दुनिया के मुस्तकबिल की फिक्र ना करो, बल्कि आज के बहुत बड़े कल के बाद जो एक बड़ा दिन उनके ऊपर लेगद के नाम पे आ रहा है, गदो कल टुमारो, उसकी फिक्र करो। सूरत मुमतहना है, इसके आगे बैत का जिक्र है, औरतों के मामलात, कैसे औरतें हक महर को पाएंगी। और इवन एक काफिर औरत और एक मुस्लिम औरत भी अगर अपने शौहर के पास नहीं रहती या नहीं रखी जाती तो उसको उसका हक महर दिया जाएगा, यानी औरतों के मसाइल। आगे चलते हैं तो सूरत सफ है। मन अंसारी लल्ला। अंसारुल्ला बनने के रास्ते में अमूमन घर वाले ही होते। फिर इसके बाद देखिए सूरत जुमा। ऐन खुतबे के दौरान कंसाइनमेंट आता है और कई दिन के मुंतजर लोग भूल ही जाते हैं कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं, और चले जाते हैं। ये किसकी मोहब्बत में होता है? हर मर्द जानता है कि जो वो कमा के लाता है उसका 90% वो बीवी बच्चों पे लगाता है। तो बीवी बच्चों के खाने पीने, वो कैसे काम करेंगे क्या, मर्दों का एक बहुत ही खूबसूरत अमल, अल्लाह ने उनको कवामियत का दर्जा दिया। तो वो मर्द उस वक्त अल्लाह का हुक्म भूल कर और फौरन चले गए कि हम जल्दी से ले लें, ऐसा ना हो कि दूसरे ले लें और हमारे हिस्से में कुछ ना आए। उसके बाद देखिए मुनाफिकीन सूरत, जिसको आप कह सकते हैं कि बड़े जिगरे के साथ सुनने वाली सूरत है। कमज़ोर दिल हजरात ना सुने, पहले दिल मजबूत करें फिर सुने। इसमें तो आपको दिखेंगे ये दो फितने, कैसे इंसान अपने बीवी बच्चों की मोहब्बत में या शोहर और बच्चों की मोहब्बत में निफाक का शिकार होता है। फिर उसके बाद सूरत तगाबुन है। क़यामत के दिन औलादे नेकियां खा जाएंगी। जी गबन का दिन है, आप सोच कुछ और रहे हो कुछ और रहे। और इसमें फितनों और आजमाइशों की बातें भी हैं। फिर उसके बाद देखिए सूरत तलाक, जिसको निसाए सुगरा कहते हैं, छोटी सूरत। ये तो है ही औरत मर्द और घर की बात है। और आखिरी सूरत देखिए तहरीम। नबी के घराने में से बातें लाकर आपको मुझे बता दिया कि चाहे बीवी नबी की क्यों ना हो, वो लूत अलैहिस्सलाम है या नूह अलैहिस्सलाम है, अगर उसका अपना अमल ठीक नहीं है तो नबी की निस्बत उनको फ़ायदा नहीं देगी। और इसी तरह फिर फिरौन की बीवी इमरात फिरौन का नाम लेकर बीवी आसिया को रोल मॉडल बना दिया कि शौहरों का नाम लेकर बेदीन मत हो। किसी औरत का शौहर फिरौन से ज़्यादा जालिम और शायद उससे ज़्यादा पैसे वाला नहीं हो सकता, लेकिन जब बीबी आसिया के अंदर हक और ईमान आ गया, सच आ गया, पहचान गई मिम्मा रफू मिनल हक की वो कैफियत जो सातवें पारे की पहली आयतों में देख कर आए, वो पैदा हो गई, तो वो फिरौन से नहीं डरी। वो तो धमकियां दे रहा था और ये कह रही थी कि रब नीलिंदा का बईत अनफिल जन्ना, बईत की दुआ भी है आज इस पारे में, जन्नत में घर बनाने की दुआ है। लिखिए बड़े शौर से एक जैम। बीबी आसिया ने दुनिया में रहते हुए जन्नत का घर मांगा था और हदीस में आता है कि अल्लाह ने उनकी जान निकलने से पहले आसमान पे उनका महल उनको दिखा दिया था। आपने मैंने इस बारे को इसलिए पढ़ना है कि मेरा घर मेरी जन्नत बने। और घर को जन्नत बनाने में जितना औरतों का हिस्सा उतना मर्दों का हिस्सा भी है। ठीक है, औरतें ज़्यादा वक्त घर में रहती हैं, लेकिन मर्दों का मेयार, मर्दों का अखलाक और उनकी बातें, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से बेहतरीन है, और मैं अपने घर वालों में सबसे बेहतर हूँ। बाहर की दुनिया में अखलाक बहुत अच्छा है, सेक्रेटरी के साथ हेलो हाय बाय है, फ़ोन कॉल्स बड़ी प्यार मोहब्बत वाली हैं, घर में आते ही क्यों बरस पड़ते हैं, मूड क्यों ख़राब होता है, अक्सर मियाँ बीवी एक दूसरे से उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं। और आप देखेंगे ख़ास तौर पे सूरत मुमतहिना में कि एक सहाबी रसूल हातिब बिन अबी बिलदा, बीवी बच्चों की मोहब्बत ने उनको एक ऐसी गलती जिसको इज्तिहादी गलती कह के अल्लाह ने माफ़ भी फरमा दिया, और चूँकि बदरी सहाबी थे तो उनकी तो नेकियां अल्लाह ने पहले ही रजिस्टर्ड करके रिजल्ट अनाउंस कर दिया था कि अब कुछ भी कर लें इनको नहीं छोड़ना, लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई। वहाँ भी बीवी बच्चों की मोहब्बत ही जहाँ पारे में आएगा वो देखेंगे। और मज़े की बात है कि इस पारे में बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं उंगलियों पे भी गिनूँ तो आपको शायद टू मच ना लगने लगे, यानी स्टोरीज हैं। अगर हौला और आस बिन वाइल की स्टोरी है मुजादिला में, तो मुमतहना में आप हातिम बिन अबी बलता की कहानी पढ़ने वाले हैं। और इसी तरह सूरह तहरीम में अल्लाह के नबी के घर की कुछ कहानियां हैं और बीच बीच में कुछ और वाक़यात भी हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि मालिक बीवी बच्चों के तकाजे पूरे करने की तौफीक दे। शौहर और बच्चों के बारे में मुझे कल ना पकड़ना, याद रखिए अल्लाह के हक भी हैं लेकिन बंदों के हक भी हैं। और माँ बाप के बाद अगर एक औरत जिस चीज़ की मुकल्लफ है वो शौहर है, लेकिन वो शौहर कैसे, ये भी हम देखेंगे। आखिरी सूरत यानी हम जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत तहरीम, तो उसमें एक लंबी लिस्ट दी है अल्लाह ताला ने, और वो लिस्ट आप अभी से नंबर नोट करना चाहें तो कर लें, वहाँ पहुँचेंगे तो पता नहीं उस वक्त तक तो आप थक ही चुके ना हों कि ये हैं वो खूबियां जो आप अपने बच्चे के लिए जब लड़की ढूंढने जाती हैं तो उसमें ढूंढेंगे, यानी नेक बहू ढूंढने के लिए, या अपने बेटे के लिए अच्छी बीवी ढूंढने की जो लिस्ट है आपके पास, वो आयत नंबर 5 में सूरत तहरीम में है। मुस्लिमातिन मोमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन वअबकारा। मुसलमान ईमान वालियाँ, कनूत वालियाँ, आजजी और दवाम के साथ बड़ी डाउन टू अर्थ और तौबा करने वालियाँ, यानी अगर पिछली ज़िंदगी में कुछ उनसे गुनाह हो गया तो कोई बात नहीं, तौबा करने वालियाँ, और आबिदात अबूदियत के रंग में रंगी हुई बच्चियाँ, और साइहातिन रोज़े रखने वालियाँ, हाँ फिर से ये बातें वाबकारा वो कुंवारियाँ हों या फिर शादीशुदा हों। अल्लाह ने वो दो लफ्ज़ सबसे पीछे इस्तेमाल किए हैं जो हम सबसे पहले करते हैं। आप कहेंगे बस ज़रा जल्दी बोली, ठहरे ठहरे जल्दी मैं लिख लूँ, 1 2 3 4 6 7, तो एक जुमला सुनिएगा। ऐसी बच्ची को लाने से पहले ये देख लीजिए आपका बच्चा क्या, क्या इतनी खूबसूरत और तकवा वाली बच्ची को संभाल लेगा आपका बेटा, कितना बड़ा मुत्तकी मोमिन दिल का मुजाहिद शख्स चाहिए होगा ऐसी बच्ची के साथ रहने वाला। और अगर आपने अपने बिगड़े और माहौल के गलत असर में आए हुए बच्चे को ऐसी बच्ची ला दी, वो रात को रो के सोएगी, एक आंख से रोएगी एक से हंसेगी, क्योंकि आपका बच्चा उसकी कदर नहीं करेगा। ये गलती पढ़ेंगे हम इस बारे में, बस माँ बाप रिश्ते करते कराते ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं कि फिर वो बच्चियाँ रोती हैं। आप देखिए कि जितना बड़ा डायमंड होता है ना, उसको जड़ने के लिए उतना ही बड़ा सांचा चाहिए, उतना ही आप सोने में या प्लैटिनियम में डालते हैं, आप लोहे के अंदर डायमंड कभी नहीं लगा देखेंगे, ज़रा सा हाथ को लगा कर उसको मोड़ के अंदर से डायमंड निकाल लेगा। तो अगर बच्चियाँ डायमंड्स वाली लानी है आपने, तो आपके अपने बच्चे भी मजबूत स्केल्टन वाले होने चाहिए, तो बेजोड़ शादियों का मौजू भी आएगा इस बारे में। और फिर कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने बच्चों को घर से आग से बचा लो। ये तो है अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे का एक छोटा सा आपको रब्त और इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं जो असल में मकसद हयात था। आप मैं पिछले पारे से एक फ्लो चार्ट शुरू कर चुके। कुरान पाक हमसे क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि हम अल्लाह के बंदे बन जाएं। अबदियत, अबूदियत और इबादत, ये तीन लफ्ज़ हैं जिसके अंदर पूरी इबादत का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको अगर आप तफसील से पढ़ने चाहें अगर, तो उसके लिए कम अज़ कम आपको 10 से 15 दिन चाहिए सिर्फ बंदगी रब को देखने के लिए। और हम पीछे देख चुके, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, और ये चलता रहेगा। ये वो तकाजा था जिसमें आपको अपनी फिक्र थी, और होते होते आपने इल्म सीखा, आपने अंदर संजीदगी रखी, फिर आपने यतलु अलैहिम आयातिही युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा और वयुज़क्कीहिम के सारे प्रोसेस से खुद को गुजारा, कुरान का एक कोर्स कर लिया, जिसको आप सबीलुल जन्ना कहें या कुछ और कहें। आज है दूसरा तकाजा, तो लिखिएगा आज के पारे किस थीम का, और हमसे जो मतलूब रवैया उसका रब्त क्या है। दूसरा तकाजा कुरान का हमसे ये है कि हम शहादते हक का काम करें, इस दुनिया में हक के लिए जिए। पहले अपने हक को पहचान लिया, आपके अंदर बंदगी का रंग आ गया कि अल्लाह अकबर इन्नी असगर, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, अमल था समेना व ताना हो गया, जितना इल्म लेते जाते हैं अल्लाह ताला ये चीज़ें आपके लिए आसान कर देता है। और पिछले पारे में हम देख चुके हैं कि दीन से अजनबियत के फितनों ने आज हमें कहाँ खड़ा कर दिया, और होते होते ईमान इतने कमज़ोर हो गए कि हराम क्या सिर्फ मकरूह चीज़ से भी हम नहीं बच पाते। तो शहादत हक का पहला महाज घर है, पहली मुखालफत आपको घर वालों से सुननी पड़ती है अपने नफ्स को दबाने के बाद। देखिए जब हम अल्लाह का बनने चाहते हैं ना, यानी फिर पिछले ही सांचे पे गौर करें, खुद कुरान सीखना भी कोई आसान काम नहीं है। कौन सुबह सुबह उठकर बैठे, कौन आंखों में पानी के छंटे दे, जैसे इस वक्त भी आप में से बहुत सारे लोग अमेरिका और कनाडा के बिल्कुल फजर के करीब के वक्त पे सुन रहे हैं। इसमें आप लिख लीजिए बंदगी रब के नीचे एक बड़ा सलव लिख लीजिए, जिहाद बिन नफ्स चाहिए होता है। ये दीन की एक तस्वीर है, और अफसोस के साथ कहूंगी कि आज हमारी तस्वीरें अधूरी हैं, आज हमें पूरे दीन का सांचा नहीं पता। तो ये चंद लफ्ज़ अगर ना भी याद रहे तो बाद में सुन के लिख लीजिए, अभी सिर्फ समझिए। सबसे पहले बंदा जिहाद बिन नफ्स करता है तो फिर रब का बंदा बनता है। जैसे बच्चा पढ़ता है, हिफ्स करता है, सुबह को उठता है, तो मेहनत कर रहा है ना, अपने आस पास लड़ता है। जब आप अपने बन रहे होते हैं ना, जब आपके अपने अंदर दीन की सारी चीज़ें आ रही होती हैं ना, तो उस वक्त आपको फिक्र बहुत होती है इस बात की, मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करूँ। इसके बाद अगला मरहला जब शुरू होता है, आपको अपनी फिक्र लगी, आपने अपनी नमाज ठीक की, अपना अकीदा ठीक किया, दिन ब दिन कहा अल्लाह मैं कितनी जाहिल हूँ, मुझे ये तक नहीं पता कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के 23 सालों में क्या चीज़ कब हुई। अल्लाह मैं कितनी ना समझूं कि मुझे ये तक नहीं पता कि इस्लाम में अकीदा पहले आता है कि इबादत आती हैं कि और ये फ़र्क क्या है फ़िक्र और अकीदे का, और ये कुकले बात के और मामलात के और अखलाकियात के, क्या मुझे रूट टू फ्रूट तक पूरे इस्लाम की तरतीब पता है? आप शर्म से पानी पानी होते हैं। तो इस वक्त आपको जिहाद बिन नफ्स करना होता है। लोग आपको बुरा नहीं कहते, क्यों? वो कहते अच्छा ही है ना, कुछ पढ़ ही रही है ना। फिर माँ बाप है तो वो तारीफ़ें करेंगे, मेरी बच्ची इधर पढ़ रही, वैसे तो आज के दौर में कमी होती है। हाँ, अगर वो किसी यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का लफ्ज़ लिख देंगे दीन वाले साथ, तो फिर लोग कहेंगे यस मेरे बच्चे फलां यूनिवर्सिटी में, वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। खैर, इसके बाद वो पारा, वो हक जो इस वक्त हमारे सामने है, यह है शहादत अलन्नास का। जब ये काम बंदा करता है ना, इस वक्त जो मुखालफत है, तो इसमें सबसे पहली मुखालफत घर वालों से होती है। और याद रखिए कि शहादत अलन्नास का काम कौली शहादत से भी होगा और अमली शहादत से भी होगा, और ये काम करना पड़ेगा क्योंकि वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास। ये काम करने के लिए, ये आप लिख लीजिए, पहले अपनी फिक्र थी और फिर अब घर वालों की लग गई। ये हो नहीं सकता कि आप अकेले बैठकर पिज़्ज़ा खाएं, नामुमकिन है। और शौहर और बच्चे देख रहे हैं या बीवी बच्चे देख रहे हैं, और आप बाजार से ऑर्डर करें और मज़े से घोल कर पेप्सी भी पकड़ी हुई और साथ आप बर्गर खा रहे, ये नहीं होता। ये हमारे खमीर में नहीं है, ये ख़ास तौर पर हमारे देसी कल्चर में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल दीन सीखने के बाद पहले तो बंदा अपनी उलझनों में रहता है। जैसे आप में से जो सिस्टर्स और जो साथी पहली दफ़ा इस वक्त दौरे कुरान सुन रहे हैं ना, वल्लाही मैं आपके दिल की कैफियत को ऐसे महसूस करती हूँ कि जैसे बिल्कुल एक मुस्तरब इंसान, बेचैन, अपने ऊपर गुस्सा भी आता है, कभी मायूसी होती है, कभी इंसान चला जाता है डिप्रेशन में कि मैंने नहीं सही होना, मैं बहुत ख़राब हो चुकी हूँ, मैंने बड़े गुनाह किए हैं, ये वो। खैर, परेशानियाँ तो लग गई, चैन नहीं है इस दुनिया में, ये आगे जाके आएगा। खैर, ये ऐसी जैसे घर गंदा है, समझ नहीं आता आपको मैं किधर से शुरू करूँ। किचन भी गंदा, वार्डरोब भी गंदी, खाना भी पकाना है, वॉशरूम भी गंदे, मेहमान आने, टिक 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 टिक। इस कैफियत में जब बंदा आता है ना, तो वो बस अपने से जगलिंग कर रहा होता है, उसको दूसरों की इतनी फिक्र नहीं है। वो कहता है अगर मैं ठीक हो जाऊँ ना, मेरी नमाज ठीक हो जाए, मुझे तर्जमा आ जाए, हाय बस मुझे ये तहियातुल्लाह का समझ आ जाए, अच्छा ये रोज़ा किससे टूटता है किससे नहीं टूटता, अच्छा मैंने हज नहीं किया, ये नहीं वो नहीं, इसमें तो आपकी अपनी अंदर की जंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबीलुल जन्ना जैसे किसी भी तफसीर कोर्स को पूरा करने के दौरान आप 80% खुद तक ठीक हो चुके होते हैं। दो चीज़ें इसके अंदर लाजमी है जिस पे हम बहुत जोर देते हैं अपने कोर्सेज में, वो है युज़क्कीहिम, तज़किया, जो ड्यूल एक्शन है, अच्छी बातों को डालना और बुरी बातों को निकालना। आज हमारे मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मसला है, अच्छी बातें करो, ये वजीफा इतनी दफा, ये वजीफा ये कर लो, ये अच्छा काम, इस पे जन्नत में महाल, उसमें बुराइयों की तरफ नहीं लाते हैं। कभी आपने ऐसी स्लाइडें देखी? गीबत से इंसान की नेकियां जाया हो जाती हैं क्योंकि लोगों को उछलती कूदती नेकियां, टिप टॉप, ये सूरत पन सूरा, ये पढ़ लो सूरह वाकया, पढ़ लो तो ये सूरत अर रहमान पढ़ो तो मरीज, ये चीजें लोग आम करते हैं। कुरान के बाद जब आप अपने आप को कुरान पाक के आगे ऐसे पेश करते हैं ना कि जैसे एक मरीज अपने आप को वेंटिलेटर पर डलवा ले, ऑपरेशन थिएटर टेबल पर डाल दे, जब जो करना है, जो काटना है काट लो, जहाँ कट लगाना है छुरी लगानी, बेहोश करना मैं तैयार हूँ, और इससे भी बढ़कर लिखिए बंदगी। और ये बात इमाम गजाली रहमहुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं कि बंदगी ये है कि बंदा खुद को रब के आगे इस तरह डाल दे जैसे मुर्दा खुद को नहलाने वाले के आगे डाल देता है, मोड़ लो तोड़ लो पेट दबा दो उसको बेरी के पत्तों से नहला दो, यानी रिजेंटमेंट नहीं होती, रेजिस्टेंस का छोड़ देना, ये बंदगी है। अपने आप से पूछिए क्या अल्लाह के आगे इतनी हूँ घुली हुई, बोनलेस मीट हूँ, कचौके लगा लो, सिरका डाल दो, नमक डाल दो, मिर्चे डाल दो, खूब उसके अंदर फोक के साथ कट 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 लगाओ, गोश्त नहीं बोलता, तो बोनलेस मीट बनना है बंदगी है रब। इसके बाद अगला दर्जा आता है कि हाय मेरे घर वाले क्यों नहीं ठीक, मेरे बच्चों की नमाज किधर, मेरे मियाँ नमाज क्यों नहीं पढ़ते, ये मेरी सास जो बड़े उम्र के होने के बावजूद गलत चीज़ों को क्यों देख रहे हैं, ये है जो शहादत अलन्नास है। अब आप क्या करते हैं, दूसरों को भी अल्लाह से जोड़ेंगे, ये इब्तदाई दर्जा होता है। यानी इस शहादत के लफ्ज़ को दो हिस्सों में पहले समझिए, दूसरों को अल्लाह से जोड़ना ये है शहादत अलन्नास का इब्तदाई दर्जा, तबलीग, फिर खातर हुआ हालात के मुताबिक आप अपने कॉल से अपने अमल से ये काम करेंगे, और इसका आखिरी दर्जा है इस रास्ते में जान भी देनी पड़ जाए, हालात ऐसे हो जाएं तो फिर बंदा इस रास्ते में शहीद हो जाए। आज आपको फ़र्क समझ आएगा, जो पूरा कुरान पढ़ने के दौरान कई दफ़ा आपने सुना होगा शहादत अलन्नास और शहीद, इनका आपस में रब्त क्या, तो रब्त आज आपको समझ आना चाहिए। इस रास्ते में दूसरों को अल्लाह से जोड़ने में, तबलीग करने में, तकलीफ़ सहने में जो मुश्किल आए सब्र से बर्दाश्त करो। तभी तो कब अस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, आप जाके दूसरे पारे को बाद में छांटिएगा और आपको भी ये बात सुनकर झूम जाएंगे आप इंशाल्लाह, अगर आप वाकई थोड़ा सा दस्तरस रखते हैं कुरान पे कि जहाँ बात शहादत अलन्नास की हुई दूसरे पारे में, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, और वो जूँ ही बात पूरी होती है उसके साथ वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। ये कौन सा सब्र है, किसी मरने वाले की तो बात ही नहीं हुई, कोई बीमारियों की तो अभी बात ही नहीं आई, तो वो शहादत अलन्नास के तकाजे पूरे करते हुए सब्र करो। जब शौहर गुस्सा करते हैं किसी बात पे सब्र करो, जब बीवी को आपका तबलीग करना अच्छा नहीं लगता तो गुस्सा नहीं करो, सब्र करो, और सब्र नहीं आ रहा तो दो नफिर पढ़ के अल्लाह के साथ रो धो लो, और साथ ही आप देखें आगे तो शोहदा की बात है। वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता, उनको मुर्दा न कहो जो अल्लाह के रास्ते में चले गए, तो वो है वहाँ रब शहादत अलन्नास का आला तरीन दर्जा। फिर जान जाती है तो जाए, देखिए पहले बंदा पसीना बहाता है फिर खून बहाएगा। आज अगर आप लोगों को दीन से जोड़ने, तबलीग में, दावा में, दावत में, दाई अल्लाह नहीं बनते, कल कैसे जान देंगे आप, नाउज़ बिल्ला। आज हम फजर के लिए नहीं उठते कि अल्लाह के आगे खड़ा होना है, कल दुश्मन आ जाए फजर के वक्त हम उठेंगे, नहीं उठेंगे। आज वो बच्चे जो बाप के पुकारने पर फजर के लिए नहीं उठते, तो बाप को ये हक है कहने का कि बेटा अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया तो तुम फिर भी नहीं उठोगे फजर के करीब। अगर आप समझ रहे हैं तो इंजॉय करेंगे कि असहाबे सुफा फुल टाइम कुरान सीखने वाले, हदीस के लिए खुद को डिवोट करने वाले लोग 70-80 भी थे, किसी दौर में 200-300 भी हुए, आते जाते रहते होंगे लोग, ये स्टैंडिंग आर्मी थे। जब मुस्लिम हुकूमत बनती है ना, तो उसमें ये कल के पारे के साथ कुछ चीज़ें लाऊंगी, अभी तो सिर्फ इस पे रहे, यानी मुसलमानों की अलग से आर्मी नहीं होती। जैसे आप कहते हैं पाकिस्तान की आर्मी, अमेरिका की आर्मी, इंडिया की आर्मी, अलग आर्मी कहीं भी मदीना में आपको नहीं दिखती। आर्मी कौन थे जो कुरान पढ़े हुए थे? अल्लाह के नबी ने पहले कुरान पकड़ाए, फिर तलवारें पकड़ाई, फिर तीर पकड़ाए, 13 साल मक्का में सब्र करना सिखाया, फिर सूरत हज में जाके कहा कि अब्बास जिन्ना, सब लोगों को कह दो कि तलवार पकड़नी पड़े, क्योंकि जब तक तरबियत नहीं होती, तलवारें पकड़ा दें तो हुदैबिया का वाक़या याद कीजिए, अगर इतने तरबियत याफ्ता न होते तो उन छुरियों से एक दूसरे को मारते और नौज़ बिल्ला वहाँ खाना जंगी शुरू हो जाती। ऐसा नहीं हुआ। जो लोग कुरान पढ़ जाते हैं वही बेहतरीन मुजाहिद हैं। वो पहले सारी ज़िंदगी लोगों के वो कुरान से जोड़ते हैं, कलम पकड़ाते हैं, कागज़ पकड़ाते हैं, और इसमें खपते खपाते हैं, ये पढ़ने पढ़ाने वाले लोग होते हैं। कह लीजिए कि ये वो दर्जा है जिसमें आप दूसरों को इल्म से जोड़ते हैं, दूसरे भी आपकी वजह से जुड़ते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये काम ज़्यादा किया जाता है, तो मैं एक जुमला बोलूँ जो मेरा ड्रीम है वल्लाही, जो लोग इल्म काम कर देते हैं, खुद भी सीखते हैं दूसरों को भी सिखाते हैं ना, वहाँ फिर जिहाद, किताल, जंगें, इसकी नौबत ही नहीं आती। जो कौम इल्म पे पैसा खर्च कर लेती है ना, उसको हथियारों पे पैसा नहीं लगाना पड़ता, इसलिए कि हथियारों पे पैसा लगाएंगे तो क्या होगा, जाने कटेंगी। आपका मेरा काम क्या था कि तबलीग का दायरा बढ़ाते। आज जो हम समझने वाले हैं ना, घर से शुरू कीजिए, एक एक को प्यार से, और याद रखिए तबलीग का काम ऐसा काम है जैसे आप अपने बच्चे के हाथ से कैंडी छीनते हैं, या अगर आपने देखा छोटा बच्चा 1-2 साल का किचन के ड्रॉ में से छुरी पकड़ाया, आपकी उस पर नजर पड़ी, हाय आपकी तो जान निकल गई, और पकड़ी भी उसने हैंडल से आगे बल्कि बाएं जहां से काटते हैं, क्या करेंगी, चीख मारेंगी, जाके छीनेंगी, उसका भी हाथ कटेगा, आपका भी हाथ कटने का डर है, आप क्या करें प्यार से। अब वो बच्चे को जू ही आप चमकता और टॉफी का रैपर पकड़ाएंगे ना, वो वहीं छुरी फेंक देगा, बस जू ही रैपर पकड़ाया, छुरी फेंकी, आप जाके उठाएं, आपने मैंने लोगों को ऐसे अल्लाह से जोड़ना है, उन्होंने गुनाहों की छुरियां पकड़ी हुई हैं, हराम की छुरियां पकड़ी हुई हैं, आपको वो बुरी लगती हैं, उनको तो मज़ा आता है, आपने उनको जन्नत दिखानी है, कैंडीज दिखानी है, रग़बत, और जिस तरीके से आप ऑल्टरनेट देते जाएंगे ना उनकी बुराइयों का, बस बच्चे गाने सुनते हैं, मिसाल देती हूँ जो एक टिपिकल क्वेश्चन, और हर वक्त थ्रिल है और घर में धमाका चौकड़ी, आप कहते गाने बंद करो, फिल्म बंद करो, ड्रामा बंद करो, टीवी नहीं देखो। अब हुआ क्या, एक तो आपकी टोन माशाल्लाह सख्त से सख्त होती गई, दूसरी तरफ क्या हुआ कि बच्चे स्टबन है, और अगर बिल फर्ज वो आपकी वजह से छोड़ भी देंगे ना, तो ऊपर गुस्से में जाकर 2 दफ़ा 3 दफ़ा अपना पाँव दरवाजे को ज़रूर मारेंगे। आजमा लीजिएगा। तो यहाँ जुमला लिखिए, छोटे बच्चों को भी हम लाड से पालते ही हैं और बिगाड़ते भी हैं कुछ हद तक, लेकिन बड़ी औलादों को अगर आपने तबलीग करनी है, और आप गलती पहले मानिए, पहले तो सजदों में रो के अल्लाह से, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, इट्स टू लेट, मैंने बहुत लेट कर दिया, मैंने इस मासूम सी बच्ची को बचपन से लेकर अभी तक टोका ही नहीं कि ये क्या पहनती है, इसकी टाइट्स को पकड़ के जला क्यों ना मैंने दिया उस दिन, जिस दिन इसको पता भी नहीं था मैं क्यों खरीद के लाई, मैंने ये हेडफोन माइक और ये वॉकमैन लेके क्यों दिया, ये आईफोन मैंने लेके क्यों दिया, मैं क्यों खुद जाहिल रही टेक्नोलॉजी से इनसे पूछती रही। पहले तो अपना रहिए, छोटी औलादों के साथ सख्त रवैया रखिए, बड़ी औलादों के साथ नरमी रखनी पड़ेगी। मैं एक मिसाल दे देती हूँ, क्योंकि शहादत अलन्नास जो इस पारे के अंदर हम देख रहे हैं ना, ये बहुत अहम है। अपने जवान बच्चों को जिनको वक्त पे आपने नहीं रोका नहीं टोका, अगर आप गुस्से से अगर उनसे लेंगे, तो वही मिसाल है कि बच्चे के आंसू छुरी छुड़ाएं, फिर वो क्या करते हैं, नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन आपके खौफ से। एक जुमला लिखिएगा, आपकी कामयाबी क्या है कि आपके बच्चे आपके खौफ से नहीं, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से नमाज पढ़े। वो 2 रकत नफिल बराए अब्बा जान ना हो कि अब्बा जी के डर से पढ़ी, ना पढ़ी तो अम्मा ने चीखना। और दूसरी बात लिखिए, छोटे बच्चे को दीन की तरफ लाने में, यानी छोटे से मेरा 7-8 साल का, ये छोटा ही होता है, एक डांट दें तो वैसे चिपक के नहीं बैठ जाते बेचारे मासूम बच्चे, लेकिन अब एक तरफ 12-13 साल आपके कद से भी ज़रा सा कद उठाती भी बच्ची और बच्चा, फ़र्क दोनों का समझिए। इमेजिन कीजिए कि आपके घर में एक पतीली है और वो खूब गंदी होगी, जल गई, आपकी मासी उसको साफ़ करती है। अब मैं इन मासियों की बात नहीं करती जो बेचारियाँ हमने मशीनें लगाई हुई हैं, वो तो उस पतीली को लेने से इनकार करेगी, कहेगी खुद ही दो खुद ही दो, बल्कि वो तो कहती मुझे दो के दो, आप गंदे बर्तन डालिए, हाँ तो फिर देखिए क्या होता है, वैसे ही गंदे होंगे, लेकिन उसको खूब रगड़ेगी क्योंकि उसके अंदर से जलापन ख़त्म करना है। लेकिन क्या अगर किसी का ज़ख्म साफ़ करना हो, तो उसको भी उसी शिद्दत से और स्टील वूल से धोएंगे? नहीं, तब तो डॉक्टर हाथ पे रुई रख लेते हैं। बस लिखिए, तबलीग करते वक्त बच्चों को और बड़े, जितना बच्चा बड़ा होता जाए अपना हाथ नरम रखिए। बच्चा बाप से कट गया तो याद रखिए कि उसको तो खुली छुट्टी मिल गई, इग्नोर करना पड़ेगा। आप सुनेंगे इस बारे में इंशाल्लाह, अल्लाह के नबी ने हातिब बिन अबी बलता की इतनी बड़ी मिस्टेक को जस्ट ओवरलुक किया। तो लीडरशिप के दर्जे पे, मसूलियत के दर्जे पे बाप है या माँ है, उनको ओवरलुक करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बच्चों से खुद को नहीं काटा, ये नहीं कह सकते छोड़ दो मेरा घर चला जा निकल जा इस घर से, नहीं कर सकते, आग करने का तो इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है। बात तो ज़रा ज़्यादा ही हो गई लेकिन ज़रूरत है। तो तज़किया का सफ़र जब घर वालों में ढलता है तो ये शहादत अलन्नास होता है, फिर इसके बाद आगे से आगे खानदान की फिक्र, सहेलियों की फिक्र, यानी मैं कहती हूँ कि मोमिन को चैन कब्र में ही आएगा, कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जी इला रब्बी की राधियतम मर्दिया। वो मौत के वक्त ये खबर सुन के जब कब्र में जाता है तो नम का नौमतिल उरूस, अब सो जा जैसे दुल्हन सोती है, इस दुनिया में तड़पेंगे, ये है बखा, ये शहादत अलन्नास की गवाही की तड़प जो है ना, ये बखा में मुब्तली करती है, जो अल्लाह के नबी के लिए कहा कि फ़ाल अल्लाह का बाख़ी नफ्सा का ला सारिम, और हर जुमे को आप सूरत काफ में पढ़ते हैं, फिर चैन नहीं आता। जैसे आपको आजकल लोगों की भूख देख के रोना आता है ना, हाय बेचारे लॉकडाउन की वजह से गुर्बत पे आ गए, खाना नहीं पानी नहीं, इस तरह दीन लेने के बाद, इल्म लेने के बाद आपके अंदर लोगों की जहालत और उनकी सूखेपन और दीन से दूरी पे रोना आता है, फिर इसमें आप चलते चलते दोस्तों सहेलियों को लेते जाते हैं और माल भी लगाते वक्त भी लगाते, तो फिर ये मरहला होता है जिसमें आप दूसरों को इल्म से जोड़ते हैं। दूसरों को इल्म से जोड़ना ये इतनी नेचुरल चीज़ है आपके खुद इल्म से जुड़ने के बाद, कि जैसे आप कह लीजिए कि एक नोन बात है कि शादी के बाद बच्चे का होना। अब इसके लिए क्या खूबियां चाहिए बंदे को? आप चाहती हैं आपके बच्चे दीन सीखें, आपके शौहर सीखे, शौहर चाहते हैं कि बेगमात सीखें, घर के बुजुर्गों के अंदर चेंज आए, इनको पता लग जाए कि ये तो अब आखिरी दौर शुरू हो गया जिंदगी का, तफाखरु बैनकुम और तकासुरु फिल अमवाली वाल औलाद, तो इनकी तो बिल्कुल ट्रेन आने वाली है, ये अभी भी मस्तियां कर बैठे हैं, अभी तैयारी नहीं हो रहे। तो उसके लिए नंबर एक, आपके अंदर खुश अखलाकी होनी चाहिए, पहले अपने अखलाक के साथ जगह बनाइए, फिर आपकी बात की जगह बनेगी। वो बच्चियां जो ससुराल में जाकर दिल मोह लेती है ना, वही जैसे अभी आपको लिस्ट लिखाई है ना सूरत हरीम की, ऐसी बच्ची किसी, मैं कहती हूँ अल्लाह रहम करे, फिरौन जैसे शौहर के साथ भी ब्याही जाए ना, और उसके ससुराल जो मर्जी कह लीजिए कि जालिम से जालिम हो, पहले अपनी जगह बनाएगी खुश अखलाकी से। लोगों को बताइए कुरान पढ़ के बच्चियां ऐसी हो जाती हैं। आप तो जो रवैया दिखाते लोग कहते हैं खबरदार आज के बाद मैंने कुरान वाली नहीं लानी, ये भी लोग कहते हैं। मैंने कानों को हाथ लगाई, जी हमने तो दीन वाली बच्ची ली थी, क्या उसने हमारी दुर्गत की। और दूसरी तरफ भी लोग कहते हैं हाफिज बच्चा लिया था, इतना जालिम था कि बेटी को मरी मारता था, हम ले आए बेटी अपनी वापस, फिर ये गलतियां नहीं होंगी। फिर दूसरी चीज हिरस, खैर ख्वाही, दूसरों को फायदा देने की तलब, तड़प। और इसमें एक जुमला लिख लें, ये सारा कुछ आप कहेंगे बड़ा है, कुर्बानी देने का जज्बा। जिस बंदे में अपनी जात को कुर्बान करने का, अपने वक्त को, अपने माल को और अपनी नींद को कुर्बान करने का जज्बा नहीं है ना, वो शहादत अलन्नास का काम नहीं कर सकता। उसको तबलीग से अलग कर दीजिए, उसको तस्बीह दे दीजिए हाथ में, जब कभी सो के उठेगा 500 दाने का सुभान अल्लाह पढ़ लेगा, या जो लोगों ने उसको बता दिया। ये कुर्बानियां दी जाती हैं, चंद खानदानों ने दीन कुर्बानियां, ताज दीन पहुंचा। हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा का घराना कैसे बिखरा, उनकी कोठी होती बिला होता, और इतनी बुढ़ापे में मिला हुआ बच्चा होता, बेबी शावर करते, उसका अकीका करते, सारे शहर को बुलाते, नीले पीले गुब्बारे लाकर बैठते, क्या मौज मस्ती थी। याद रखिए ये सारे काम जो मैंने कहे, ये कहने वाले शहादत अल्लास पे नहीं आते। कल बताऊंगी आपको तीनों स्टेप्स के बाद आपका इंजाम क्या आने वाला है। दूध का दूध, पानी का पानी, कच्चे पक्के इल्म लेकर, अधूरी बातें सुनकर, कहीं से कुछ लेकर जब दीन लेते हैं ना, तो दीन की तस्वीर पूरी नहीं होती। मेरी आज भी अधूरी रहेगी, कल पूरी होगी इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। तो अगर आप चाहते हैं कि लोगों का फ़ायदा दें, तो फिर आपके अंदर ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए, और आपको घुलना पड़ेगा, नरम होना पड़ेगा। फिर इसमें बाज़ाब्ता इल्म भी सिखाया जाता है, मसलन जैसे इल्मी तौर पर देखें तो बंदगी रब का आपको तोहफा मिलता है जब आप खुद कुरान सीखते हैं, जिसको हमारे प्लेटफॉर्म पे सबीलुल जन्ना कहते हैं, कि ये रोड टू जन्ना। लोग कुरान कहते नहीं, इसमें कुरान के साथ कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं जो आपको सिखाती हैं। अब आप ये दूसरा जज्बा कहाँ से लेते हैं, इस कोर्स को आप नूरुन अला नूर कहते हैं, जैसे वो कहते हैं ना एफ ए के बाद बी ए, बी ए के बाद मास्टर, इस तरह हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा पैकेज है। तो जो लोग अभी मैट्रिक तक रुके हुए हैं ना, ये वो मैट्रिक मेरी नज़र में वो है कि जो बचपन से लेके आज तक सीखा होता है, सुनी सुनाई का दीन, खाला जी ने ये कह दिया, मास्टर साहब ने ये कहा, मौलवी साहब ये सिखा गए, दादाजी ने कहा कुड़ियों सीधे ही बैठो, दुपट्टे लो, नमाजें पढ़ो। ये मैट्रिक पास थे हम लोग, और जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को गवाही देंगे इंशाल्लाह, अपने दिल में देखेंगे कि कुरान पढ़ने से पहले भी हम सोचते थे हमें बड़ा कुछ आता है। कई लोग आज भी कहते हैं लोग हम क्या पढ़ें, लोग परेशान हैं, आप क्यों कुरान की बातें करते रहते हैं, हमें सब आता है। वो आता है जो कच्ची पक्की वाला, और मैट्रिक पास है हम, लिख ले मैट्रिक पास वो बंदा है जो किसी भी उस्ताद के साथ नहीं बैठा, साथ दीन वाले साथी, क्लास फेलो, जिसके दीन के नाम पे, कुरान के नाम पे नहीं बने, वो मैट्रिक पास दीनदार है। और अल्लाह माफ़ करे, आज ऐसे मैट्रिक पास दीनदारों ने जीना दोबर किया हुआ इंसानों का, ये भी हराम तो ये भी हराम तो ये भी नहीं, क्या हम लोग नहीं सोचते औरतों के अपने मामलात के साथ, देखिए कितनी बेतुकी बातें, ये कपड़े पहनने नहीं है, ये करना नहीं है, ये हो गया तो ये करें इस हाल में, यानी आप सोचिए कि आज हमारे ऊपर दीन की कितनी मुख्तलिफ पाबंदियाँ थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जब सबीलुल जन्ना कर लेते हैं ना, तो एफ ए पास हो जाते हैं। आप में से जितने लोग सबीलुल जन्ना कोर्स करके घरों में बैठ गए, तो कोई बात नहीं, दे चूज इट, नो प्रॉब्लम, अल्हम्दुलिल्लाह हराम हलाल का फ़र्क मिल गया, नमाज ठीक हो जाती है, अकीदे की कमियाँ पेशियाँ नज़र आती हैं, बस आप एफ ए पास हैं। और एफ ए पास वालों को असहाबुल जमीन ही मिलना है टाइटल, खुश रहिए। अब अगले जो दर्जे शुरू हो रहे हैं ना, ये हैं शहादत अलना, यहाँ से साबिकून साबिकून है, इनको मिलने हैं प्रोटोकॉल, जो अल्लाह के रास्ते की जिद्दोजहद करे अल्लाह उसको छोड़ दे, ये कैसे हो सकता है। और आप कहते हैं तलवार पकड़ा हुआ मुजाहिद है और वो शहीद है, अल्लाह के नबी की हदीस लिख लीजिए कि जो इल्म सीखने सिखाने के दौरान दुनिया से चला गया वो शहीद है। बिस्तर पे मरी, आप आज कुरान के कोर्स के लिए नाम लिखाते हैं ना, नियत इरादे, देखिए चार चीज़ें हैं, नियत है, इरादा है, कोशिश है और रिजल्ट है। ये पहली तीन चीज़ें अल्लाह ने बंदे के हाथ में दी हैं, ये भी हम पढ़ेंगे सूरत तगाबुन में आज, याद रहा तो इशारा कर दूंगी, अभी समझ लें। आपको नियत खुद करनी है कि आपने किस दर्जे की शहादत अल्लास करनी है, या बस अपने आप को ही बंदा बनाना था अल्लाह का, ठीक है। ये जो हदीस आप सुनते हैं ना कि जो औरत 5 वक्त की नमाज और रोज़े रख ले और शौहर को खुश करे वो जन्नत में जाएगी ना, बहुत मारूफ हदीस है, ये पहले दर्जे की जन्नत मिलेगी उसको। शर्त यह कि वो शौहर भी जाने वाला, वो शौहर गलत काम ना कहने की दावत दे। लेकिन ये जो फिरदौस है जन्नत, मांगो तो फिरदौस मांगो, क्योंकि उसकी छत अल्लाह का अर्श है, और सोहन ये अगले दर्जे हैं। ये जो दो दर्जे आज उम्मत में खोए हुए हैं, ये आप 30वें पारे में इसका क्लाइमेक्स देखेंगे सूरत असर पे जाके। तो फिर आप खुद चूज कीजिए एफए के बाद बीए में दाखला लेना है कि नहीं। तो बीए में दाखले को फिर हम नूरुल्ला नूर कहते हैं, उसमें सिखाई जाती हैं टिप्स, कैसे तबलीग करनी, कैसे नहीं करनी। बाज़ाब्ता मुबल्लिग भी आप बनते हैं, और जब आप उन थपेड़ों से गुजरते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको हिकमतें भी आती हैं, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कितना बोलना, कितना नहीं बोलना। नया नया बच्चा बोलना शुरू होता है ना, सारा दिन तितबित करता रहता है। इस तरह जो नया नया कुरान पढ़ाना शुरू करते हैं उनका भी यही हाल होता है। अल्लाह ताला माफ़ करे हम सबको, रुकते ही नहीं हम कहीं। और शौक क्यों तक रोकेंगे, ये बात तो पहले किसी ने बताई नहीं जो इन्होंने आज बता दी। तो अंदर कहीं अपनी बात का बहुत होता है, तो बाहर हाल दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें दीन की तस्वीर को पूरा समझकर फिर उसमें रंग भरने वाला बना दे। और इसमें रंग भरेगा फिर इंसान सिबगत अल्लाह ही, वमन अहसनु मिन अल्लाह ही सिबगा का। अब हम चलते हैं पारे के साथ साथ चलेंगे। मेरा अला पारा तो पूरा हो गया, जो देना था ना, जो थीम था उसकी चाबियां दी हैं आपको, अभी की वर्ड्स हैं। आगे जाकर इंशाल्लाह दूसरी चीज़ों को हम लें और देंगे, और ये आसान काम नहीं है। बेड़ों के छज्जे में हाथ डालना है, ये है शहादत अलन्नास का काम। इस पे चलिए अब, ये काम करेंगे तो सुकून भी मिलेगा, इत्मीनान भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी। और इस काम को करने की ज़रूरत क्यों है, तो ले लीजिए इस पारे की थीम आयत, जो बहुत ही हसीन आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल ख़ासिरून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें। आंखें बंद करके सुने क्या कहा अल्लाह ताला ने, फिर बोल दूं, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें। मुझे ऐसे लग रहा है अल्लाह ताला शौहर बीवी दोनों को कह रहे हैं, ओ मर्दो, ओ बापो, तुम्हारे माल, और ओ बीवियो, ओ माओ, तुम्हारी औलादें। क्योंकि मर्द का मसला माल और औरत का मसला औलाद, ये दो नाम लेकर नमाजें भी छूटती हैं, जुम्मे भी छूटते हैं, और जो अल्लाह के हक है वो भी पीछे डालते हैं। तो फिर सुनिए, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें। चंद सेकंड मुहासबा कर लें, इन दोनों के नाम पे क्या क्या फ़राइज़ छूटे, और क्या क्या गलत चीज़ें और नाजायज बल्कि हराम माल भी घर में आ गया, कि बच्चों को खुश रखो। जो लोग ऐसा करें वही खसारे में रहने वाले हैं, बैंकरप्ट है वो मर्द जो अपने बीवी बच्चों के नाजायज़ मुतालबे पूरे करते हुए घर में रिश्वत ले आए, शराब बेचने पे मजबूर हो जाए, सूद के मामले में इंडल्ज हो जाए, चोरियां करे, हेरा फेरियां करे, दिखाए कुछ और बेचे कुछ। और दूसरा मसला, वन फिकु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब। जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है, तुम्हारा नहीं है, इतना अकड़ो नहीं, अपने दिए में से मांग रहे हैं, और अपने लिए नहीं मांग रहे, तुम्हारे ही लिए मांग रहे हैं। तो जब ये सोच लेंगे ना कि दिया अल्लाह ने, हर नेमत को अल्लाह से जोड़ दें, वो नेमत आपको जन्नत में मिल जाएगी वापस इंशाल्लाह। खर्च करो उसमें से कबल इसके कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए। आप इस बारे में डेथ बेड पे भी लोगों को देखेंगे, सारी जिंदगी तो कमाओ खाओ पियो मौज मस्ती इधर उधर, शहादत हक का काम ही ना कर सके, ना सीख सके, ना सिखा सके, ना इस रास्ते के तकाजे पूरे कर सके। मौत के वक्त तो फारिग बैठे, बिस्तरे मर्ग पे हैं, रगड़ रगड़ के पेड़ियां जान निकल रही है, तो वहां फिर हसरतें उभरती हैं। फरिश्ते थोड़ी सी मोहलत है, ज्यादा नहीं, सालों की मुद्दत नहीं, लौला खरतनी इलाजलित करीब, थोड़ी सी, फ्यू आवर्स, मे बी फ्यू डेज, और कुछ और क्यों भाई, क्या करोगे, बेटे बेटी की शादी करनी है, वो कोई बड़ी खूबसूरत चीज़ रिलीज हो गई है वो देखनी है, कोई नया डिज़ाइनर ने डिज़ाइन अनाउंस करते हैं उसका इंतज़ार कर रहे थे अलार्म लगाकर और रिमाइंडर्स लगाकर, नहीं वो तो पीछे रह गया। अब तो सिर्फ दो ख्वाहिशें हैं, फासद्दक वकु मिन सालिहीन, सदका देता और सालेह लोगों में शामिल हो जाता। ये हैं जी मौत के वक्त उस इंसान की ख्वाहिशें جس نے شہادت الناس کے فریضے کو پیچھے ڈالا ہوا تھا اور اپنی بھی کچی پکی باتوں کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر کچھ اور. نام نہیں دیا اللہ نے، یہ کون ہے کون نہیں، بس یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا ہے نام کلمہ پڑھنے والے کا. اب وہ کس درجے کا کلمہ تھا، لیکن بینکرپسی یہ ہے. اور صدقے کی قسمیں لینی ہیں تو بعد میں لیجئے گا. اور اسی طرح صالح بننا ہے، تین چیزیں علماء کہتے ہیں. صالح بننا یعنی ایسا مرنے والا جو یہ خواہش کرتا ہے نا کہ میں صالح بن جاؤں، تو ایک تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو نیکیاں چھوڑی بھی تھی اس کو کراؤں، بوجھ پہ ان نیکیاں. دوسری جو گناہ چپکے ہوئے تھے میرے ساتھ ان سے جان چھڑاؤں. اور تیسرا لفظ آتا ہے حج کراتا. ساری زندگی حج کیوں ٹلتا ہے؟ یہ بچوں کے خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے، ابھی ایک کا پڑھنا، دوسرے کا، اب ایک کی شادی، اب دوسرے کی شادی، اور اب سارے گھروں کے پے کرنے کے مسئلے. حج ابھی نہیں کریں گے، حج بڑا لمبا ہے، 50-60 ہزار کرون لگتا ہے، نہیں کریں گے. اور شادیوں پہ 7-7 لاکھ کرون کی لوگوں نے گواہیاں دی ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنی بچی کی شادی کی تو 7 لاکھ کرون لگ گئے. اور مسئلہ وہ کیا پوچھ رہی تھی کہ ایک سال کے اندر ہی بچی گھر آ گئی ہے، تو میں نے کہا جب ایسے ناگوار حالات ہیں تو جان چھڑا لیجیے، اچھا ہے، آگے بچہ بھی نہیں ہے ابھی کوئی. کہنے لگی وہ 7 لاکھ کا کیا کریں، کیا دوبارہ جمع کر کے پھر اس کی شادی نہیں کریں گے؟ یہ ہے آج امت مسلمہ کی حالت، جس پہ جتنا آنسو بہا سکے بہا لے. علم پہ تو 50-60 ڈالر نہ لگیں اور شادیوں پہ 5-6 لاکھ لگ جائیں، ایسی قوموں کو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے. تو بہرحال بات ساری سمجھ آ چکی ہے، ہم اس آیت کو اپنے لیے کرائیٹیرین بنائیں گے. اور آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں آئیں گی اس بارے میں جو بالکل اسی موضوع کی ہیں کہ دین اور گھر ساتھ ساتھ، اور خاص طور پہ اولاد اور مال، اور اولاد اور بچے فتنہ بنتے ہیں. اس کے لیے دعا سیکھ لیجیے. آج کی دعا بھی سنتے وقت آپ ضرور آنسو بہا سکتے ہیں، کیونکہ آج کہانی ہے یہ گھر گھر کی. بڑی پیاری روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی، جلد 7 ہے، صفحہ نمبر 377 377، اور حدیث کا نمبر 3137. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذاب ومن خلیل ماکر عینه ترانی وقلبه یرعنی ان رعا حسنتا دفنها ویرا سیتن از آہا. لفظ مشکل ہے اور آپ نے کبھی پڑھی بھی نہیں، کیونکہ اس کا ترجمہ ہی نہیں تھا کبھی اردو میں ہوا. الحمدللہ اب یہ دعا عام ہو رہی ہے. آج کے دور کے جوان بچوں کے ماں باپ کو خاص طور پر اس دعا کے پڑھنے کی ضرورت ہے. اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے ہمسائے سے اور ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے، یعنی ان کے غموں میں اور ان کی حالت پہ کڑ کڑ کے میں بوڑھی نہ ہو جاؤں، اور میں بوڑھا نہ ہو جاؤں وقت سے پہلے بیوی کی مستیاں دیکھ دیکھ کے. اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال یعنی بوجھ ہو، یعنی بچے جب آنکھوں کے آنسو بن جائیں. تو یہ دعائیں مانگی ہیں. سورت فرقان کی آخری رکوع میں پڑھ کے آئے نا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. وہاں قرۃ العین تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، یہاں اس کا اپوزٹ ہے. کہ اللہ، میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو میری آنکھوں کے آنسو بن جائیں، وہاں تک کہ نیکیاں کرتے ہوئے دیکھوں بچوں کو، اتنی نیکیاں وہ کریں کہ خوشی سے آنکھیں میری گیلی ہوں اور گیلی چیز ٹھنڈی ہوتی ہے. اور یہاں کیا ہے کہ اولاد ایسی جو میرے پہ چڑھائی کرے، یعنی وہ میرے پہ روب ڈالے نہ کہ میرے روب میں آ جائے. اور قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی اللہ کے نبی کی حدیث میں موجود ہے کہ اولادیں ایسے ہو جائیں گی جیسے لونڈی اور آقا، یعنی لونڈی اپنے آقا کو جنے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو پیدا کر کے ایسے ہو جائیں گے جیسے وہ غلام ہے اور بچے ان کے آقا. ہر بات جو منوانی ہے. اور ایسے مال سے جو میرے اوپر عذاب کا باعث بنے، اور ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہوں. اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو اس کو تو بس اپنے ہی تک رکھے. نوٹ کیجئے گا، کچھ یہ کرتے ہیں، لوگوں کی اچھی اچھی چیزیں اپنے تک رکھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ یہ کس کی ہے اور کہاں سے ہے. وہاں نہ پہنچ جائیں لوگ اور میں دوں تو لوگ میرے نام کے گنگائیں، اور ان کی خامیاں دیکھیں تو چرچا کرتے ہیں، پروپیگنڈے، اسکینڈلس اور ایسی باتیں کریں. پارے کی جھلکیوں پہ چلتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا. اور اللہ نے گواہی دی ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، سورہ منافقون میں ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا سورت صف میں یہ چیز دکھے گی. اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا سیکھیں گے ہم اسی میں انشاءاللہ, اور اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کی اہمیت دیکھیں گے, اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا سورت جمعہ میں ہے, ایمان لانا پورے قرآن میں, اور نیک لوگوں میں شامل ہونے کی خواہش, اب یہ دعا ہمارے لبوں پہ ہونی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا, اس سے ڈر کے رہنا, اور خود کو اور گھر والوں کو آگ سے بچانا, اور پھر آخر میں حضرت آسیہ سے سیکھیں گے کہ جنت کے گھر کا سوال کیسے کرتے ہیں, رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنہ. چلتے ہیں سورت مجادلہ, پہلی سورت, اس کو مجادلہ بھی کہتے ہیں اور مجادلہ بھی کہتے ہیں, دونوں پروننسیشن ٹھیک ہے. جدل جدال جھگڑے کو کہتے ہیں, تو مجادلہ جھگڑنے والی یا مجادلہ اس کا اپوزٹ ہے. 58 نمبر کی سورت ہے, آیت 22 ہیں. اس کی ایک یونیک بات ہے, اگر آپ پہلی دفعہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں یہ بات پہلے سنی, تو سنتے وقت پوری سورت کے دوران غور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی, اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں, یاد رکھیے اس کا ذکر سورت الاحزاب میں پیچھے اشارتاً گزر چکا ہے. کیا ہوتا ہے زہار؟ یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں, وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی, ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے. بالکل ایسے جیسے بعض دیہاتی لوگ اپنی بیوی کو کہتے ہیں آج کے بعد تو میری ماں بہن ہے. ایک رسم تھی عربوں کی جس کی طرف اشارہ ہے, شوہر اپنی بیوی کو کہتا انتی علیہ کزہری امی. اس کے بعد ہوتا کہتا بیوی رہتی ساتھ تھی لیکن مرد حقوق زوجیت پورے نہیں کرتا تھا تو لٹکی رہتی تھی. اور آج تو ویسے بھی ایسے مرد بہت ہیں جو عورتوں کو ساری زندگی لٹکائے رکھتے ہیں, خود تو خواہشات کہیں اور پوری کر لیں اور بیویوں کو گھر میں بیویوں سے زیادہ بیواؤں کی حیثیت میں رکھا. اللہ نے ایسی عورتوں کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بتایا کہ دیکھو ایک لائف ٹائم ایونٹ کے ذریعے اس رسم کو توڑا گیا, جیسے سورت الاحزاب میں منہ بولے بیٹے کی رسم کو اللہ کے نبی کے ذریعے توڑا گیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے جس گھرانے کو چنا وہ خولہ بنت صالبہ کا گھرانہ تھا. شوہر نے غصے میں بیوی کے ساتھ اظہار کر لیا, بیمار بھی تھے بوڑھے بھی تھے. اب یہ عورت اپنے لیے نہیں, کیونکہ ایسے مرد سے کیا ملے گا عورت کو, اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہ اور فطری محبت جو اللہ نے دل میں ڈالی ہو تو عورت تو رہے نا. آج کی کو ویسٹرن عورت ہوتی چھوڑ کے چلی جاتی کہ اب تمہارے اندر کوئی کشش نہیں رہ گی, لیکن مسلمان عورتیں ایسی نہیں ہوتی, وہ ساری زندگی گزار دیتی ہیں اپنے ماں باپ کے فیصلے کے اوپر اپنی محنت کرنے پہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیات جو ہیں وہ اسی معاملے میں رکھی اور کیا فرمایا کہ یہ تمہاری مائیں نہیں ہیں, مائیں تو وہ ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا کیے گئے. تو کیا پتہ چلا کہ منہ بولے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں, یہ فلاں بیٹا بنا ہوا ہے, یہ بہن بنی ہوئی ہے, اور فلاں کو تو میں نے بھائی بنایا ہوا ہے. سب لفظ اپنی ڈکشنری سے کاٹ دیجئے. یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی غلام آزاد کرنا ہے. اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں, کنٹینیوس, یعنی ایک بھی چھوٹا تو پھر شروع سے شروع کرنا ہے, اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو, یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے. تو زہار, جس کو دور جاہلیت کی طلاق کی ایک قسم کہہ لیجئے, یہ غیر رجعی طلاق ہوتی تھی, یعنی اس کے بعد رجوع بھی نہیں ہوتا تھا, غلط رسم تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے منع کیا, اور خولا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنے گھر کا ایک معاملہ پوچھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آج بھی اگر گھروں میں کچھ مسائل اٹھیں تو پہلے آپس میں ٹیکل کر لینا چاہیے, اور اس کے بعد بات نہ بنے تو علم والوں سے رجوع کیجئے, کونسلنگ کیجئے, ایک دوسرے سے پوچھئے. معاملے کو ایک دم ختم کرنے یا بگاڑنے اور طلاق لینے سے بہتر ہے کہ پہلے بیچ میں دوسروں کو ڈالا جائے. آج فوراً شادی اور اس کے اگلے ہی فوراً طلاق, جھٹ منگنی پٹ بیاہ لوگ کہتے تھے نا, آج ہے جھٹ شادی پٹ طلاق, صبر نہ رہا. دوسری بات ہے کہ سمع اللہ, اللہ سنتا ہے. حضرت हज़रत उमर के दौर में एक बूढ़ी औरत रास्ते में उनको रोक कर खड़ी हो गई, और वो सुनते ही जा रहे हैं और वो बोलती जा रही है। काफ़ी टाइम गुजर गया, जब वो औरत खुद रुक गई तो फिर रुके तो साथ जो लोग थे उन्होंने कहा, हज़रत उमर आप इतना वक्त दे रहे हैं एक आम औरत को। आज भी लोग कहते हैं कि आप दूसरों को इतना टाइम क्यों देते हैं, छोड़ दीजिए उनको आपकी केयर नहीं तो आप क्यों उनके ऊपर इतना वक्त लगाएं। तो हज़रत उमर का जुमला सुनिए, कहा मैं उस औरत की बात क्यों ना सुनता कि जिसकी सात आसमानों के ऊपर सुनी गई। कद समे अल्लाहु कौलल्लती, हम भी नमाज में कहते हैं समय अल्लाहु लिमन हमीदा, पता ही नहीं होता हमें, ये शुक्र होता है एक रकत पूरी हो गई। याद रखिए अल्लाह सुनता है, असमी है, आसमान पे होते हुए भी दिलों के अंदर उठने वाले बातों को और सुनता है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं मस्जिद नबी में उस औरत से थोड़े से फासले पे बैठी हुई थी और मैंने देखा कि जब अल्लाह के नबी ने उसकी बात पे कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब तक हुक्म नहीं आता था अल्लाह के नबी बस पिछला ही मामला बयान करते थे कि मैं कुछ नहीं कह सकता, और वो इसरार कर रही थी अल्लाह के नबी मेरा घर टूट जाएगा, अल्लाह के नबी मेरा मियाँ का क्या बनेगा, वो बीमार है, वो बूढ़ा है, इस तरह की बातें कि अल्लाह के नबी वमा यंते को निल हवा, पिछले पारे में सूरत नजम में पढ़कर आए हैं कि अपनी मर्जी से तो आप बोलते ही नहीं थे। तो खैर उसने देखा कि अल्लाह के नबी तो नहीं सुन रहे, तो फिर मैं अल्लाह को सुनाती हूँ, ये अकीदे वाली औरतें चाहिए। तो अल्लाह ने उसे एक औरत की बात पर ये सूरतें ये आयतें नाजिल करके बता दिया कि अल्लाह को औरतों के मसाइल की कितनी अहमियत है, यहाँ आप ये देख सकते हैं। और मर्दों को बता दिया कि वो मर्दों औरतें तुम्हारे इस्तेमाल करने के खिलौने नहीं है, इनकी दिल आजारी से डरो, इन औरतों के साथ तुम अपना मामला नरमी का रखो जब तुम्हारी ख्वाहिश हो, और जब ये ज़रा खाने में नमक तेज़ कर दें और ज़रा सा कोई काम आगे पीछे कर दें तो तुम चीखने चिल्लाने लगो, इंसान बनो। यानी मर्दों को डांटा जा रहा है, और कफ़ारा देखिए कितना सख्त है, एक मुंह का बोल 2 महीने के रोज़े रखेंगे ताकि औरतों के मामले में रिलैक्स ना रहो। औरतों का हक दिलाया जा रहा है, ये हकूक तो माँ बाप ना दिला सकें बेटियों के मामले में जो अल्लाह ताला ने दिला दिए, तो वीमेन राइट्स असल में इसको कहते हैं, और ये वो चीज़ें होती हैं जिसको अल्लाह ताला ने सामने रखा। फिर इसी तरह आप देखिए कि औरत को अहमियत देकर कानून बनाया तो ये एक औरत की शान है, और अल्लाह ताला सारी बातें सुनते हैं, अल्लाह के नबी खुद से नहीं बोलते। तो असल में इसमें एक जुमला लिख लीजिए, कंट्रोल योर टंग जिप द माउथ। याद रखिए जुबान की कैंची से फसलें जैसे नेकियों की कटती हैं ना, घरों में बिगाड़ की वजह भी जुबान है। जिस घर में लड़ाई झगड़े हों, मर्द गुस्से में आके पूरी डिक्शनरी यूज़ कर लें गुस्से के लफ्ज़ की, और गालियों की लिस्ट हो, और बीवियां बिगड़ी हुई हों, और वो फिर ऐसी तुर्की बतुर्की जवाब देती हों, दोनों के ऊपर है। आज मर्द भी नहीं सिर्फ जालिम, औरत भी जालिम है, और मर्द ही नहीं मजलूम, औरत भी मजलूम है, दोनों तरफ है। अपनी बेटियों को मशवरे दीजिए, ईगो को छोड़ दीजिए, बिलो जीरो पे ले आए अपनी ईगो को। पहली औरतें सुनती थी चुप कर जाती थी, मर्द तो कहते हैं बोलते ही आए, चलिए अल्लाह उनको हिदायत दे, लेकिन अगर उनके अंदर एक है जज्बा तो औरत चुप कर जाती थी, पीछे हो जाती थी, घर बने रहते थे। आज तुर्की बतुर्की जवाब, तुम एक जवाब दोगे मैं दो दूंगी, तुम एक ताना दोगे मैं दो दूंगी, तो फिर जवाब क्या निकलता है उसको देख लें। तो बेटियों को खामोश रहना सिखाइए, झुकाव सिखाइए, आजिज़ी सिखाइए, और जब दिलों पर कुरान की बारिश पड़ती है ना तो दिल की खेती नरम होती है, फिर अल्लाह के मामले में भी इंसान नरम होता है, फिर शौहर बीवी के मामले में भी। किसी भी अपने साथी में कोई कमी देखें अल्लाह के आगे सर रखिए। अगर खौला ने आपको इस मसले में अल्लाह से मांगना सिखा दिया ना, तो आप अपने शौहरों के अंदर कोई चेंज चाहते हैं जाइए सर सजदे में रख दीजिए। ये ना सोचें कि शौहर बदलेंगे और फिर ही वो आपका घर संवरेगा, आप बदल जाइए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, दीन दोनों में आ जाएगा, दोनों मिलकर दीन सीखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत खैर होगी। हमने जैसे बच्चों को बोलना सिखाया, आप इसी तरह खामोश रहना सिखाएं। जवान बेटे को शादी से पहले 1 महीना बैठकर रोज सबक दीजिए कि बेटा बीवी के साथ ऐसे नहीं बोलना, बदतमीजी नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। अल्लाह ताला हमें ऐसी अच्छी तरबियत की तौफीक दे। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील किए जाएंगे जैसे इनसे पहले के लोग जलील किए गए थे, और बेशक हम वाज़े आयतें उतार चुके हैं, और काफिरों के लिए तो जिल्लत वाला अजाब है। जिस दिन अल्लाह ताला इन सब को उठाएगा फिर इन्हें इनके किए हुए अमल से आगाह करेगा, जिसे अल्लाह ने शुमार कर रखा है जिसे ये भूल गए थे, और अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ है। वल्लाहु अला कुल्ली शयइन शहीद, हमेशा इस बात को मद्देनजर रखिए। इसलिए दौरे हाजिर के फितनों से बचने के लिए हमसे मतलूब क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कीजिए, और अल्लाह की हदूद और उसके कवानीन की पासदारी कीजिए। आगे सरगोशियों की बात है, विस्परिंग, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह आसमानों की और ज़मीन की हर चीज़ से वाकिफ़ है? 3 आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर अल्लाह इनका चौथा होता है, और ना 5 की मगर इनका छठा वो होता है, और ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा की मगर वो साथ ही होता है जहाँ भी हो। फिर क़यामत के दिन इन्हें इनके अमाल से आगाह करेगा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करने वाले घरों में ना तो एक दूसरे पे जुल्म ज्यादती होती है और ना गलत चीज़ें लोग देखते और सुनते हैं। क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें कानाफूसी यानी कानों में बातें करने, विस्पर, सरगोशियां, नजवा इससे रोक दिया गया था, वो फिर भी इस रोके हुए काम को दोबारा करते हैं और आपस में गुनाह की और जुल्म ज्यादती की और नाफरमानी पैगम्बर की सरगोशियां करते हैं। और जब आपके पास आते हैं तो आपको इन लफ्ज़ों में सलाम करते हैं जिन लफ्ज़ों में अल्लाह ताला ने नहीं कहा, और अपने दिल में कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस पर जो हम कहते हैं सजा क्यों नहीं देता। इनके लिए जहन्नम काफ़ी सजा है जिसमें ये चाहेंगे सो वो बुरा ठिकाना है। वो याद रखिए जो पहले पारे में भी पढ़ चुके, ला तकूलू राइना, तौहीन रिसालत के मर्तकीबीन थे मुनाफिकीन और यहूद, दबी जुबान से अल्लाह के नबी को सलाम अलैकुम की जगह साम अलैकुम कह देते, साम कहते हैं मौत को, अल्लाह के नबी कह देते थे वालेक। एक मौके पर एक यहूदी आया, उसने बिल्कुल इन्हीं लफ्ज़ों में कहा। हज़रत आयशा पास बैठी सुन रही थी, जब देखा कि उसने अल्लाह के नबी को मौत की बददुआ दी है तो कहने लगी लानतुल्लाह और फलां फलां, ज़रा चार से लफ्ज़ ज़्यादा बोल दिए। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा सबर सबर इसबरी। कहने लगे अल्लाह के नबी आपने नहीं सुना इसने आपको क्या कहा? तो आपने कहा तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा? उसने मुझे सलाम अलैकुम कहा, मैंने उसको कहा वालेक, और मेरी बात उसके हक में कबूल होगी उसकी मेरे हक में नहीं होगी। तो क्या पता चला कि जुबान का इस्तेमाल कम से कम करना है और भरोसा अल्लाह पे रखना है। अब देखिए कि नायतों में लफ्ज़ नजवा आया है, पिछले पारे में गीबत का लफ्ज़ था, 27वें पारे में यहाँ नजवा का लफ्ज़ है। गीबत थी इनफरादी मामलात में डिस्कशन, दो दोस्तों का तीसरी दोस्त को डिस्कस करना, और दो बहनों का अपनी सास के नेकियों का अपने नाम पे लगाना, और माँ बेटी का दुख सुख के नाम पे बुराइयाँ करना, और शोहर बीवी का सारी दुनिया की बुराइयाँ करना। हम समझते हैं डाइनिंग टेबल पे शोहर बीवी के लिए सारे मामले जायज़ हैं, हत्ता के सियासतदानों की भी गीबतें कर देते। तो लिखिए नजवा क्या है? इज्तमाई गीबत, किसी इज्तमाही मामले को दो लोग डिस्कस करें, मीटिंग में तो बोले नहीं और बाद में दो लोग कोनों में खड़े किचन में चाय बनाते हुए आपस में डिस्कस कर रहे हैं और रिसेप्शन पे और गाड़ी में बातें हो रही हैं। लिख लीजिए टीम वर्क की दुश्मन है नजवा। नजवा की तहरीक और तरगीब शैतान से मिलती है। नजवा शैतान का हथकंडा और इसको खुश करने वाला अमल है। गुनाह और ज्यादती के काम में नजवा नाजायज है, हाँ नेकी और तकवा के कामों में जायज़ है। यानी आप किसी को अच्छे काम का मशवरा दे रहे हैं या किसी के ऊपर कोई कोई गलत बात कर रहे हैं, आप कान में बात करते हैं, आहिस्ता करते हैं, अदरवाइज महफिल में कानों में बात करना पसंदीदा नहीं। तीन लोग हों तो दो का कान में बात करना पसंदीदा नहीं। और याद रखिए कि अल्लाह समी है, इसे हर सरगोशी का इल्म है। बात करते हुए हमेशा इस चीज़ को ख्याल रखिए। ए मुसलमानों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में ज़रा कुशादगी पैदा करो, मैनर्स एटिकेट्स हैं महफिलों के, तो तुम जगह कुशादा कर दो और अल्लाह तुम्हें कुशादगी देगा, और जब कहा जाए उठ खड़े हो जाओ तो तुम उठ खड़े हो जाओ। अल्लाह ताला तुम में से इन लोगों के जो ईमान लाए हैं और जो इल्म दिए गए हैं दर्जे बुलंद करेगा। इसको हाईलाइट कीजिए, इल्म वालों की शान, क्योंकि हदीस में भी आता है कि इल्म अपने साहिब की शान बुलंद करता है। तो जैसे लोग माल कमाकर अपना स्टेटस बुलंद करना चाहते हैं ना, इसी तरह इल्म वाले का स्टेटस पहले ही बड़ा होता है, और आज तो वैसे ही माल वाले बहुत हैं, कमी और ज़रूरत है जिस चीज़ की वो इल्म है। तो इल्म काम कीजिए, अल्लाह ताला आपको इज्जत भी देगा और आपके दर्जे भी बुलंद करेगा, और अल्लाह ताला हर उस काम से जो तुम कर रहे हो खूब वाकिफ है। ए मुसलमानों, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर और पाकीज़ातर है। हाँ अगर ना पाओ तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुम अपनी सरगोशी से पहले सदका निकालने से डर गए हो? बस जब तुमने ये ना किया तो अल्लाह ने भी तुमको माफ़ फरमा दिया। तो अब बखूबी नमाजों को कायम रखो और ज़कात देते रहो और अल्लाह ताला की और इसके रसूल की ताबेदारी करते रहो। तुम जो कुछ करते हो इन सब से अल्लाह ताला खूब खबरदार है। मजलिस के आदाब में से कुछ चीज़ें इसमें हमारे सामने हैं। गलत तरीक़ाकार कह के ग्रुप्स की शक्ल में जुड़कर बैठना, यानी छोटी छोटी टोलियाँ बनाना और किसी एक को दूसरे की आवाज़ नहीं आ रही, सब अपनी हंसी मजाक ठट्ठे में। नजवा करना, सिर्फ पसंद के लोगों से बात करना बाकी लोगों से नहीं, और ये अक्सर गलती दीन वालों से होती है। शादियों में भी जाएंगे ना तो सब एक टेबल में, ये कुरान क्लास वाले बैठे हैं उन्होंने भी एक टेबल कोने में रखा होता है कि यहाँ आप पर्दादार औरतें बैठ जाइएगा, गलत तरीक़ाकार है। रॉन्ग टेबल अगर वो लगाते हैं तो आप भी ज़रा कोशिश कीजिए कैसे ही मौक़ों को अपनी और दूसरों की इसलाह का जरिया बना ले। फिर इसी तरह देखिए महफिल बर्खास्त होने के बाद भी बैठे रहना और घर वाला बेचारा परेशान है, दर्स ख़त्म हो गया, चादरें उठानी है, मियाँ के आने का वक्त है, और आप कह रहे हैं दर्स में आई हूँ तो खाना खा के जाऊँगी, ये बैड मैनर्स है। کسی خاص بندے کو تنقید اور مذاق کا نشانہ بنانا یہ بھی غلط چیز ہے. صحیح طریقہ کیا ہے مجلسوں کا؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ آج کل ہم بہت سوشلائز کرتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ آج کا لاک ڈاؤن نے تھوڑا ریلیکسیشن دے دیا ہمیں تو, لیکن جب دوبارہ جائیں اور عید کے موقعوں پہ جائیں تو خاص طور پہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ مجلس میں آنے والے کو جگہ دیں, خود سمٹ کر بیٹھیں, نجوہ بالکل نہیں کرنی, بات کرتے وقت سب کو شامل گفتگو کریں, مجلس برخاست ہونے پر اٹھ جائیے اور کسی خاص بندے کو تنقید اور مذاق کا نشانہ نہ بنائیں. بعض اوقات لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں ایک ہی بندے کی بات کر کے, اور اس میں یہ جو حکم آیا نا کہ اللہ کے نبی سے بات کرتے ہوئے صدقہ کرو, ہوتا یہ تھا کہ منافقین کو عمل تو اچھا نہیں لگتا تھا اور اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اپنی اہمیت جتلانے کے لیے اور لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے ان سے بڑے پرسنل ٹرمز ہیں, ہماری تو ڈائریکٹ اپروچ ہے, تو کوشش کرتے محفلوں میں اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور خود سوال پوچھیں اور لوگوں کو ذرا بات کرنی ہے. اب لوگ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کان میں بات ہو رہی ہے, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, تو بڑا روب ہوتا کہ یہ تو بڑے بے تکلف ہیں. اللہ کے نبی ایک مصروف انسان تھے لیکن بامروت بھی تھے, پردرد بھی تھے, بخا بھی تھی دل میں کہ چلو لوگوں کا فائدہ ہو جائے, آپ ان کی باتیں سنتے رہتے, وقت بھی بہت لگ جاتا. اللہ نے ان کو ٹیم کیا, تربیت دی, ایک وقتی حکم دے دیا کہ آج کے بعد جو اللہ کے نبی سے بات کرے پہلے صدقہ ڈالے. جیسے آپ دیکھیے وکیل سے بات کرنے کی فیس ہوتی ہے نا, تو وہ مشورہ فیس تو وکیل کے گھر جاتی ہے نا, یہ بات کرنے کا صدقہ دین کو جاتا تھا, اللہ کے نبی کو نہیں جاتا تھا, گویا کہ کہلے کی قیمت رکھ دی بات کرنے کی. ایک منافق نہیں آیا, مسئلہ ختم ہو گیا. چند دن یہ حکم رہا, حضرت علی کہتے ہیں میرے سوا اور کسی کو اس حکم پر عمل کرنے کا موقع نہیں آیا. ان کو ظاہر دینی کام تھے, مینجمنٹ تھی, تربیت تھی, کیا کچھ تھے, رپورٹنگ سب کچھ, تو انہوں نے اللہ کے نبی سے بات ضروری کرنی تھی, تو آپ نے پہلے صدقہ دیا اور پھر آ کر آپ سے سوال پوچھا اور خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے قرآن کی اس آیت پر بھی مجھ سے عمل کروا لیا. تو کیا پتہ چلا آپ کو مجھے بھی کہ اپنے دین کو سچا کھرا کیجیے, پھر اللہ تعالیٰ ایسی پابندیاں نہیں لگواتا. بعض لوگ کہتے ہیں آپ بات نہیں کرتے, فون نہیں سنتے, اور اکثر ایڈمنس کے ساتھ لوگوں کو ایک گلہ ہوتا ہے. یا میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں اسٹوڈنٹس کو, کوئی ذمہ داران میں سے, کوئی ایڈمن میں سے, کوئی ٹیچر آپ کا اگر آپ کی بات کا فوراً جواب نہ دے تو ان کو بھی انسان سمجھیے, ان کے فیملی ٹائم کو دیکھیے. ہر ڈاکٹر ہر بات پہ لبیک نہیں کہہ سکتا, ایک وقت ہوتا ہے, ایک حالات ہوتے ہیں. بدگمان نہ ہوں یہ تو سنتے نہیں, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ان سے تو بات ہی نہیں ہوتی, اور بس بس ساتھی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ایسا سوچنے لگ جاتے ہیں, یہ سب نجوہ ہے. اس ساری نجوہ کو اتار کر پھینکیے. اور ہم بچوں کو سلام کرنے میں ایک غلطی کرتے ہیں, وہ بھی نوٹ کریں, السلام علیکم نہیں کہتے, السلام علیکم, شام کرو, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں اپنے بچوں کو توتھلے مسلمان بنائیں گے تو بعد میں بھی وہ ہیلو ہائے بائے کریں گے, تو اسلام کے نام پر کسی ریچول کا مذاق نہیں کر سکتے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضب نہ کھو چکا؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں, باوجود علم کے پھر بھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, لکھئے دو کشتیوں کے سوار. یہ بھی ایک نفاق کی قسم ہوتی ہے, بندہ دو تین لوگوں کو اپنائیت کا احساس دلائے میں آپ کے ساتھ ہوں. بس ہیں کچھ لوگ ہیں, مجھے کسی ساتھی نے کہا کہ فلاں آپ کی دوست ہیں تو آپ نے ان کو بلایا کلاس کے لیے, کہتی وہ کہتی نہیں ہم فلاں کی سنتے ہیں. اچھا دائرۂ قرآن سے, نہیں ہم فلاں کا سنتے ہیں, اور آپ یقین کیجئے وہ فلاں کا بھی نہیں سن رہے ہوتے الا ماشاء اللہ. تو یہ باتیں کر کر کے آپ دیکھیے کہ مسجدوں میں آنے والے لوگ تھے اللہ کے نبی کے ارد گرد, اور یہ ساری کہانیاں اور آگے خاص طور پہ سورہ منافق ان میں آپ دیکھیں گے. عبداللہ بن ابی جو ایک بڑا تھا, اس کی مائیت میں پھیلے ہوئے لوگوں کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کی تربیت کر رہا ہے کہ تم دل میں ایسا نفاق نہ رکھنا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں, برا کر رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی. سوچیے ایک دو سیکنڈ, یہ تو جہنمی ہیں, ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے. تو شوہر اور بیوی اور زوج اور اولاد کے فتنے کی بات ہو رہی ہے سورت کی آیت میں, تو دیکھیے گا کہ بیوی اور بچے یعنی زوج اور اولاد فتنہ کب بنتے ہیں. پہلے تو فتنے کا وہ معنی یاد کیجئے جو آپ کو انٹرو والے ڈے میں دیا تھا, ہو چیز نعمت لیکن آپ اس کا استعمال غلط کریں تو یہ نعمت کو فتنہ بناتا ہے, رحمت کو زحمت بناتا ہے. چھری اچھی ہے نا لیکن آپ اس کو ہینڈل سے پکڑنے کی بجائے آگے سے پکڑ لیں, یہ مراد ہے. تو بیوی شوہر اولاد سب نعمتیں ہیں لیکن مس ہینڈلنگ آف دی کڈس, مس ہینڈلنگ آف دی وائف, مس ہینڈلنگ آف دی ہسبینڈ, یہ اس کو فتنہ بناتی ہیں. تو یہ کب فتنہ بنتے ہیں؟ نمبر ایک, جب ان کو دین کی تعلیم نہ دی جائے. محاسبہ آپ خود کیجئے اپنا. نماز کی پابندی کی تلقین نہ کی جائے, اور یاد رکھیے شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کو نماز پڑھوائے. اگر بیوی نہیں پڑھتی تو وہ اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے, اس کو ڈانٹ بھی سکتا ہے, لیکن وہ وہی شوہر ہوگا نا جو خود پڑھتا ہے. आप कहते हैं मर्दों के लिए क्या हुक्म है बीवियों का, तो फिर वही जो बातें ऊपर कर चुके हैं, शहादत हक दीजिए अपने अखलाक और मामले से और वाकई जज्बाती तौर पर उनको करके दिखाइए। मियाँ ने नमाज नहीं पढ़ी, आप रोने लग जाए, खाना पकाया और रो कर बैठे, मियाँ कह रहे हैं मुंह क्यों बना हुआ, कुछ ना बोले, समझ आ जाएगी नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़े बगैर सो गए, लिफ्ट ना करवाइए, बात ना कीजिए, समझ जाएंगे कि जिसने ईशा नहीं पढ़ी उसकी बीवी उससे कैसे खुश रहे। तो जज्बातियत के साथ लाइए, लाड मोहब्बत करके अपने मियाँ और अपने बीवी और अपने बच्चों को दीन की तरफ लाइए। हम डांट डूंट के गुस्से गुस्से में और दूर करते हैं। इसी तरह आप देखिए, ये दोनों रिश्ते फितना बनते हैं जब इनको दीन के कामों में मुआविन न बनाया जाए। इस बारे को पढ़ने के दौरान एक दुआ भी की और नियत भी करें कि अब हमने पूरी फैमिली ने मिलकर दीन का काम करना है, वही घराने आगे चलते हैं जहाँ दोनों लोग एक जैसे होते हैं। याद रखिए, आज घरों में लड़ाई झगड़े कहाँ हैं, जहाँ बीवी दीन पे है तो मर्द नहीं है और अपोजिट, और एक तबलीग कर रहे और दूसरा फिल्मों के इश्तेहार बना बैठा है। तो हमेशा घर में साथ लेके चलिए, ये गाड़ी की तरह होता है घर, शौहर बीवी अगर आगे हैं तो बच्चे पीछे हैं, आपके हाथ में अगर स्टेयरिंग है, आप मसूलियत के दर्जे पे हैं तो बीवी बच्चों को साथ लेकर चलिए। इसी तरह हराम और मशकूक कमाई शामिल होती है तो फिर ये रिश्ते फितने बनते हैं, और अल्लाह रोज़े आखरत की जब इनको मार्फत नहीं देते तो ये रिश्ते फितना बनते हैं। अल्लाह ताला हमें इन फितनों से निकाले। जिस दिन अल्लाह ताला इन सब को उठा खड़ा करेगा तो ये जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, अल्लाह ताला के सामने भी कस्में खाने लगेंगे और समझेंगे कि वो भी किसी दलील पर हैं। यकीन मानो बेशक वो ही झूठे हैं, इन पर शैतान ने गलबा हासिल कर लिया और इन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया। ये शैतानी लश्कर है, इसमें कोई शक नहीं कि शैतानी लश्कर ही खसारे वाला है। बेशक वो लोग अल्लाह ताला की और उसके रसूल की जो मुखालफत करते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा जलीलों में हैं। उसको हक नहीं है इज्जत का जो अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत ना कर सके। तो ये हिजबु शैतान का जिक्र है, शैतान का टोला गिरोह क्या करता है, इस्लाम के दुश्मनों से ऐसे लोग दोस्ती करते हैं, झूठे भी हैं और झूठी कस्मों को ढाल बनाते हैं, जिक्र अल्लाह से दूर हैं और शैतान को राजी करने वाले हैं, और इस्लाम के गलबे की मुखालफत में फ़ाल है और खसारा उठाने वाले। आज ऐसे लोग आपको गली गली दिखेंगे। अल्लाह लिख चुका है कि बेशक मैं और मेरे पैगंबर गालिब रहेंगे, यकीनन अल्लाह ताला जोरावर और गालिब है। ये है हिजबुल्ला, इसमें शामिल होइए। गलबे दीन के हिसाब से दो गिरोह, एक दीन के गलबे में मुआविनीन मददगार अंसारुल्ला, इनको अल्लाह अपना हिजब कहता है, अपनी पार्टी के लोग। इसके मुखालिफ है हिजबे शैतान जो इस रस्ते में रोड़े अटकाते हैं। इसमें मुशरिकीन भी आते हैं, कुफार और अहले किताब भी आते हैं, और मुनाफिकीन भी आते हैं। और मुनाफिकीन फिर दो किस्म के हैं, एक एतिकादी मुनाफिक जो दौरे रिसालत का फितना था, और एक अमली मुनाफिक जो आज के मुसलमान नाम निहाद पढ़े लिखे बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म के मुसलमान हैं। हमने गलबे दीन के लिए क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं, हमारा शुमार किस में, इस पे आप और मैं अपना जायजा लेते हैं। अल्लाह का हुक्म आप सुन चुके, कतब अल्लाह लअग्लिबन्ना अना व रसूली, इससे पता चलता है कि जो शहादत हक का काम करते हैं, दूसरों की फिक्रें करते हैं, अल्लाह ताला जरूर उनको गलबे देता है। बज़ाहिर शुरू में बहुत ही बदमजगियाँ लगती हैं, फैमिली में झगड़े होते हैं और ख़ानदान छुटते हैं, लेकिन चंद दिन की बात है। देखिए, एक छोटी सी मिसाल से समझ लीजिए कि किसी शहर के पीने के पानी में गटर का पानी मिलने लगे और किसी भी माहिर को ये बात पता चल जाए और ऐलान हो कि चंद दिन के लिए पानी बंद किया जाएगा ताकि उस होल को साफ किया जाए। अब तीन किस्म के लोग हैं, कुछ कहेंगे अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत जल्दी कीजिए, कोई बात नहीं, हम गुजारा कर लेंगे। दूसरी किस्म के लोग हैं, वो कहेंगे ये क्या हो गया, जिच बिच होंगे, अब ये गड़बड़ होगी, किचन में पानी नहीं, उधर नहीं पानी, चलो खैर कोई बात नहीं, बुड़बुड़ाते हुए सही। तीसरी किस्म के कहेंगे बिल्कुल नहीं, हम बायकॉट करते हैं, गंदा पीने दो, कुछ नहीं होता, पानी तो मिल रहा है ना, मुझे बताइए अक्लमंद गिरोह कौन सा है। आखिरी गिरोह जो कह रहे हैं बैठे रहो घरों में, झगड़े ना हो, लड़ाइयाँ ना, ये हैं जिसको लोग आज कहते हैं पीस मेकर, चुप 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 बात नहीं करो, दीन की बात नहीं करो, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, तो गंदे पानी पी के आप भी मर जाएंगे, आपकी फैमिली भी खत्म होगी। दूसरी सूरत है जिच बिच वाले, ये वो घर वाले हैं जो अपने बीवियों या शोहरों और बच्चों को दीन के काम करते देखे बुड़बुड़ाते रहते हैं, अब ये भी होगा, अब ये भी होगा, अच्छा अब ये भी आप ही करेंगी, अच्छा और कब तक होगा बेगम जी, ये आखिरी दिन तक होगा, अच्छा जी ठीक है फिर सब्र करते हैं। पहली किस्म के लोग देखिए, ये चाहिए कि वो कहते फौरन पानी बंद करो, बेगम तुम अकेली ये काम नहीं कर सकती, लाओ मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, लाओ ये काम मैं करता हूँ तुम करो, सब जल्दी से इस काम को समेटते फिर मज़े से डिनर करेंगे। जिस घर में शौहर बीवी साथ मिलकर काम करे, खाना पका रहे हैं तो साथ, सफाई हो रही है तो साथ, इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ, ये नहीं मैं कह रही कि आप मर्दों को क्या बाथरूम धोएं और हम सोफे पर बैठे हुए और हम बस अपना दिल ही साफ कर रहे हैं बैठे हुए, ये नहीं करना। प्यार मोहब्बत के साथ नबी को रोल मॉडल बनाते हुए शौहर अगर शौहर बनते हैं और आज़ादे मुतहरात को देखकर बीवियां अपने आप को बीवी बना लें, वो है होम स्वीट होम। इसके बरक्स अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वालों को अब अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने वालों से मोहब्बत रखते हुए हरगिज़ न पाएंगे। क्या अपोजिट है इसमें कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ना करें और आप उनसे मोहब्बत करें, ये नहीं हो सकता। गो के वो इनके बाप या इनके बेटे या इनके भाई या इनके कुंबे कबीले के अजीज ही क्यों ना हो, यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान को लिख दिया है और जिसकी तायीद अपनी रूह से की है। शायद आप इसका हक ना अदा कर सकें इस वक्त, लेकिन चंद जुमले फिर भी ज़रूर बोलूँगी कि ये है सबसे बड़ी कुर्बानी जो इस रास्ते में आती है। और वो क्या है कि आपके प्यारे अल्लाह से प्यार नहीं कर रहे, आपके प्यारों की तरजीहात अल्लाह के दीन के काम नहीं है, तो इस वक्त फिर अलहुब्बु फिल्लाह वल बुग्ज़ु फिल्लाह की रोशनी में इंसान को इन रिश्तों के साथ जिहाद करना पड़ेगा। ये है जिहाद जो आपका अपनी फैमिली से होता है। सगे भाई के घर शादी है, अल्लाह की नाराज़गी है, नहीं जाना आपको। वो पुप्पो हैं, वो खाला हैं, ये पुप्पी खाला बात की बातें हैं, पहले मैं अल्लाह की बंदी हूँ। आपका सगा बच्चा गलत काम करता है और कहते हैं अम्मा आपने वहाँ स्टेज पे सज के बैठना है और सारा फंक्शन आपने देखना है। सॉरी बेटा जी, ये मैं नहीं करूँगी, करना है आप जाके कहीं और कर लें, एक दिन के लिए किसी और को माँ बना ले। ये जज्बाती टॉर्चर देंगे तो दीन के पौधे पे बहार आएगी, फिर हमारे घरों में आएगा, हम गूंगे शैतान बने रहते हैं। चुप चुप चुप। देखिए एक दफ़ा एक झटका दे लीजिए, जो होना है घर टूट जाए या दीन छूट जाए, एक काम कर लें। जो लोग घरों को बचाते हुए दीन तोड़े बैठे हैं तो वो तो पता नहीं कल के साल में होंगे। तो दुआ कीजिए कि मोहब्बतों की इस जंग में अल्लाह ताला हमें जुर्रत दे, हमें इस चीज़ की फिक्र लग जाए कि हम अपने दीन के रिश्ते को अल्लाह के रिश्ते को बचा लें, बाकी रिश्ते अल्लाह खुद बचाएगा। और ऐसे लोगों के दिलों में ईमान आता है लिख लें, जिनसे अल्लाह बड़े बड़े काम लेता है ना दीन के, आपके बकौल वो लोग ये सारी हिजरतें और कुर्बानियाँ कर चुके हैं और आप अभी तक नहीं छोड़ रहे ऐसी गंदी महफिलों को और गूंगे शैतान बन के उनके हेड काउंट्स को जमा करते हैं, आप उनकी महफिल का हिस्सा बनते हैं, आप मेहंदियाँ और उपटन भी खाते हैं और जोड़े भी ले आते हैं और फिर बातें भी घर आके करते हैं, सारी तनकीद भी आप ही ने उनके ऊपर करनी है, और आप किसी बिदत की रस्म में सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि आपकी दोस्त आपसे खुश हो जाए। अब छोड़ दीजिए, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। यानी बात किसी की बहुत अच्छी लगी मुझे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ का दौर नहीं रहा, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबको पता है अब हुज्जत तमाम होगी, व्हाट्सएप ने माशाल्लाह घर घर में दीन फैला दिया, क्या सुन्नत क्या बिदत क्या हलाल क्या हराम सबको पता है। अब हम गूंगे शैतान बन के अगर अपनी रिश्तों और अपनी दोस्तियों के अंदर बैठे रहेंगे तो कल अल्लाह की बहुत बड़ी पकड़ है, फिर हम हिजबुल्ला में नहीं हिजबुल शैतान में हो गए। तो क्या देखा है हमने हिजबुल्लाह की खूबियाँ इस आयत में? पहली बात, इनकी दोस्ती अल्लाह के लिए होती है, दुश्मनी अल्लाह के लिए होती है। सगे मामू को कत्ल कर दिया था हजरत उमर ने गजवे बदर में, और अबू बकर सिद्दीक अपने मुशरिक बेटे को ढूंढ रहे थे कि किधर है ये, आज मैं इसको पकड़ता हूँ, ये अल्लाह के नाम पे आगे लड़ने के लिए। तो आप मैं ये नहीं कर सकते, हम तो उनकी शादियों को ना छोड़ें और हमने कहा मैदाने जंग में जाके तलवारें उठानी थी। तो याद रखिए अहलो याल और कल्बी ताल्लुकात की मोहब्बत में हद से नहीं गुजरते हिजबुल्ला, इस्लाम के दुश्मनों और उनके तौर तरीकों से दोस्तियां नहीं रखते हिजबुल्ला, फिर अल्लाह इनसे राजी और वो उससे राजी। चाहते हैं रदी अल्लाह अन्हु व रदुआन आपके लिए बोला जाए तो ये कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, फिर इनके दिलों में ईमान आता है, फिर जुरत आती है, फिर अकेले में मुस्कुराते हैं आप, सारा जहां नाराज हो जाए मुझे क्या, लेकिन बदतमीजी नहीं करनी, किसी की इंसल्ट नहीं करनी। ये जज्बाती टॉर्चर अकेले में उनको दीजिए कि भाई इस वजह से मैं नहीं आ रही, मैं आपके घर खाना नहीं खा सकती क्योंकि आपके कमाई में कोई गड़बड़ है और आप खुद बता चुके हैं, वरना तो मैं कभी जिक्र भी ना करती। ये टॉर्चर दीजिए, फिर देखिए कितनी जल्दी हमारे इर्द गिर्द के लोगों में इस्लाम आता है। ऐसे लोगों की फरिश्ते मदद करते हैं, ऐसे लोग गलबा इस्लाम में किरदार अदा करते हैं, और आखिर में कह लीजिए यही मुफ्लिहून है, हिजबुल्ला ही कामयाब होगा। आप सूरत नूर में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ने वादा किया कि दुनिया में ईमान वालों को खिलाफत देगा। सवाल लिखिए कि क्या हमारे अजवाज और औलाद हिजबुल्ला में से हैं या फिर दूसरा गिरोह जिसका नाम पीछे पढ़ चुके हैं। जो लोग हिजबुल्ला में होते हैं उसकी पहचान देखिए, जब अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आएंगे तो वह हिजबुल्ला में हैं, शरीयत की पैरवी करते हैं अगर ये दोनों तो इंशाल्लाह हिजबुल्ला में हैं, आखरत को याद रखते हुए आमाले सवाले करें तो मुबारक हो आपको, यही मुफले होना है, आप विद फैमिली इन्वाइटेड हैं जन्नत में। इसके बरक्स आपके घर का कोई एक फर्द, चाहे शौहर है या बीवी या कोई एक बच्चा, हिजबुल्ला के गिरोह से बाहर है तो वो नाकाम है। जब वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दें, अल्लाह और रसूल के अहकामात की मुखालफत करें और अल्लाह की हदूद से तजावज़ करें, तो सूरत मुजादला से क्या सीखा, खौला बिनत मालिक और मसला इजहार, बुरी सरगोशियाँ शैतान का काम है, मजलिस के आदाब सीखे। मुनाफिक झूठी कस्में खाते हैं और जो हक से फिरा वो रुसवा हुआ। अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत अखलाकी तरबियत की। सूरह मुजादला पूरा एक ट्रेनिंग सेशन है, अगर किसी को भी अपनी या किसी की ट्रेनिंग करनी हो। और सूरह मुजादला में एक बात जो मैंने आपको कही थी, गौर कीजिए, जिन्होंने की हुई है अब चेक कीजिए ठीक था कि नहीं, और वो ये कि सूरह मुजादला की हर आयत में अल्लाह का लफ्ज़ है। मुझे तो लगता है सूरह मुजादला एक मोमिन का दिल है, जिसमें अल्लाह 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 नूरुस समावाती वल अर्द मसल नूर ही का मिश्कात। मोमिन का दिल भी एक ताकचे की तरह होता है जिसमें अल्लाह का लफ्ज़ होता है। तो इस सूरत से मोहब्बत की एक और वजह लिख ली आपने। आगे है सूरत हशर। जंग हुई थी अल्लाह के नबी के दौर में, उसका तذکرہ भी है इसमें, इसलिए भी इसको हशर कहते हैं। यहूद के गिरोह के साथ मामला हुआ था, ग़ज़वे बनू नज़ीर कहते हैं उसको। और इसकी आखिरी रुकू में क़यामत के दिन के हशर का भी जिक्र है। दो वजूहात इसकी नोट कर लीजिए। सूरत हशर में 24 आयते हैं, 59 नंबर की सूरत है और मुसब्बिहाती में से ये सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। आसमान और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करती है, वो ग़ालिब और बाहिकमत है। तो आप भी एक दफ़ा कह लीजिए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अज़ीम। कायनात से सिंकेनाइज हो जाता है बंदा जब वो तस्बीह करता है। जो वो कर रहे हैं वही आप करें। जैसे आप अपने लैपटॉप के साथ अपने फ़ोन को सिंकेनाइज करें तो डाटा इधर से उधर चला जाता है, इसी तरह एक बंदा है मोमिन भी अल्लाह ताला का कुर्ब महसूस करता है। आगे से अब ग़ज़वे बनू नज़ीर के कुछ हालात हैं, सुनिएगा। वही है जिसने अहले किताब में से कुफ्फार को इनके घरों से पहले हशर के वक्त निकाला। तुम्हारा गुमान भी न था कि ये निकल जाएंगे, और वो खुद भी यही समझ रहे थे कि इनके कले यानी इनके संगीन मजबूत कले इनको अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे। बस इन पर अल्लाह का अजाब ऐसी जगह से आ पड़ा कि इन्हें गुमान भी न था, और इनके दिलों में अल्लाह ने रोब डाल दिया। नोट करें, सच्चे मोमिन से गैर मोमिन डरता है। ईमान सच्चा हो तो क्या थे हथियार अल्लाह के नबी और सहाबा के पास, और पेशकदमी कर रहे हैं। लेकिन कुफार के दिलों में रोब था और वो अपने घरों को आप ही अपने हाथों उजाड़ रहे थे। जरा सा रुकिए इस पे। है तो जुमला यहूद के लिए, क्योंकि जब उनको पता चला कि हमने इन घरों में नहीं रहना, तो उनकी चौखटे तक तोड़ दी, छतें गिरा दी कि चलो हमें नहीं मिलता, इनको ना मिले, लेकिन मैं इस मैदान से निकाल कर आपको घर के मैदान में रखती हूँ। हाईलाइट करिए, बाद में सोचिए, और इस जुमले को अपने और अपने घर वालों के ताल्लुकात पे लीजिए। क्या मैं खुद अपने हाथों ही अपने घर को उजाड़ तो नहीं रही? कुछ बच्चियों से ये गलती हो जाती है। कुछ बच्चे भी नेक बच्चियों की कदर ना करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहने को चूज करके यही गलती करते हैं, और कुछ तो कई साल साथ रहने के बाद भी अपने घरों का आप ही उजाड़ते हैं। जब शादी के कुछ अरसे के बाद किसी और लड़की या औरत से आंखें लगी, तो बेचारी बीवी जो लड़की से औरत बन गई, उसको छोड़कर आप जवान बच्ची के साथ किसी की फिर रहे हैं। तो अपने घरों को अपने हाथों से मत उजाड़िए। अगर दुनिया को आपने दीन और इस्लाम देना है ना, तो पहले अपने घरों में सुकून कायम कीजिए। दीन वाले घरानों की बातें बाहर जाएं तो लोगों को और इससे ज़्यादा अच्छा तरने वाला क्या चाहिए? तो दीन वाले अपने घरों के झगड़े खुद से ख़त्म करें। और मुसलमानों के हाथों बर्बाद करवा रहे थे, बस आंखों वालों इबरत हासिल करो। और अगर अल्लाह ताला ने इन पर जिला वतनी को मुकर्रर ना कर दिया होता, तो यकीनन इन्हें दुनिया में भी अजाब देता और आखरत में भी, तो इनके लिए आग का अजाब है ही। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो भी अल्लाह की मुखालफत करेगा तो अल्लाह ताला भी सख्त अजाब करने वाला है। तुमने खजूरों के जो दरख्त काट डाले, या जिन्हें तुमने इनकी जड़ों पर बाकी रहने दिया, शोशा छोड़ दिया था, छोटी सी एक जंगी टैक्टिस थी, उसके ऊपर अल्लाह के नबी पे इतनी बातें छांटी मदीना वालों ने कि अल्लाह ताला उसी का यहाँ तस्करा फरमा रहे हैं। ये सब अल्लाह ताला के फरमान से था, और इसलिए भी कि फासिकों को अल्लाह ताला रुसवा करे। तो लीडर्स को बुरा कहने से पहले ये देख लीजिए कि उन्होंने ये काम किस हिकमत से किया। और साहबा का ये ट्रस्ट आप देखिए कि सुलह हदैबिया के मामले में भी हम देखा है कि उनको बज़ाहर कोई बात समझ भी ना आए, फिर भी वे उफ नहीं करते थे। और इनका जो माल अल्लाह ताला ने अपने रसूल के हाथ लगाए, इसको फ़ै कहते हैं। गनीमत वो होती है जो लड़ाई लड़ने के बाद मिले, फ़ै ऐसे जो वैसे ही मिल गया बगैर लड़ाई के, टैक्स और इस तरह की चीज़ों से। फरमाया, जिस पर ना तो तुमने अपने घोड़े दौड़ाए हैं ना ऊँट, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूल को जिस पर चाहे गालिब कर देता है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बस्तियों वालों का जो मालिफ है, अल्लाह ने तुम्हारे लड़े भिड़े बगैर अपने रसूल के हाथ लगाए वो दिया, यानी जो तुम्हें बगैर लड़ाई के मिल गया, अब वो किसको मिलेगा? वो अल्लाह का है, रसूल का, और कराबत वालों का, और यतीमों मिसकीनों का, और मुसाफिरों का। यानी इसमें आप फौजियों का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि वो तो गए नहीं उस जंग में, या गए हैं तो कुछ किया नहीं, तो उसको बराबर करके पांच हिस्सों में बांट दिया जाएगा, जो 10वें पारे की पहली आयत में हम पढ़ चुके, वालम अन्नमा गनिमतुम, वो खुमस जो निकला था वो इधर है। यहाँ से अब दौलत का नुक्ता नज़र इस्लाम में क्या है सुनिएगा, ताकि तमाम दौलतमंदों के हाथ में ही ये माल गर्दिश करता न रह जाए, और तुम्हें जो कुछ रसूल दे दें, वमा अताकुम अर्रसूल फखुज़ूहू वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू, और जो रसूल तुमको दे दें उसको तुम भी ले लो, और जिससे रसूल रोके रुक जाओ, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, यकीनन अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। फै का माल इन महाजिर मिस्कीनों के लिए जो अपने घरों और अपने मालों से निकाल दिए गए, वो अल्लाह के फजल और उसकी रजामंदी के तलबगार हैं, और अल्लाह ताला की और उसके रसूल की मदद करते हैं। यही रासबास लोग हैं, यानी वो अंसार अल्लाह जो दिन रात अल्लाह के दीन में लगे रहते हैं, उनको इसमें से हिस्से दो, ताकि वो पूरे फोकस होकर अपने काम को कर सकें। तो देखिए आयत 7 में इस्लामी मईशत का बड़ा ही खूबसूरत असूल है। सिर्फ इस एक आयत पे एक सेमिनार हो सकता है कि इस्लाम दौलत के मामले में क्या कहता है। कई ला यकून दूलतम बई नलगनिया मिनकुम, यानी मनी सिर्फ अमीर लोगों में ही ना रहे, जिसको आप कहते हैं हीप्स ऑफ दी गोल्ड एंड डायमंड एंड रुपीज एंड डॉलर, सिर्फ चंद लोग ना बन जाए। आज जो दुनिया में आपको एक बहुत ही इम्बैलेंस चीज़ दिखती है, वो यह कि अमीर अमीर तर है और गरीब गरीब तर है। 200 खानदानों के हाथ में पूरी दुनिया की दौलत है, जिसके आगे बड़ी बड़ी ताकतें भी सर झुकाए बैठी हैं। इसके बरक्स इस्लाम माल के बारे में क्या कहता है कि माल सिर्फ दौलतमंदों के दरमियान न गर्दिश करे, बल्कि सब लोगों तक पहुंचे। इसीलिए देखिए सदका, ज़कात, खैरात, उशर और ये सारे जो कफारे हैं, ये रखे गए कि गरीबों को मिले। इसी तरह इस्लाम इर्तकाज़े दौलत को पसंद नहीं करता, यानी मनी टू मनी, बस वो गठियाँ गिन गिन के रखो या स्टेटमेंट्स देख देख के खुश होते रहो, ये नहीं पसंदीदा। लेकिन इस्लाम कमाने को पसंद करता है, जमा करने को पसंद नहीं करता। माल को जमा करना और बुखल करना नापसंदीदा अमल है। माल को खर्च करें खुद पर और अहलो याल की दुनिया और आखरत के लिए, अल्लाह की राह में और उसके बंदों पे। याद रखिए मर्द जो अपने पर खर्च करता है वो भी सदका, और जो घर वालों पर करता है वो भी सदका। आप कहती हैं देख पका के गरीबों को खिलानी है, छोड़िए चार पतीलियाँ 4 दिन में पका के घर वालों को एक एक दिन खिला लें। किचन में जब जाए ना उस वक्त इस बात को याद कीजिएगा। मर्द कमा के लाते हैं, ग्रोसरी लाते हैं, जिस शौक और जौक से लाते हैं अजर मिलेगा उनको। बीवी को संभाल के बगैर ज़ाया किए अच्छी नीयत से पकाना है, जलाना नहीं, ज़ाया नहीं करना, और फिर खुशी से खिलाना है, तो मियाँ को भी सदका का अजर मिलेगा, बीवी को भी मिलेगा इंशाल्लाह। गैर इस्लामी माशरे में दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम से फितने और फसाद जन्म लेते हैं। इसको तो मैं एक लफ्ज़ में समेट दूँ तो फिर आगे आप खुद समझ लें, इकोनॉमिक टेररिज्म, बस इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ नहीं बोल सकती। पूरी दुनिया आज इस एक रूल के ऊपर नचाई जा रही है, और उसी के अंदर सब बैंकिंग और सब इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है कि निकल नहीं पा रहे। उगलने को दिल करता है उगल नहीं जा रहा, निगलने को दिल चाह रहा है निगला नहीं जा रहा। तो आज अगर मुसलमान पढ़े लिखे लोग दुनियावी इकोनॉमिक्स पढ़ कर आ गए हैं, पूरी दुनिया के इश्यूज ख़त्म हो जाएं। ये जो बेचारी छोटी छोटी कुवतें और अफ्रीका के जंगलात और थर्ड वर्ल्ड में जो गुर्बत है, ये सब ख़त्म हो, लेकिन बड़ी ताकतें इसको ख़त्म नहीं होने देंगी, क्योंकि मोनोपोलीज हैं। तुम भी बड़े मैं भी बड़े, तो फिर हमारी बातें कौन मानेगा। दूसरी चीज़ इस आयत में बड़ी प्यारी है कि जो तुमको रसूल दें, वमा आताकुम रसूलु फखुज़ूहू वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू, ये है हदीस की हुज्जत। अल्लाह के नबी की इताअत असल में अल्लाह की इताअत है। आपके हर फैसले, हर हदीस, हर सुन्नत को दिल की खुशी से कबूल करना, आपके बताए हुए अवामिर और नवाही की पैरवी करनी है, यानी डूज एंड डोंट्स, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक भी अदा करना है, मोहब्बत भी करनी है, और उनके मिशन में भी जाना है, और इन पर ईमान लाने का ये तकाजा है। सहाबा किराम इसी आयत से इस्तदलाल लेकर हुक्मे रसूल को कुरान के हुक्म के मिसल और वाजिब तामील करार देते थे। जी यानी मैं आपके लिए जुमला आसान कर दूँ कि जिस तरह कुरान से कोई बात हलाल हो सकती है, हराम हो सकती है, हदीस के ज़रिए भी कोई भी चीज़ हलाल या हराम हो सकती है। तो हदीस और सुन्नत को अहमियत ना देना इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है। एक जुमला लिखिए, अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात में फ़र्क है, क्योंकि वो खालिक है, ये मखलूक है, वो आबिद ये माबूद है, ये बंदा है वो आका है, लेकिन बात एक ही है। अब सुनिए, अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात में फ़र्क है, बात एक है, बस ये है इस आयत का खुलासा। और इसी आयत पे एक औरत ने किस तरह अब्दुल्ला बिन मसूद से आकर बहस की थी प्लकिंग के बारे में, कि वो औरतें जो भवों के बाल बनाती हैं वो अल्लाह की रहमत से दूर हैं। कहने लगी, क्या ये हुक्म कुरान में है? कहाँ है, चली गई उम्मे याकूब नाम आता है उस औरत का हदीस में। آگے چند دن میں کہنے لگی، سارا قرآن کھول کے دیکھا، مجھے تو یہ حکم کہیں نہیں ملا کہ عورت پلکنگ نہ کرے. کہا اچھا ادھر آؤ، یہ آیت کھول کے دکھائی. کہا دیکھا، یہ آیت سنی تھی، پڑھی تھی جی. ہاں یہ تو پڑھی ہے. تو کہا جاؤ پھر اس نبی کی زبان سے یہ حکم ہے کہ ایسی عورت لعنت میں ہے. کہنے لگی آپ کی تو بیوی کرتی ہے یہ کام. کہا اچھا میں ادھر بیٹھا ہوں، جاؤ دیکھ کر آؤ قریب سے اس کو. واپس آئی کہیں کہ سوری معاف کیجیے، اس کے قدرتی طور پہ بال نہیں ہے. کہنے لگے سنیے یہ جملہ، مردوں کو مسئولیت، وہ مرد جن کی بیویاں بھموں کے بال مونڈتی ہیں ان مردوں کا فرض ہے، ذمہ ہے، مسئولیت ہوگی کل ان سے کہ آپ نے اپنی بیوی کو اس سے کیوں نہیں روکا. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں اگر میری بیوی یہ کام کرتی تو میرے نکاح میں نہ رہتی. اللہ مردوں کو اتنا بنا دے باشعور. عورتیں کہتی میاں چاہتے ہیں، یعنی عورتوں کی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھی کی دلیل نہیں لگتی. کہتی پلکنگ چھوڑنی ہے، میاں نہیں چاہتے. کیوں میاں آپ کو اتنے غور سے دیکھتے ہیں؟ کس مرد نے اپنی بیوی کے بال گنے ہیں کہ اس کے ماتھے پہ کتنے بال ہیں؟ صرف شیطان کا گھونسلہ ہے. مردوں کو ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں کہ خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو. بات یہ ہے کہ جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے. یہ بھی ایک سٹوری ہے اس کے اندر کہ کیسے ایک صحابی اپنے مہمان کے ساتھ خود ہی ہلکا ہلکا کھاتے رہے اور مہمان کو خبر بھی نہ ہوئی، اور اندھیرا بیوی نے کر دیا چراغ صحیح کرنے کے بہانے. واقعہ آپ سن چکے ہیں، صرف بتا رہی ہوں کہ یہ بھی ایک سٹوری اس واقعے کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح گئے، کہا صحابی تو نے رات کو کیا کیا؟ کیا کیا اللہ کے نبی؟ کہا خود بھوکے رہے اور مہمان کو سارا کھلا دیا. کیوں؟ اللہ نے آیتیں نازل کر دیں، وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. تو یہ ہے مہمان نوازی. یہ نہیں کہ مہمان کو دے کے پیزا چھپا دو، مہمان کو دے کے چاکلیٹ چھپا دو، نہیں جائیں گے تو کھائیں گے. بخل گھروں میں جب آ جاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلانے پہ اتنا شوق، اور اگر نند کے بچے آ گئے تو ان سے چھپا لو، تو یاد رکھیں یہ بھی آج دین کے سے دوسروں کو دور کرنے کی علامت ہے. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے دین سے آپ کے رشتہ دار، آپ کے قریب کلوز سرکٹ فیملی خوش ہو، دل کھول کے کھلائیے. ان کے آنے پہ اتنی خاطر کیجئے وہ کہ بھابھی آپ کتنی اچھی ہو گئی ہیں. پہلے تو وہ دال لمبے شربے والی اور ایک پتلا سا پلاؤ پکا کے کھلاتی تھی، یہ آپ کتنی اچھی ہو گئیں. اپنی بیٹیوں، بیویوں، بہنوں، بھابھیوں کو سکھائیے جب دین پہ آئیں تو اور سگڑ ہو جائیں، اور اچھے کھانے پکائیں اور اچھے کھلائیں، تو انشاءاللہ دیکھیے جب وہ سوچیں گے کہ ان میں ایک پازیٹیو چینج آ گئی ہے تو اچھی چیز تو پھر اچھی ہوتی. کوئی مانے نہ مانے، اقرار کرے نہ کرے، دل میں تو میاں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اچھا کھانا بناتی ہے، بس میں ہی ذرا غصے میں آ جاتا ہوں اس کے ساتھ بات بات پہ. تو بہرحال آگے دیکھیے ایک آیت آنے والی ہے بہت ہی پیاری، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. دلوں کے تزکیے کرنے اور بغض سے پرہیز کی دعا ہے. اگر آپ کا دل ہر وقت میلا ہی رہتا ہے، کچھ لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے بلیو می، ہر وقت وہ دوسروں سے خلاف، اینٹی پیپل، ڈپریسنگ پیپل، ایک ہوتے ہیں نا اینٹی ڈپریسنگ گولی، وہ ڈپریسنگ گولی ہوتے ہیں، کوئی ان کو اچھا ہی نہیں لگتا، ہر بندے کی برائی کھول کے لائیں گے، کچرا ہی کھولنا انہوں نے، ان کو کسی میں خوبی آج تک دکھی نہ. تو یہ دعا یاد کر لیجئے، جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے یہ عمل ہے. اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے، اور یاد رکھیں یہ دعا آپ سیکھ چکے ہیں، چوتھا پارہ تھا غالباً جس میں ہم نے اخوت پہ بات کی تھی، تب سے یہ لسٹ میں موجود ہے پوری دعا. اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال. یہ تو مانگیے. آج لوگوں کو سب سے برے دین والے لگتے ہیں، تو اگر رات جاتے دینداروں سے کوئی بغض اور برائی محسوس ہوتی تو اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے دل صاف کر دیں. کوئی ڈسٹ بین ہے آپ کا میرا دل کہ جس میں صرف ٹریش ہی آئے گا؟ آپ اپنے دل کو ایک واس بنائیے جس میں پھول لگتے ہیں، لوگوں کی خوبیاں چنیں. اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت اور محبت کرنے والا، اور خاص طور پہ شوہر کا دل بیوی کے لیے اور بیوی کا دل شوہر کے لیے ایک گلدستے کی مانند ہونا چاہیے، ایک گلدان جس میں گلدستہ آئے. اچھی عادتیں چنیے شوہر کی، بہت خوبیاں آپ کے شوہر میں، اور آپ بھی اپنی بیگم کی خوبیاں ڈھونڈیں گے تو انگلیاں ختم ہو جائیں گی، خوبیاں ہوں گی. کیا ہر وقت ایک دوسرے کی نیگیٹو چیزوں کو لے بیٹھے؟ ایک چھوٹی سی ٹپ جو اکثر لوگوں کو دیتی ہوں جب بھی کبھی دکھ سکھ کے پروجیکٹ میں کسی کا معاملہ سامنے آتا ہے، یہ بھی خرابی، یہ بھی خرابی، یہ بھی خراب، میاں ایسے نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، کماتے نہیں، کھاتے نہیں. میں کہتی ہوں آپ گھر جا کر ایک کاغذ قلم لے کر 10 خوبیاں لکھیں اپنے میاں کی، اور یہی بات میاں کی بیوی کو کہہ دینا، تو یقین کر اگلے دن میسج آتا ہے ہمارا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا، تھینک یو سو نائس، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں. اللہ کا شکر. خوبیاں چنیے لوگوں کی، خامیاں نہ چنیے. کیا آپ نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بل ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ عبداللہ بن ابی کی جھوٹی تسلیاں ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، جو اپنے ساتھ کو دیں اور کسی کی مدد نہ کی وقت پہ غزوہ بنو نذیر میں اور اس کے اراؤنڈ کی جنگوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ قطن جھوٹے ہیں۔ دیکھیے، سیرت آتی ہو نا تو قرآن سے جلدی سے آپ گزر نہیں سکتے۔ میں کہتی ہوں کتنے خوش قسمت ہیں، وہ لوگ 20 منٹ میں پارا پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور جو تراویوں میں پڑھتے ہیں پارے، ماشاء اللہ ایسی گاڑی چلی کہ پھر رکی تو وہ پھر کہنا چاہیے کہ فاتحہ سے شروع ہوئی تو ناس بھی پوری ہوئی۔ میں ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک واقعے کو اپنی آنکھوں میں ایسے کھلا دیکھتی ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا میں اس کو چکھائے بغیر آپ کو آگے جانے دوں۔ وقت تو نہیں ہوتا اور اوپر بھی ہو رہا ہے، مجھے اندازہ ہے، لیکن یہ صدقے کریں گے نا تو انشاءاللہ اس قرآن کی روح ملے گی آپ کو۔ اور میں سوچتی ہوں یہ ایک معجزہ ہے جو اس سال ہمارے سامنے ہے، کہ صرف 2.5 گھنٹے کے اراؤنڈ، 10 منٹ اوپر نیچے جو بھی کر لیجئے، ہم 2.5 گھنٹے میں کم از کم 8-10 گھنٹے کی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف اللہ کا معجزہ ہے، میں تو اس میں کہہ سکتی ہوں ساتھیوں کے بعد اللہ کی مدد ہے کہ میں آپ کے سامنے کسی پارے کو پورا کر کے چلی جاتی ہوں۔ اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ یہ اپنوں کے بھی نہیں بنتے جو آپ کے نہیں۔ عبداللہ بن ابی اگر اللہ کے نبی کا نہیں بنا نا تو وہ ان کا بھی نہیں بنا جن کو یہ تسلیاں دلا رہا ہے۔ مسلمانوں، یقین مانو کہ تمہاری خیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی خیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکتے، بستلی ہے اس قوم کے اندر۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہو، یعنی بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے، یا زلزلہ پروف بلڈنگز میں بیٹھ کر دور سے یہ گولیاں پھینک سکتے ہیں، سامنے نہیں آتے۔ فرمایا قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے، گو آپ انہیں متحد سمجھتے ہو، تحسبہم جمیعاً، اللہ کہتے ہیں ان کے تو دل آپس میں بڑے پھٹے ہوئے، وقلوبہم شتا، تم سمجھتے ہو یہ سب غیر مسلم آپس میں بڑے خوش ہیں، تو یہ صلیبی جنگیں کس کی تھیں؟ آپ دیکھیں کہ جیوز اور کرسچن کی جنگوں سے ریکارڈ بھرے پڑے ہیں، تو مت سوچئے کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہیں، یہ آپس میں بھی بہت لڑتے ہیں، اور بزدل اتنے ہیں کہ سامنے نہیں آتے، سازشوں کے جال بنتے ہیں، لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ پہلے گزر چکے، جنہوں نے اپنے کام کا ببال چکھ لیا، اور جس کے لیے الپناک عذاب ہے، یہ بھی اسی گروہ کی طرف اشارہ ہے جس کی بات چل رہی ہے اوپر، شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو وہ کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ ذرا سا شیطان کا یہ جملہ تو نوٹ کیجئے، کیا کہہ رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ کون سا ڈر ہے جو آپ کو پھر گناہ سے روکتا نہیں؟ تو کچھ لوگوں کا ڈر ایسا ہی ہے، منہ سے کہتے ہیں بڑا ڈر لگتا ہے، اس تو ہائٹ بڑا ڈر لگتا ہے، اور پھر کہتے ذرا اگلی فلم دکھانا، اور کیا تھا، ذرا یہ کرو۔ تو یاد رکھیے کہ ڈر وہ ڈر ہوتا ہے جو آپ کو نافرمانی سے بچائے، صرف اللہ کا ڈر رکھتا تھا لیکن نافرمانی سے نہیں بچا۔ شیطان کی ٹیمپٹیشنز کا ذکر ہے، کیسے اکساتا ہے، گناہ کر لو، کچھ نہیں کچھ نہیں ہوتا، پھر شب قدر آ رہی ہے نا، اس میں توبہ کرنا، نفل پڑھ لینا، کھانے کھلا دینا، دنیا میں ولی بنا ہوتا ہے، قیامت کے دن خزول بنے گا، پیچھے پڑ چکے ہیں سورہ فرقان میں، خزولہ جو مشکل میں ساتھ چھوڑ دے۔ تو اس جنگ میں بھی شیطان نے کچھ اسی قسم کا معاملہ کیا تھا، اسی کی طرف اشارہ کر کے آپ کو مجھے سکھایا جا رہا ہے کہ آج شیطان کی باتیں جس شوق سے مانو گے، کل اسی طرح سے وہ تمہیں چھوڑ کر دوسری طرف جائے گا۔ سورت ابراہیم میں تو آپ شیطان کی تقریر سنی چکے ہیں، اب ہے وہ رکوع جس میں اس صورت میں آپ کو دنیا کا نہیں آخرت کا حشر یاد دلایا جا رہا ہے، میدان محشر میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، نوٹ کیجئے، اس ایک آیت میں دو دفعہ اللہ کا تقوی اور ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ تقوی نہ ہو تو پھر نماز، روزہ، قرآن بھی فائدے نہیں دیتے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل کے لیے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ اکبر، کل، یہ وہ کل نہیں ہے آپ جو پوچھتے ہیں کل کیا پکائیں گے، ہائے بچوں کا کل کیا ہوگا، ان کی شادیاں کہاں ہوں گی، آج ہم پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی کوششیں کرتے ہیں، یعنی اس موت کے بعد کی زندگی کا نام ہے ایک بگ کل، اور یہ جو آج کی زندگی ہے نا 40-50-60 سال، یہ ایک بگ آج ہے، ٹوڈے، آج یہ मसलों में खप के कल जो ख़त्म नहीं होने वाला उसको ज़ाया ना करो। आज के लिए इतने मसरूफ़ हैं कि कल आखरत का ख़तरा फ़िक्र मिलता ही नहीं। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारी सारी इंजॉयमेंट जहाँ धरी की धरी रह जाएगी, जिस कल के बाद कोई नया सूरज नहीं निकलेगा। और ये वो लोग थे जो ईमान का दावा तो करते थे लेकिन कल की तैयारियां नहीं थी, ना नमाज थी ना रोज़ा था, कलमा तो पढ़ते थे उसके तकाजे पूरे नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे लेकिन और बड़े इलाह भी थे, नमाजें भी पढ़ते थे लेकिन गुनाह नहीं हटा, दुनिया की ख्वाहिशात पूरी करने में और लाइफस्टाइल को ना बदलने के लिए थे। तो अल्लाह कहते हैं वल तंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगत, अल्लाह से डरते रहो। क्यों? ताकि कई ईमान वाले नहीं डरते, अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। और उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को भुला दिया तो अल्लाह ने भी इन्हें अपनी जानों से गाफिल कर दिया, और ऐसे ही लोग नाफरमान और फासिक होते हैं। अहले नार और अहले जन्नत बराबर नहीं हो सकते, जो अहले जन्नत है वही कामयाब है, जो अहले नार है वो नाकाम है, क्योंकि दो डिफरेंट स्टाइल हैं। यह है दो कौमी नज़रिया जिसकी बुनियाद पर दो मुल्क अलग हो गए थे। आज हम कैसे उसी शिर्क के साथ बर्दाश्त कर लें दूसरी चीज़ों को? और ये कुरान जो इस वक्त आपके मेरे सामने, पता नहीं हमारे दिलों पे इसने एक दराड़ भी डाली कि नहीं, लेकिन अल्लाह ताला का फैसला सुनिए। लो अनजल ना हाजल कुरान आला जबल राई तहु खाश या मुतसद्दिया मिन खशियत अल्लाह, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तू देखता कि खौफ इलाही से वो पस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। हम इन मिसालों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, खुले छुपे का जानने वाला, मेहरबान और रहम करने वाला। पूछिए आपके दिल पर इस कुरान ने कितनी बिजलियां तोड़ी। अल्लाह कहता है ये पहाड़ पे नाजिल होता तो वो खशियत इलाही से दबता। आज हमारा क्या हाल है? बिल्कुल इसके बरक्स। ये भी आज का एक फितना है कि ये कुरान हमारे दिल में दरार नहीं डालता। देखिए दरारें ना डलें तो पानी कैसे जाएगा अंदर? आपने कभी पहाड़ों पे सब्जा उगा और बड़े बड़े दरख्त देखे हो? नहीं देखे तो नॉर्वे जाकर देखिए, इतने बड़े दरख्त के उनकी जड़ें भी बाहर आ चुकी हैं बूढ़े लोगों के हाथों की तरह। तो पहाड़ों में पौधे लग जाते हैं, तुम्हारे इस दिल में क्यों नहीं जा रहा कुरान का पानी? कितना सुन चुके, आज 28वां पारा भी अल्लाह की रहमत से होने वाला। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा दिल इतना सख्त है, इतना बंजर है। देखिए सिमट के ऊपर सारा दिन बारिश होती रहे, इधर बारिश खत्म उधर साफ, हालांकि क्रैक्स वाली ज़मीन पे बारिश पड़ेगी तो 2-4 दिन पानी रहेगा, पानी खुश्क होगा तो अंदर से छोटे छोटे पौधे और बूटियाँ निकल आएंगी। पूछिए इस दौरे कुरान के पानी ने मेरे दिल में से क्या निकाला? आज हमारा हाल क्या है? कुरान को अहमियत ही नहीं देते, कुरान को पकड़ के छोड़े बैठे हैं, कुरान के हकूक़ अदा नहीं करते, और इसके लिए वक्त ही नहीं निकलता। रमज़ान में सुन रहे थे बहुत है, बागे तो नहीं हो सकता, सॉरी जॉब भी है काम भी है, जो रमज़ान के बाद के लिए अभी से सोचे बैठे हैं। किसके बाद? नहीं मैं सुन सकता, मैं नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, आई एम सो बिजी। वो भी छोड़ दे और छूट जाएगा उससे, ये भी याद रखिए। इसी तरह कुरान के बाद हिस्से पर अमल करना और बास को छोड़ देना, फतू में नूना भी बात दिल किताब भी व तकफुर होना भी बात, पहले पारे का फितना इसी के बेस पे था, अधूरी इताद का फितना, कहाँ वक्त चला। अब देखिए एक वक्त था कि पहाड़ लग रहा था दौरे कुरान, आज अल्लाह ने चाह तो आखिरी सीढ़ियाँ आ गई हैं। बिल्कुल इसी तरह जो बंदा अभी अपनी इसलाह का काम शुरू नहीं कर चुका होता ना, उसको लगता है इट्स इम्पॉसिबल, चुप करो अब गंदे ही रहो, कोई नहीं साफ हो सकता, खप जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं, ये बहुत लंबे हो, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, फिर इतना वक्त पता ही नहीं चलेगा, ये दौरे कुरान नहीं पता चला, सबीलुल जन्ना भी नहीं पता चलता। लोगों की गवाही हमारे पास मौजूद है, कैसे कुरान घरों में खैर लाता है, खुशियाँ लाता है, और वक्त का एहसास होता ही नहीं है। तो अपने कल को सामने रखेंगे तो सिर्फ दुनिया के गमों में नहीं पड़ेंगे। और अल्लाह को कैसे बंदा भूलता है? अब देखिए ना कि अल्लाह ताला के साथ बंदे का मामला ऐसा हो जाता है कि जैसे अपने आप को ही भूल गया। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, तो अल्लाह को भूलना कैसे होता है? नज़रअंदाज करना, लो प्रायोरिटी पे रखना, लीज प्रायोरिटी, अल्लाह के हुक्म पीछे दुनिया के हुक्म आगे, खसारा है, बैंकरप्सी है। अल्लाह ने तो आखरत की तरफ तवज्जो दिलाई थी मगर इन्होंने रुख ही नहीं किया। फनसा हम अनफुसम, बाजार लगता है अल्लाह इनको भूल जाएगा, नहीं, जरा जुमला देखिएगा, फनसा हम अनफुसम, अल्लाह ने इनको इनकी जानें भुला दी। कैसे? मकसद हयात भूल गए, अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया इबादत भूल गए, अपनी और अपनी औलादों की इसलाह करना भूल गए। वो कहते हैं ना कि तू मेरा नहीं बनता अपना तो बन, वो इसी आयत पे शेर है कि जब अल्लाह का नहीं बनता ना तो अपना भी नहीं होता और आखिर शराब कबाब में चला जाता। याद रखिए अल्लाह से दूर शख्स हमेशा डिप्रेस होगा, स्ट्रेस में होगा, खुदकुशी करेगा, क्योंकि अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नल कुलूब, चीज़ों का मज़ा अल्लाह की याद में है, हम चीज़ों में मज़े ढूंढते हैं। आज भी दुनिया के तरक्की याफ्ता और खाते पीते मुल्कों में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और सबसे ज़्यादा सुसाइड है। खुशियों का नुस्खा है अल्लाह की मोहब्बत। आज जन्नती बन जाइए या जहन्नमी बन जाइए, बराबर है, दोनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको कुरान सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको फिक्शन सीखने और पढ़ने और उस दुनिया की चीज़ों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब आपका मेरा काम है किस मैदान में मेहनत करें। आज तक दुनिया के मैदान में थे ना, आप ज़रा थोड़ी सी दीन के मैदान में मेहनत कीजिए, फिर देखिए क्या खूबसूरत तरीके होगा। दोनों में मेहनत भी चाहिए, वक्त भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, साथी भी चाहिए होते हैं। तो अल्लाह ताला आपको मुझे अपनी कंपनी बदलने की दावत देते हैं। और आगे आखिर में देखिए अल्लाह ताला की सिफात, वही अल्लाह है। जिसको डिप्रेशन हो ना, वो इन आयतों के तर्जमे पे गौर करें, आपका दिल खिल जाएगा कि मेरा अल्लाह इतनी खूबियों वाला है, मैं क्यों परेशान हूँ। और आखिरी आयतें बड़ी प्यारी हैं, इनको याद भी कीजिए। हो अल्लाह ला इलाहा इल्ला हो, अल्लाह वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह नहायत पाक, सब ऐबों से पाक, अमन देने वाला, निगेबान, गालिब, जोरावर और बड़ाई वाला, पाक है अल्लाह इन सब चीज़ों से जिन्हें ये इसका शरीक बनाते हैं। वही है अल्लाह पैदा करने वाला, वजूद बख्शने वाला, सूरत बनाने वाला, इसी के लिए नहायत अच्छे नाम है। हर चीज़ ख्वाब आसमानों में हो या ज़मीन में, इसकी पाकी बयान करती है, और वही गालिब हिकमत वाला है। सूरत हशर का आगाज हुआ था सब्बहलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध से, और अंजाम देखिए इख्तिताम युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति व अर्ध वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। कभी सोचा था आपने पहले इस बात को सुनने से पहले? सब्बह माजी का सीगा है, युसब्बिहु हाल और मुजारे का। सिर्फ सूरत हशर की इन दो आयतों को देख लें तो आप कहें कि बंदे मोमिन की जिंदगी का आगाज भी अल्लाह के नाम पे और इख्तिताम भी अल्लाह के नाम, उसकी सिफात पे गौर करते से बंदे को कुछ मिलता है। तो ये थी सूरत हशर, जिसने हमें अपना हशर नहीं याद दिलाया तो फिक्र की बात है, हम किधर पड़े हुए हैं। याद रखिए कि जितना ज़्यादा इंसान अल्लाह के करीब आएगा, उतना उसको अपनी फिक्र लगेगी। हक के मुखालिफिन का बुरा अंजाम देकर इबरत हासिल करना सीखा, हुक्मे रसूल की तामील में असल ईमान है। माले फ़ै के हकदार देखे कौन थे, यानी जो माल दुश्मनों से मिला, जो कुछ आगे भेज रहे हो इस पर गौर करो। और ये जो आए थे ना वल तंजुर नफसुम, शायद मैंने इस पे बीसियों नहीं सैकड़ों बार दर्स दिया। इब्तदाई दौर के सारे दर्स मेरे इन्हीं आयतों पे होते थे। यही चीज़ें जिससे फिर इंसान का किबला बदलता है, क्योंकि यही आज ज़रूरत है करने की। लोगों को तो ये पता ही नहीं, वो आज के गमों में जी रहे हैं, आज आंखें बंद हुई तो कब्र में क्या जवाब देंगे इसकी फिक्र ही नहीं है। तज़ीमुश शान कुरान की बयान है कि पहाड़ भी इसके आगे ना ठहरे, हमारे दिल शायद पहाड़ों से भी सख्त हो चुके। अगली सूरत है मुमतहिना, इम्तिहान है, सच्ची बात है, मोहब्बतों का इम्तिहान है, यानी इम्तिहान देने वाली। लफ्ज इम्तिहान मुमतहिन इसी से है। 13 आयात है, आइए गो में पढ़ कर देखते हैं कि आपके मेरे लिए इसमें क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, मेरे और खुद अपने दुश्मनों को अपना दोस्त न बनाओ। तुम तो दोस्ती से इनकी तरफ पैगाम भेजते हो और वो इस हक के साथ जो तुम्हारे पास आ चुका कुफर करते हैं। पैगंबर को और खुद तुम्हें भी महज इस वजह से जिला वतन करते हैं कि तुम अपने रब पर ईमान रखते हो। अगर तुम मेरी राह में जिहाद के लिए और मेरी रजामंदी की तलब में निकलते हो तो इनसे दोस्तियां ना करो। तुम इनके पास मोहब्बत का पैगाम पोशीदा तौर पर भेजते हो, और मुझे मालूम है कि जो तुमने छुपाया और वो भी जो तुमने जाहिर किया, तुम में से भी जो इस काम को करेगा वो यकीनन राह रास्त से भटक जाएगा। अगर वो तुम पर कहीं काबू पा लें तो वो तुम्हारे खुले दुश्मन हो जाएं और बुराई के साथ तुम पर दस्त दराजी और जुबान दराजी करने लगें और दिल से चाहने लगें कि तुम भी कुफर करने लग जाओ। तुम्हारी कराबतें, तुम्हारी रिश्तेदारियां और औलाद तुम्हें क़यामत के दिन काम ना आएंगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा जो कुछ तुम कर रहे हो, और इसे अल्लाह ताला खूब देख रहा है। देखिएगा इस वाक्य को, अहलो याल की मोहब्बत कहाँ ले गई हातिब बिन अबी बलता को। बदरी सहाबी थे, सच्चे और मुखलिस थे। जब इनको पता चला कि अल्लाह के नबी मक्का की तरफ एक लश्कर लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए अल्लाह के नबी ने दुआ की थी कि अल्लाह इस मामले को आखिरी वक्त तक मख्फी रखना, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मक्का में खून बहे। इनको खबर हो गई, करीब वालों को बहुत सारी बातें तो बतानी होती हैं। इनके दिल में एक ख्याल आ गया कि मेरे बच्चे मक्का में अल्लाह के नबी जा तो रहे हैं, तो मैं पहले उनको एक पैगाम दे दूँ ताकि अगर जंग हुई तो मेरे बीवी बच्चों को कोई कुछ ना कहे। ये था फितना बीवी बच्चों की मोहब्बत का। और फिर वो खबर अल्लाह के नबी को वही के जरिए मिल गई। आपने हजरत अली के साथ एक दो लोगों को भेजा, जाओ रोखा नाम के मुकाम पर एक सारा नाम की औरत है, उसके पास एक खत तो वो लेकर आओ। साहबी निकले, तेजी में जा रहे हैं, दूसरा कह रहे थे आहिस्ता चलिए, शायद औरत इधर उधर हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, गलत कहते हो, अगर अल्लाह के नबी ने रोहा का नाम लिया तो वही होगी वो औरत। और वाकई उस जगह देखा तो एक औरत जो असल में गज़वे बदर के बाद मक्का से मदीना मूव हो गई थी, ये कहकर कि अल्लाह के नबी सारे सरदारों को तो आपने मार दिया, वही तो हमारे हुसन से फ़ायदा उठाते थे, नाचती थी गाती थी उनको खुश करती थी, अब मक्का में क्या करना है, हमें मदीना में रख ले। झूठा दावा किया इसने ईमान का, मदीना में आ गई, यहाँ रहती थी, इधर की खबरें उधर उधर स्पाई बन के रहती थी, ये वही औरत थी। कहा तेरे पास खत है? कहा खत नहीं है। कहा तलाशी दे दे वरना हम तुझे पकड़ लेंगे। बालों के अंदर से मीडियो में छुपा हुआ खत निकला। खत क्या था? वो तो एक खाना जंगी थी, खातिब बिन अबी बलता के खिलाफ जुर्म में एक दास्तान थी, साफ लिखा हुआ है कि मक्का के सरदारों अल्लाह के नबी आ रहे हैं, जंग होने वाली है, देखो मेरे इस खत के बदले में मेरे बीवी बच्चों को कुछ ना कहना। खत अल्लाह के नबी के सामने है, उमर का ईमान मचल रहा, अल्लाह के नबी इजाजत दीजिए खातिब की गर्दन को उड़ा दूं। कहा नहीं उमर, सब्र, यहाँ से लीडरशिप सीखिए, बच्चों को सिखाना सीखिए, बड़ा दिल होता है माँ बाप का, लीडर्स का दिल बड़ा होना चाहिए, हर गलती पे मत पकड़िए। ये तो पूरा ट्रेनिंग सेशन है सिर्फ एक वाक्या, कि जब दिल में अल्लाह का डर नहीं होता तो फिर बात भी समझ नहीं आती। अल्लाह के नबी ने खातिब को कुछ नहीं कहा, कहा हातिब इधर आओ, ये भी पता चला कि दूसरे की बात तो सुनिए, पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनिए, एक ही बातों पर आप सारा कुछ फैसला करके ना आ जाए, बताओ भाई खातिब ये क्या है। कहा अल्लाह के नबी सच है, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा ही ना मैं मुनाफिक हूँ ना मेरा ये यकीन है कि मक्का वाले आपके मुकाबले में जीतेंगे, मुझे यकीन है कि आप ही जीतेंगे, मैं तो उन पर एक एहसान कर रहा था और मुझे इस पे माल मेरे बीवी बच्चों की मोहब्बत ने किया, नीयत अच्छी थी ना, गलती बहुत बड़ी है। कहा हातिब तुझे अल्लाह ने माफ़ कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह आज ऐसे दिल बना दे हम दीन वालों के, फिर देखिए लोग आपके पास आएंगे कि अल्लाह के लिए हमसे दीन का काम ले ले। आज दीन का काम ना होने की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम शहादत हक के लिए आने वालों को मौके नहीं देते, और आने वाले भी कुछ बहुत ही ज्यादा लाड़ दिखाने वाले हैं। मामला फहमी से जुड़ जाइए, कुछ चना छोड़िए, कुछ बातें छोड़िए, अकेले ये काम नहीं होता, कल के बारे में आपको गाइडलाइन मिल जाएगी अगर अल्लाह ने आपके नसीब में रखी तो, और अगर आप ना सुने आप बिजी होंगे उस वक्त तो गुजर जाएंगे, चंद जुमले ही होंगे, लेकिन अल्लाह ने आपको मुझे इस वाक्य से क्या सिखाया, अहलो याल की मोहब्बत से ज्यादा अल्लाह रसूल और ईमान की मोहब्बत अहम है, हर अंसारुल्लाह इस पे गौर करे। कई दफा सिर्फ अपने घर वालों की मोहब्बत में अल्लाह के कामों को दांव पे लगा देते हैं, जब आपको अपने बच्चों के काम रुलाते हैं और उसके लिए आप कुर्बानियां और हिजरतें करते हैं तो अल्लाह का दीन इस काबिल नहीं, मेरे समेत आप में कौन कह सकता है कि अल्लाह के दीन के लिए हिजरत की है, अल्लाह के दीन के लिए जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह के दीन के लिए घर क्या मुल्क क्या शहर बदल लिए। अल्लाह ये नसीब करे आपको मुझे, बच्चे अल्लाह ने आपके ठीक करने हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज हम घर वालों का नाम लेके छुट्टियां करते, ढीले डाले रहते और फिर रात जाते की जरूरतें पाली नहीं है, फिर ऐसी नस्लें कैसे आगे चलकर आपके बाद ये दीन का काम करेंगी। फिर दूसरी बात याद रखिए कि रोजे क्यामत अहल याल बचा नहीं पाएंगे, खिलाइए इनको घी के नवाले, लड्डू पेड़े मीठे चीजें जो दिल करता खिला लीजिए, दीन नहीं देंगे आप इन बच्चों को तो कल ये आपकी आंखों के आंसू बनेंगे, आपकी आंखों को खुशी और ठंडक नहीं देंगे, कुर्रतुल्ऐन नहीं बनेंगे आपके। फिर अगर ये सारी बातें मुश्किल लगे तो इब्राहिम की मिसाल, रब के लिए सब कुछ कुर्बान किया जो आगे आने लगी है, कि खानदान और बिरादरियों के आगे चलते हैं, कैसे दिल उनके अल्लाह के साथ जुड़े थे कि जो रास्ते में आता था उसको हटा देते थे, अल्लाह वाले अल्लाह और अपने रास्ते की हर हर्डल को निकालते हैं, जैसे वो चेयर गेम लोग खेलते थे ना एक दौर में, शायद अभी भी खेलते होंगे, रास्ते से कुर्सियां हटाते जाएं, मुश्किल उन्हें हर्डल गेम भी एक होती थी, बस अल्लाह और अपने रास्ते की हर्डल्स को निकाल दीजिए तो इंशाल्लाह मोहब्बतों के इम्तिहान में कामयाब है। इसी तरह मोहब्बत और दुश्मनी का बस एक ही मेयार है, अलहुब्बु फिल्लाह वल बग़्ज़ु फिल्लाह, और अल्लाह के लिए अहलो याल की कुर्बानी देने वालों को अल्लाह दुनिया और आखरत में नवाजता है, जैसे आले इब्राहिम को आज तक नवाजा जा रहा है, और उन्हीं के नामों को अल्लाह बार बार दुनिया में लाते हैं और हकीकत इनमें दिल होते हैं। निसाई की रिवायत है 1441 कि एक मौके पर अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे तो इतने में हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा बच्चे थे, लाल रंग की कमीजें पहनने हुए आए, लंबी थी कमीजें, खेलते खेलते गिर गए, अल्लाह के नबी को याद ही नहीं रहा कि मिंबर पे हूँ, फौरन उतरे और अपनी बात बीच में काटी और उनको गोद में उठाया, वापस मिंबर पे आए और फरमाया अल्लाह ने सच कहा है कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। आज भी जरा माए नमाज पढ़ते देखा करे, पास बच्ची बैठी बच्चा बैठा गिरेगा, हाय मैं मर गई पकड़ लेंगी, तो अपने छोटे बच्चों को किसी और के वाले करके नमाजें पढ़ा करें, दिल तो आपको उसी में पड़ा रहता है। तो हकीकत है कि माल और औलाद फितने हैं, मैंने इन दोनों को इनकी कमीज में गिरते पड़ते देखा तो सब्र ना कर सका, यहाँ तक कि मैंने अपनी गुफ्तगू बीच ही में काट दी और इन दोनों को उठा लिया। अल्लाह ने नबियों के दिल भी माँ बाप वाले दिल बनाए हुए थे, تو فرمائے مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جنس کی تم اللہ کے ماں سوائے عبادت کرتے ہو سب سے بیزار ہیں۔ کہیے آج آپ بھی اپنے من پسند رشتوں اور دوستیوں کے نام پہ یہ جملہ بولیے کہ میں آپ کی یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تک تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ کتنا مشکل لگ رہا ہے آپ کو، سوچ کے بھی جان نکل رہی ہے۔ ہائے، میں ان کے بغیر کیسے جی سکتی ہوں؟ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی، کہ جب اللہ سے پیار ہوگا تو اللہ کے دشمن سے پیار تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے کی ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، یعنی کیپ ڈوئنگ دعا فار دیم، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے محبتوں کے بت توڑے۔ آج ہمارے بھی دلوں میں کتنے بت رکھے ہوئے ہیں، رسم و رواج کے بت ہیں، خاندانوں کے بت ہیں، اولاد کے بت ہیں، ازواج کے بت ہیں، مال کا بت ہے۔ یاد رکھیں کہ عقیدے کی بنیاد پہ جب اختلاف آ جاتا ہے نا، تو پھر ساتھ نہیں رہ سکتا انسان۔ عقیدہ کلچر کو بدل دیتا ہے۔ عقیدہ توحید والے کی زندگی میں ہجرت اور جہاد کے بڑے موقع ہیں، اور وہ یہ موقع ہوتے ہیں جہاں قدم قدم پہ اپنوں سے جھگڑے ہوں گے۔ اور حقیقت ہے کہ آج رخصتوں کا زمانہ نہیں، نو کمپرومائز ایٹ آل۔ حرام کمانے والوں سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا، شرط ہے کہ آپ پہلے ان کو شہادت حق کی گواہیاں پہنچا چکے۔ کلیئر کٹ عقیدے کا اظہار ہے حضرت ابراہیم کے۔ آج ہم فتنہ بنے بیٹھے ہیں، حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو سمجھیے۔ اے ہمارے رب، تمہیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال۔ یہ کیا آزمائش تھی؟ آج مسلمان غیر مسلموں کے راستے میں رکاوٹ ہیں اسلام کے راستے میں، یعنی وہ اسلام کیوں نہیں لاتے؟ آج مسلمان کافروں کے رنگ ڈھنگ میں جب ڈھلیں گے اور ان کے لیے اپنے آپ کو ایسے پیش کریں گے جو تم کرے وہ بھی اچھا ہے، تم ہماری عید مناؤ ہم تمہاری ہولی منائیں گے، جب اس قسم کے کمپرومائز ہونے لگتے ہیں تو یاد رکھیے مسلمان رکاوٹ بن جاتا ہے اس مسلمان کے اسلام میں آنے کی۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، چل رہے نا، ہم بھی پارٹی کر رہے ہیں تم بھی کر رہے ہیں، تم رام کہتے ہو ہم اللہ کہتے ہیں، تم گیتا کہتے ہو ہم قرآن کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آج کل لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں، اس کتاب کو پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھ کر تو فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کس قرآن پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اگر آج ہم اپنے ایمان کی کمزوری کا شکار ہیں تو اس کو علم سے پختہ کیجئے، علم آپ کو قوت دیتا ہے، اور قوت سے کتاب پکڑیں گے، عد بن نواجے، اس کو کچلیوں سے پکڑیں۔ یہ قرآن پکڑنے کے بعد ہی کفر اور شرک کا فرق اور سنت اور بدعت کا فرق پتہ چلتا ہے، اور یاد رکھیے پھر امت میں نور آتا ہے، پھر سابقون الاولون بننے کو دل کرتا ہے، پھر انسان اوپر آتا ہے، پھر دین کی برکتیں آتی ہیں، پھر آپ کا اخلاق اتنا پیارا ہوتا ہے لوگوں میں، خود بخود آپ میں کشش محسوس ہوتی، کوئی نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ یاد رکھیے اخلاق اچھا رکھیے اور بات مانیے سیدھی سیدھی، آپ نے جنت دیکھ لی ہے نا، چلتے جائیے چلتے جائیے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں نا ہائی خاندان، رشتے دار، فیملی، سسرال، آپ چلیے، آپ شاپنگ کرنے جاتی ہیں، میاں کہتے ہیں واپس چلو، تھک گیا تھک گیا، بچہ بھی آپ نے پکڑایا ہوا ان کو، اور اتنے میں آپ کو دور اپنا برانڈ دکھتا ہے، او اچھا نئے برانڈ، عید کپڑے، آپ کو یاد ہی نہیں رہتا میاں بیچارہ پیچھے کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں میں اور نہیں آگے جا سکتا، واپس چلو، اور آپ گھس گئی، آدھے گھنٹے بعد یاد آ رہے وہ کدھر گئے، ہائے وہ تو گھر چلے گئے ہوں گے، مڑ کے دیکھتی ہیں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں بےچارے، کریں کیا، نبھا رہے ہیں آپ کو، بھگت رہے ہیں، کچھ عمر تو واقعی بھگتتے ہیں ساری زندگی بیویوں کو۔ اللہ ایسی مشکل میں کسی کو نہ ڈالے، ایسی بیویوں کو قرآن سے جوڑیے جو آپ کے لیے آزمائش بنی ہوئی ہیں، اور یہی مشورہ مردوں کے لیے بھی ہے، بیویوں کو تو کیا بنا کہ وہ پیچھے آ گئے۔ خاندان تھوڑے دن ناراض ہوگا، دوستیں بھی تھوڑے دن ناراض ہوتی ہیں، بعد میں آپ سے ہی کہیں گی وہ مسئلہ تو پوچھ کے بتانا۔ غیر محسوس طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف لائیے، شرط ہے کہ آپ آگے بڑھتے جائیں۔ یاد رکھیے کہ مرد حال کو سنوارتا ہے گھر میں پیسہ لا کر، عورتیں مستقبل کو سنوارتی ہیں نسلوں کو سنوار کے۔ آج اس عورت کے ہاتھ میں کتاب دے دیجیے، آپ کی نسلیں روشن ہو جائیں گی۔ اسی لیے فرمایا یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی روگردانی کرے تو پھر اللہ بالکل بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ تو دعا آج سے مانگیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا۔ کیسے آج کا مسلمان غیر مسلموں کے لیے فتنہ ہے؟ قرآن اور شریعت پہ عمل نہ کر کے مسلمان غیر مسلم کے لیے فتنہ بنتا، غیر مسلموں سے مرعوب ہو کر ان کی تقلید کر کے، اور رسول کے اسوہ پر عمل نہ کر کے اور مرتد ہو کے، اور خاص طور پہ اپنے اندر اخلاقی برائیاں پیدا کر کے، یعنی جب اعلیٰ اخلاق کی بجائے ادنا اخلاق کا شکار ہوتا ہے۔ آج کے مسلمانوں کو غیر مسلم کیا سمجھتے ہیں، یعنی غیر مسلموں کی نظر میں آج کا مسلمان کیا ہے؟ درد کے ساتھ بولوں گی، دکھ بہت ہے، غیر دیانت دار مسلم، وعدہ خلاف ہے مسلم، شدت پسند ہے مسلم، मुस्लिम औरतों पे जुल्म करने वाले मुस्लिम जाहिल, बेहतरीन किताब के बदतरीन पैरोकार। एक किताब लिखी गई थी वेस्ट में, द बेस्ट बुक विद द वर्स्ट फॉलोअर्स। सर कहाँ छुपाऊँ, शर्म से पानी पानी है इंसान। इस किताब को पकड़ लीजिए, इंशाल्लाह आपके घर संवरेंगे, आपके खानदान संवरेंगे। औरत जिस चीज़ की जिद कर लेती है ना, मनवा लेती है, कहते हैं ना जन हट और रन हट। आज से जिद पकड़ लीजिए, मैंने इल्म सीखना है, क्योंकि तालीम उल उम्मी तालीम उल उम्मती। एक माँ को इल्म देना, एक उम्मत को इल्म देना है, तो आप अपने लिए नियत कीजिए, मैंने अपने घर में दीन लाना है, जो अच्छे खाने खिला सकें शौहरों को, लेकिन नमाजों पे लाना है, और बीवियों को पर्दों पे लाना है। नहीं मानती तो प्यार मोहब्बत एक्स्ट्रा कीजिए अपनी बीवी से। आप दीन के नाम पे स्टबन हो जाएंगे और सख्त करेंगे ना, तो और भी वो औरत दूर चली जाएगी जिसने अभी दीन की नरमी सही नहीं। तो इस्लाम लाने के लिए जरूरी क्या है कि आप और मैं अपने आप को पहले से बेहतर करें। होगा क्या, अगली आयत देखिए, जब किल विद काइंडनेस की कैफियत होती है ना, तो फिर ये आदत आपको मिलेगी कि आज जब कन करीब ही अल्लाह ताला तुम में और तुम्हारे दुश्मनों में मोहब्बत कर दे, यानी वो दुश्मनियाँ जो दीन की वजह से आई थी तुम्हारे आले अखलाक की वजह से दूर हो जाएंगी, और अल्लाह को सब कुदरते हैं और अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी और तुम्हें जिला वतन नहीं किया, इनके साथ सलूक और एहसान करने और मुनसिफाना भले बर्ताव करने से अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता, बल्कि अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। यानी रात जाते बैरत न रखो दीन के नाम पर। एक मसला क्या है कि दीन, और दूसरा यह है कि वो ससुराल था बेचारा। आप ससुराल तो पहले कहाँ अच्छे लगते थे, आप देख लीजिए दुनियादार लड़कियां क्या बड़ी ससुराल की खिदमत करती हैं। नहीं, ये दीन एक ढकोसला है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपने दुनिया के मामलों को बीच में न लाओ दीन के, कि आप उसकी टो में आकर सभी कुछ इधर से उधर कर दो। अल्लाह ताला तुम्हें सिर्फ इन लोगों की मोहब्बत से रोकते। देखिए कैसे पेशबंदियां और हदबंदियां सिखाई जा रही है कि अब दीन के नाम पे कहीं बुरे ना हो जो अपने रिश्तेदारों से और अपने साथियों और अपने दोस्तों से। किन से मोहब्बत नहीं करनी, जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में लड़ाइयाँ लड़ी और तुम्हें देश से निकाल दिया, और देश से निकाल देने वालों की मदद की जो लोग ऐसे कुफार से मोहब्बत करें वो कतन जालिम हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आए तो तुम इनका इम्तिहान लो, ये है मुमतहिना। बीच की ट्रांजेक्शन का दौर था जिसमें ये सूरतें नाजिल हो रही थी, कुछ मक्का से मदीना आ रहे हैं, कुछ मदीना, यानी सुनने के लायक है ये पारे। तफसीर से सुनिए इनको, आप देखेंगे एक एक सूरत आपको अल्लाह के नबी के करीब ले जाएगी इंशाल्लाह। दरअसल इनके ईमान को बखूबी जानने वाला तो अल्लाह ही है, बस अगर वो तुम्हें ईमानदार मालूम हो तो अब तुम इन्हीं काफिरों की तरह वापस ना करो, इनके लिए हलाल नहीं और ना वो इनके लिए हलाल है, और जो खर्च इन काफिरों का हुआ हो इन्हें अदा कर दो, यानी मेहर। यहाँ से औरत के मेहर की हैसियत भी आपको बहुत समझ आएगी। इन औरतों को इनके मेहर देकर इनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं, और काफिर औरतों की नामूस अपने कब्जे में ना रखो, और जो कुछ तुमने खर्च किया हो वो भी मांग लो, यानी अब तुम्हारी बीवियों के जो वहां रह गई उनके हक में तुम इनसे मांग लो, और जो कुछ इन काफिरों ने खर्च किया हो वो भी मांग लें। इंसाफ है, ये अल्लाह का फैसला है जो तुम्हारे दरमियान कर रहा है, अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला और हिकमत वाला है। और अगर तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाए और काफिरों के पास चली जाए, फिर तुम इसके बदले का वक्त मिल जाए तो जिनकी बीवियां चली गई इन्हें इनके खराजात के बराबर अदा कर दो, और इस अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। ऐ पैगंबर, जब मुसलमान औरतें आपसे इन बातों पर बैत करने आए तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिनाकारी ना करेंगी, अपनी औलाद को ना मारेंगी यानी वर्षण नहीं करवाएंगी, और कोई ऐसा बहुतान ना बांधेंगी जो खुद अपने हाथों पैरों के सामने खड़ लें, यानी शादीशुदा होने के बाद भी जिना और बदकारी की तरफ नहीं आएंगी, और किसी नेक काम में आपकी बेहुक्मी नहीं करेंगी तो आप इनसे बैत कर लिया करें, और इनके लिए अल्लाह ताला से मगफरत तलब करें, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और माफ करने वाला है। ऐ मुसलमानों, तुम इस कौम से दोस्ती ना रखो जिस पर अल्लाह का गजब नाजिल हो चुका है, जो आखरत से इस तरह मायूस हो चुके हैं जैसे कि मुर्दा अहले कब्र से काफिर ना उम्मीद हैं। बड़े सख्त कानून है, कुफर और इस्लाम एक है नहीं, मीठी कड़वी चीज इकट्ठी नहीं होगी, ये हमने किया हुआ आज, क्योंकि इल्म नहीं है, पता ही नहीं है ना, देरों में बैठे हुए। तो मोमिन औरतों से अल्लाह के नबी जो बैत लेते थे उसकी ये शिकें हमने देख लिया कि तौहीद पे कायम रहना, रसूल की इत्तबा करना, जिना से दूर रहना और औलादों को कत्ल ना करना, ये चार बड़ी बातें थी जो उस वक्त की मुसलमान होने वाली औरत से ली जाती थी, तो फिर आज की मुसलमान औरत को भी इन्हीं चीजों पे अपने आप को चेक करना है। क्या सीखा इस सूरत से? इंसान की कराबतदारियां और रिश्तेदारियां और औलाद और माल क्यामत के दिन काम नहीं आएंगे। اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لانے والوں سے بیزاری سیکھی. ہونا پڑے گا یہ بیزار آپ کو، ورنہ لوگ ایسے ہی خوش ہو کے چلے جائیں گے، چلو ہم بھی اچھے آپ بھی اچھے. آپ کی تھوڑی سی بے اتنائی دوسرے کو ضرور سیکھنے پہ اور سوچنے پہ مائل کرے گی، شرط ہے کہ وہ آپ سے سچی محبت کرتے ہوں. چلے اللہ کی محبت نہیں تھی، آپ کی تو تھی نا، تو آپ کی محبت ان کو اللہ کی محبت تک لے جائے کہ آپ یہ صدقہ جاریہ نہیں لینا چاہتے. پھر اسی طرح سے منکرین حق سے محبت اور دوستی کی ممانعت ہے، عقیدے کا موضوع ہے، اس کو پڑھیے، بہت اہم موضوع ہے آج کے خاص طور پہ ان مسلمانوں کے لیے جو نان مسلمز کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل کے رہتے ہیں. پھر اسی طرح مومنہ عورتوں کو واپس لوٹانے کی ممانعت اور خواتین کا طریقہ بیعت. آگے ہے سورت صف، ڈسپلن. امت مسلمہ کی صفیں دیکھیے، صافات دیکھیے. آج ہماری نماز کی صفیں سیدھی نہیں تو جنگ کی صفیں کہاں سیدھی ہوں گی. 61 نمبر کی صورت ہے اور اس پہ ہم نے ایک سیمینار کیا تھا، سننے کے قابل ہے. کیا خوبصورت کریکٹر بلڈنگ ہے، اور شہادت الناس کے رنگ میں ادھر بھی پڑھایا تھا کہ کیسے دین کا کام کرنے والوں کو اپنے اندر خیر لانی ہے کہ وہ دوسروں کو دیں. تو جب موقع ملے سن لیجئے گا، آپ کو ابھی تو کچھ گائیڈ لائن پھر بھی ملے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. آپ بھی کہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. زمین و آسمان کی ہر ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے. اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ قول اور فعل کا تضاد دور کرو. تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت کے ہیں. اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے، میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو؟ حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں. بس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. سچ ہے جی بات، آپ تھوڑے سے ٹیڑھے ہوں، باقی ٹیڑھا آپ کو لوگ خود ہی کر لیں گے. قرآن سے قریب رہیں گے تو سیدھے رہیں گے. آج چھوڑ کے تو دیکھیے، ایک آدھ سال کے بعد ہی آپ خود کو پہچانیں گے. نہیں، لوگ بھی نہیں پہچانیں گے آپ کی تصویروں اور پروفائلز کو دیکھ کر. یہ وہ ہیں جو قرآن پڑھتی پڑھاتی اور اس کی مدد کرتی تھی. تو اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کے لیے صفوں کے ساتھ رہیے، جڑ کے رہیے، مل کے رہیے. اکیلی 1.5 انچ کی مسجد نہ بنائیے. 1 انچ کو تو ویسے ہی لوگ وکٹیں بنا لیں گے یا چولہا بنا کر اس پر چائے پانی پیتے ہیں. دین کی عمارت میں کہیں کھپ جائیں، اکیلے کرنے کا یہ کام ہی نہیں ہے. ترتیب اور ڈسپلن کی اہمیت ہے صفوں میں، ثابت قدمی اور اطاعت امیر ہے، باہم اتحاد و محبت ہے، دین کا حسن اور خوبصورتی ہے، اور اللہ کی خوشنودی اور مدد کے حصول کا ذریعہ مل کے رہو. الگ الگ ٹولیوں میں بٹنے کی بجائے ایک سٹریم لائن سے جڑ جاؤ تاکہ تمہیں سپورٹ بھی ملے. روایت ہے مسلم میں 6585 حضرت ابی موسیٰ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کی عمارت ہے جس کے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی. یہ ٹیم ورک ہے، یہ کام کریں گے تو آپ کی بہت ساری کمیاں چھپ جائیں گی. جو لوگ اکیلے ون مین شو بن کے جیتے ہیں ان کی خیر خامی دکھے گی، ذرا چند دن گزرنے تو دیجیے. جیسے کہ اب ہائی وے پہ گاڑی تو ڈال چکے، اب آپ کو سٹاپ گیئر ہی نہیں آتا، آپ کو سپیڈ کنٹرول نہیں آتا. جبکہ ہم ساتھ مل کے کام کرتے ہیں نا، لیکن کہ میں اپنے اوپر لیتی ہوں، میری کتنی کمزوریاں ہیں، کتنی خامیاں جو آپ کو آج تک پتہ ہی نہیں لگی. 28 باروں میں کچھ پتہ لگتی ہوں گی کہ میرا ٹائم اوپر جاتا ہے، یہ میں خود بھی مانتی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، آپ بھی معاف کیجیے. لیکن یہ ساتھی جو میرے ساتھ دن رات لگے رہتے ہیں نا اللہ کے لیے، یہ میری بہت ساری کمی بیشیوں کو دور کرتے ہیں. اللہ ان پہ کروٹ کروٹ رحمتیں کرے. جو بھی اس پلیٹ فارم پہ سامنے باہر آگے پیچھے اللہ کے اس کام میں میرے ساتھ مددگار ہے، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتی ہوں کہ اللہ ان کی کوششوں سے شاید ان کو وہ نہ ملے جو ان کو ان دعاؤں سے مل جائے. تو صف بندی اجتماعیت ہے. شہادت حق کا کام اکیلے کریں گے، روز رو کے سوئیں گے، دوسروں کے ساتھ ملیں گے ہنس بول کے سوتے ہیں کہ آج کیا ہوا تو کل کیا ہوا. سنیے اب حضرت عیسیٰ اور حضرت خاص طور پہ آگے پھر موسیٰ کے نام سے، اور آپ کو اس میں ایک پیغام ملنے والا ہے. کیا؟ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا ہے، میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جس کا نام احمد ہے. پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے، اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. آگے ہے وہ آیت جس پہ ایک شعر ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، خندہ زن کہتے ہیں ہنسنے والا مسکراتا ہے. پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ساری دنیا بھی آج اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہے تو کان کھول کر سن لے اللہ کا کیا فیصلہ ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ چاہتے ہیں کون جن کو یہ نور اچھا نہیں لگتا قرآن کا, کیا کہتے ہیں, اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں, اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے, یعنی قرآن کا یہ نور کونے کونے میں پھیلے گا. گو کہ کافر برا مانے, وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے اگرچہ مشرقین نہ خوش ہوں. یہ آیت بھی اگلے پارے میں سمجھ آئے گی, پیچھے بھی گزر گئی ہے دو دفعہ, آخری دفعہ آ رہی ہے. یہ تین دفعہ قرآن میں یہ آیت دو دفعہ پڑھ چکے ہیں. تو دیکھیے ذرا اس آیت کو کیا خوبصورت آیت ہے. کفار یعنی نشکرے, منکر, حاسد, دشمن اس کام کو دیکھ کر خوش نہ ہونے والے کیا چاہتے ہیں, اللہ کے نور, اور اللہ کا نور ادھر ہے اللہ کا دین اسلام قرآن. قرآن کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجانے کی کوششیں کر رہے ہیں. آج کا منہ کیا ہے, منفی پروپیگنڈا. میڈیا, سوشل میڈیا کا کردار جو اس اینٹی اسلام ہے, اس دور میں تو چند لوگ ہائرڈ تھے مدینہ مکہ میں جو اسلام کے خلاف لوگوں کو مائل کرتے تھے, آج تو ماشاءاللہ فوجوں کی فوجیں, پورا حزب شیطان اس کام پہ لگا ہوا ہے. اسلام مخالف چینلز, اسلام مخالف ویب سائٹس, اسلام مخالف آرٹیکلز, اسلام کے مخالف اشتہارات, اسلام سے مخالف سائن بورڈ, ایسے ایسے سائن بورڈ دکھاتے ہیں کہ مسلمان عورت جیسی مظلومی کوئی نہیں, اور اسلام مخالف نیوز چینلز. یہ ہیں سارے منہ جو آج اس اسلام کو بجھا رہے ہیں. کیا ہوگا, اللہ کہتے ہیں واللہ متم نورہ, اللہ اپنے نور پورے کرتا ہے, کسی کو فکر نہیں کرنے کی ضرورت, کام سیدھا کیجئے, باقی بات اللہ پہ ڈال دے. بہت زیادہ ساز چیزیں ہیں, کانسپریسیز, یہ ہو رہا ہمارے, کچھ نہیں فکر, آپ کام کیجئے بس, جو کر رہے کرنے دیجئے, اس پہ خود پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے شہادت حق میں اتنا بزی کر دے کہ ہمیں فکر ہی نہ رہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بڑی خوبصورت ڈیل دے رہے ہیں, ایک خوبصورت تجارت ہے. اے ایمان والو, کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. کیا جواب ہے ایمان والوں کا, تھک گئے, کمر میں درد, ہائے پارا ختم ہونے پہ نہیں آ رہا. تو آپ جا سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, بعد میں سن لیں, لیکن بات تو یہ ہے اس سودے کو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ لائیو ڈیل پہ لینا پڑے گا. کیونکہ جب ڈیل ہو رہی ہوتی ہے وہ تو چلی گئے, آپ بعد میں اس کی ریکارڈنگ سنیں گے تو پتہ چلا سارے شیئر تو نہیں کیے کیونکہ کوئی اور لے گیا. کیا خوبصورت آیتیں, آئیے دیکھیے گا. اور آپ نے ہر ایک پہ لبیک کہنا ہے اپنے لیے, اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لو, بولیے لبیک, اور اس کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو لبیک, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو لبیک کے علم سیکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچا دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور صاف ستھرے گھروں میں. کس چیز سے صاف ہے؟ سود سے صاف ہے, پاک گھر ہیں, شراب, رشوت, گندگی, خرابیوں سے پاک گھر ہوں گے جنت کے. اللہ آج گھروں کو دنیا میں بھی پاک کر دے, ہر لڑائی جھگڑے سے پاک کر دے, ہمارے گھروں کے اندر جو کمی بیشیاں اس کو دور کر دے, ظاہری گھروں میں جو کمی بیشیاں ٹوٹ پھوٹ ہے اس کو بھی دور کر دے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے ٹوٹیوں کو ٹھیک کرانے کا, اللہ تو خود ہی ٹھیک کرا دے, ہماری خرابی نہ ہو. اس طرح اللہ سے باتیں کیا کریں. اور وہ گھر کون سے جو جنت عدن میں ہوں گے؟ جنت عدن وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا آپ کے میرے لیے. اللہ ہمیں وہاں کا چکر لگوا دے, اللہ ہمیں ضرور جنت عدن دکھائے. بڑی خواہش ہے میرے دل میں اس کو دیکھنے کی, فینٹسی ذہن میں آتی ہے. اور وہ جو الف لیلوی کہانیاں جو بچپن میں پڑھی ہوں گی جنت عدن کے تذکرے کے ساتھ ہی وہ یاد آتی ہیں. فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے, بس اتنا ہی دے گا. بندہ کہتا اچھا پھر دین پہ جاؤں گی, اچھا اتنا کچھ آپ روز کہتے ہیں کرتے ہیں تو پھر جنت مل جائے گی. اللہ کہتا ہے نو, صرف جنت تو نہیں ملے گی, وہ اخرا تو ہبو نہا, اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا. اب تو آپ کھڑے ہو جائیں, بیٹھے کیا نعمت ملنے والی ہے اس ڈیل میں, اور کیا ہے, وہ پیزا ڈیل ہوتی ہے نا, اچھا اس میں وہ فرینچ فرائز بھی ہیں, اچھا اس میں وہ بھی, اچھا اچھا وہ بھی, اچھا ہیش پپیز بھی ہیں, اوکے اوکے گڈ. اللہ بھی اس ڈیل میں کچھ چیزیں ڈالتا ہے. اصل میل تو آخرت کا ہے, مان لیجئے اس شاد کے کام میں اصل میل تو آپ کو آخرت میں ملنا ہے. دنیا میں چھوٹی سی سائڈس کی چیزیں ملتی ہیں, اور وہ ہے نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اللہ میں مومن بنا دے, یہ لاڈ پیار بندہ کر ہی سکتا اس وقت اللہ سے جب ایمان سچا ہوگا. تو اللہ دنیا کی فتح بھی دے گا, اللہ کی مدد بھی ملے گی. فتح کا وعدہ نہیں ہے, لکھ لیجئے مومن فتح کے لیے کام نہیں کرتا, मिल गई तो खुश, नहीं मिली तो भी खुश। और ईमानदारों को खुशखबरी दे दो, ए ईमान वालों, फिर करो क्या? अब इस पे आपने मैंने लब्बैक कहना है अपने लिए। या अय्युहल लज़ीना आमनु कूनू अंसारुल्लाहि कमा क़ाला ईसा इब्नु मरियम। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह तआला के मददगार बन जाओ जिस तरह हज़रत मरियम के बेटे ईसा ने हवारियों से फरमाया कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बनेगा। अल्लाह के नबी को भी मददगारों की ज़रूरत है जी। इस्लाम का गलबा हो नहीं सकता जब तक अच्छे साथी ना मिले। हवारियों ने कहा अल्लाह की राह में मददगार हैं, पस बनी इसराइल में से एक जमात तो ईमान लाई और एक जमात ने कुफर किया, तो हमने मोमिनों की इनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद की, पस वो गालिब आ गए। अल्लाह आज हमें भी गालिब कर दे। तो सूरह सफ़ के तनाजर में अल्लाह का हुक्म, और अफसोस के साथ कहूँगी आज का मुस्लिम आपकी बातें नहीं हो रही, बाहर वालों की बातें हैं। जो कुरान के लिए इतना वक्त देते हैं वो ऐसे लोग नहीं होते, इसलिए अपने ऊपर मत लीजिएगा। अल्लाह का हुक्म क्या है कि दीन इस्लाम को तमाम अदियान पर गालिब करना। आज के मुसलमानों में से अक्सर किस फितने का शिकार हुए? मुसलमानों का गलबा दीन के लिए काम न करना। नहीं 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 हो सकते, नहीं हो सकता, ख़त्म, मुसलमान बर्बाद। नहीं नहीं तौबा करो, हम नहीं कर सकते ये काम, खुद कर लीजिए, हमसे ना उम्मीद रखिएगा। अपने बच्चों से आज एक जुमला पूछिएगा, वो सब अंसारुल्लाह और जो जिम्मेदारान मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे, कि अल्लाह ना करे बच्चों अगर हमें कुछ हो जाए तो क्या तुम हमारा अल्टरनेट बन जाओगे नूरुल कुरान में? चले छोटे बच्चे तो आगे जाके कहेंगे ना कि बड़े होके बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जवान बच्चों से आज पूछिए, अपनी बेटियों से बैठा कर पूछिएगा और अपने जवान बेटों से पूछिएगा, अगर आप वाकई आज इस काम को कर रहे हैं कि बेटा खुदा ना आस्ता मुझे कुछ हो जाए तो तुम इस काम को संभाल लोगे, और उनको तैयार कीजिए, अभी से तैयार कीजिए, कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए हमारे साथ। फिर इसी तरह अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि मुसलमान कान न बुन जान मरसूस बने, सीसा पिलाई दीवार, होल ना कर सके, सुराख ना कर सके, इनकी वहदत को कोई ना तोड़े, इनके टीम वर्क को तोड़े ना कोई। और आज मुसलमानों का सीसा पिलाई की जगह रेत की दीवार बनना, एक धक्का देना रेत की दीवार को तो गिर जाती है। आज तो शीट रॉक है, जोर से पाँव मारिए तो एक घड़ा पड़ जाता है आज की दीवारों में, ऐसे कच्चे घर हैं। कुछ मुसलमान भी इतने ही कच्चे, कुछ अंसारुल्लाह भी इतने ही कच्चे होते हैं, उनको पता ही नहीं टीम वर्क में करने के काम क्या होते हैं, अपने जोश और जज्बात में अपनी ही टीम को तोड़ जाते हैं। अल्लाह हिदायत और समझ भी दे और हिकमत भी दे दे, अब ना आई तो कब आएगी। इसी तरह अल्लाह चाहते हैं मुसलमान अंसारुल्लाह बने, और मुसलमानों में कुछ अल्लाह के हुक्मों को ना मानकर आज अंसारु शैतान बने बैठे हैं। हिजबु शैतान का जिक्र सूरत हशर में पड़ा है। तो सवाल कीजिए, आज का मुसलमान गलबा दीन में अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर पा रहा? पहली वजह अहलो याल, बच्चे घर, बच्चे बच्चे घर घर, ऐसे लगता है दुश्मनों के बच्चे पाल रहे हैं, सांपों के बच्चे पाल रहे हैं हम लोग। क्या कोई अल्लाह ने दुश्मनों को कह दिए कि इनको पकड़ो और इनको दीन से रोको? हर बात पे इन दो गरीबों को क्यों रोक दें? आपके बच्चे नहीं रोकते आपको, माजरत, आपके शौहर ऐसे नहीं है, आपको डील नहीं करना था उनको, और आपकी बीवियां भी कोई इतनी हद से नहीं गुजरी हुई, आप ही सख्त हो गए हैं ज्यादा दीन के नाम पे, लेकिन आज हम नाम यही लेते हैं। इसी तरह गलबा दीन के मकसद से नावाकिफ हैं, जो आगे जाकर देखेंगे, इज्तिमाईयत और इत्तेहाद नहीं आज मुसलमानों में, डिसिप्लिन की कमी, मुनज्जम नहीं है, जिद्दोजहद करने का जज्बा नहीं, बस एक घंटा काफ़ी है दिन में, हफ्ते में एक ही पढ़ा है, बास तो कहते हैं महीने में एक दफ़ा कुरान सुनना, दैट्स इट, दैट्स ओके। और सबसे बड़ी वाली के प्लानिंग नहीं, आप कोर्स शुरू करें और आपको पता ना हो ये ख़त्म कब होगा, तो ये ऐसे ही कि नेविगेटर में डाला ही नहीं जाना किधर और गाड़ी हाईवे पर डाल दी, कभी वो कोर्सेज नहीं चलेंगे, वो क्लासें ख़त्म हो जाती हैं बिलाखिर जिनके अंदर प्लानिंग नहीं होती। अल्लाह रसूल और कुरान से ताल्लुक नहीं आज हमारा, काफिरों की इस्लाम और जिहाद मुखालिफ मुहिम का शिकार हो गए। लफ्ज़ जिहाद बोलना तो गाली लगती है, कहते हैं किसने सुना तो नहीं, हाय हाय हमारा नाम तो नहीं आ गया इस लफ्ज़ के साथ। जब मुसलमान इतना डिफेंसिव होगा तो बताइए क्या आया गलबा होगा इस्लाम का, घर में नहीं आज हो पा रहा शाद तक तो दुनिया में कहाँ गालिब करेंगे इस्लाम को। अल्लाह में हिदायत दे दे और खुशफहमियाँ दूर कर दे हमारी। इसी तरह अल्लाह के दीन को गालिब करने के दुनियावी और उखरवी फ़ायदों से ना वाकिफ़ है। पूछिए ज़रा उन लोगों को, मुझे उन लोगों से मिलने का इश्तियाक होना चाहिए जो शहादत हक की गवाहियाँ दे रहे हैं दिन रात, सुनाए ज़रा उनके घरों में क्या है और उनके शोहरों के दिलों में उनके लिए क्या प्यार है और उन बीवियों के दिलों में अपने शोहरों की कितनी इज्जत है, ये तो उसको पता चलता है जो इस मैदान में कूदता है। हम तो दूर से फीकी जिंदगियां गुजारे, सूखे रिश्ते होते हैं, दोनों मियाँ बीवी का एक गोल बन जाए दीन दीन दीन। देखिए जो अल्लाह मोहब्बत डालेगा, क्या आयशा की मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी? आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह आयशा को वाकई सिद्दीका बना दे। आज इन आयशा को अभी से पकड़ कर सिखाइए कि तुम्हें मैंने इसलिए पैदा किया, इतने दर्द मैंने इसलिए सहे हैं। हम कहते बड़े होकर क्या करोगे, हमारा बुढ़ापे का सहारा नहीं। बच्चों तुमने मेरे बाद दीन सीखना है। जो गम याकूब को लगा था ना, मा ताबुदो ना मैं बादी, और कब वो इस हजर याकूब अल मौत पढ़ के आए सारी बातें। ये गम लगाइए आज अपने घर में बैठ गए। मियाँ बीवी की बातें ही होनी चाहिए डाइनिंग टेबल पे बैठते हुए, कौचिस पे बैठे हुए, चाय का कप हाथ के। बेगम क्या करें दीन के लिए भाई? मियाँ सब आप बताइए, ये आइडिया है, ये ख्याल, ये घरों में हलचल लाएंगे तो फिर अगली सीढ़ी पे पहुंच चढ़ेगा। आज घरों में दीन नहीं है, आप कहते हैं फलां मुल्क मुसलमान हो जाए, आपके तो अपने मुसलमान मुल्कों में आज दीन नहीं है। माजरत से मेरी सख्ती को बर्दाश्त कीजिए, यही फैशन है। देखेंगे जहाँ ये मौजू आ जाता है वहाँ दिल चाहता है कि दिल खोल के सामने रख दिया जाए। फिर एक और वजह अमली निफाक और गफलत वाली जिंदगी। आज हम परेशान हैं, हाय ग्रोसरी क्या लाने, याद नहीं आ रहा, वो देखो जरा फ्रिज में क्या चीज़ नहीं, क्रीम है, कीमा है, फलां है। ये गम है आज हमारे मुसलमानों की माओ के, और बापों के गम कुछ और ही बड़े हैं बेचारों के। कमा कमा के बूढ़े हो गए, कमर दोरी हो गई, एक शादी बच्चे की करते हैं 2 साल तक बजट सीधा नहीं होता, कर्जे तो शायद 6-7 साल के ले जाऊंगे आगे तक। ऐसा मुसलमान दुनिया में इस्लाम को गालिब करेगा? तो लिखिए अहलो याल और हुब्बे दुनिया और माल की मोहब्बत के फितनों में शिकार मुसलमान। आज गालिब नहीं आ रहा, ये आज मेरी आपकी वजह से दुनिया में इस्लाम नहीं आ रहा। मत किसी बड़ी ताकत का नाम लें और मत किसी सियासी लीडर को बुरा कहें। और अल्लाह ने आपको मुझे इतनी प्यारी नफावत तिजारत दिखाई है आयत 10 से 13 में, कि अल्लाह पर ईमान ले आओ, तौहीद पुख्ता कर लो, रसूल पर ईमान ले आओ, इत्तबाए सुन्नत हो जाएगी, और जान और माल को खपा दो अल्लाह के रस्तों में, जिहाद कर लो। नतीजा क्या है? तुम्हारी पिछली जिंदगी के गुनाह माफ, तुम्हें जन्नत अदन मिलेगी और अल्लाह की मदद और फतह तुम्हारे साथ होगी। क्या बात, अल्लाह ने कहकर खूबसूरत मुकाम पे रोक दिया आपको। मुझे जरूरत इस बात की कि हम सूरत सफ से ये बातें सीखें। इफाए अहद ईमान की अलामत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से खातमुल अंबिया की पेशन गोई हुई और 100% नफा बख्श तिजारत की बातें की गईं। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सहाबा कराम की रुदात, उनको पता चल गया था कि आने वाले नबी को अच्छे साथी मिलने वाले हैं, जो वाकई ठुके हुए और मोहरें लगे हुए थे। अल्लाह ताला आपकी मेरी मदद करते। आगे है सूरत जुमा 62 नंबर की सूरत आयत 11, पढ़ते हैं और देखेंगे कि इस्लाम में जुमे की अहमियत और आज के मुसलमानों की उससे गफलत क्या है। दौरे हाजिर के मुसलमानों का फितना के जुमे की अहमियत को कम कर दिया, हॉलीडे छुट्टी का दिन बना लिया, इस्लाम दुश्मनों के मुशाबियत में ब्लैक फ्राइडे को मना लिया। माशाल्लाह कितने खुश हैं मुसलमानों का तो फ्राइडे ब्लेस्ड होता है, ब्लैक तो कभी नहीं होता। हाँ ब्लैक फ्राइडे वो है जिस फ्राइडे पे आप जुमे की नमाज नहीं पढ़ सके और कमाते रहे या सोते रहे और खाते रहे। इस्लाम में जुमे का दिन बड़ा अहम है। होली डे है यानी इबादत का दिन है, खास दिन है, सूरह कहफ पढ़ने का दिन है, नमाज जुमा के अहतमाम का दिन है, और दुरूद शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करने का दिन है। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें, कहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम वला आली इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध अल मलिक अल कुद्दूस अल अज़ीज़ अल हकीम। सारी चीज़ें जो आसमान और ज़मीन में हैं अल्लाह की पाकी बयान करती हैं। जो बादशाह नहायत पाक है, गालिब और बाहिकमत है, वही है जिसने अनपढ़ यानी नाख्वानदा लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो इन्हें इसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और इनको पाक करता और इन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। यकीनन ये इससे पहले खुली गुमराही में थे। और दूसरों के लिए भी इन्हीं में से जो अब तक इनसे नहीं मिले, ये आपका मेरा जिक्र है, जो लोग अल्लाह के नबी के बाद आए, और वही गालिब बाहिकमत है। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अपना फजल दे, और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल का मालिक है। जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया फिर उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, इनकी मिसाल इस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें लादे हो। अल्लाह की बातों को छुटलाने वालों की बड़ी बुरी मिसाल है, और अल्लाह ताला ऐसी जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। बगैर अमल के इल्म गधे का बोझ है, आयतें लिखी हुई हैं सामने, इसमें कोई इनकार कर नहीं सकता। तो अमल करेंगे तो ही ये बोझ आपके लिए एक प्रोटेक्शन और अम्ब्रेला की सूरत में ढलेगा। कह दीजिए कि यहूद, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो दूसरे लोगों के सिवा, तो तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। ये कभी भी मौत की तमन्ना न करेंगे बवजह इन अमाल के जब आगे अपने हाथों भेज रखे हैं, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते फिरते हो, भाग रहे ना आज के इंसान, इंश्योरेंस करा लो मौत ना आ जाए, एंटीबॉडीज ले लो, ऑर्गेनिक फूड खा लो, हर वक्त अपनी ही तो नब्ज़ें देखते हैं, कभी ब्लड प्रेशर चेक कर लो तो कभी शुगर टेस्ट कर लो, तुम मौत से भागते हो, वो तो तुम्हें पहुंच कर रहेगी। फिर तुम सब छुपे खुले के जानने वाले अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे और वो तुम्हें तुम्हारे किए हुए तमाम काम बतला देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जुमे के दिन नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख छोड़ दो, ये तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और बकसरत अल्लाह का जिक्र किया करो ताकि तुम फलाह पालो। और जब कोई सौदा बिकता देखे या कोई तमाशा नजर आ जाए तो इसकी तरफ दौड़ जाते हैं, यानी मैचेस हो रहे हैं, खेल हो रहे हैं, तो भी नमाजें नहीं जुमे की, और कारोबार बिजनेस ट्रेडिंग में तो जुमे चले गए, ग्राहकों का आता देखकर कौन दुकान बंद करे, और आपको खड़ा ही छोड़ देते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह के पास जो है वो खेल और तिजारत से बेहतर है और अल्लाह ताला बेहतरीन रोजी रिसा है। तुम रोजियों को अल्लाह से मांगो, तुम क्यों दुनिया की तरफ जा रहे हो? तो देखिए आयत 9, फसविला जिक्रुल्लाह व जरुल बई, जुमे के बारे में हुक्म क्या है कि इस वक्त पे तिजारत नहीं हो सकती, कोई कारोबार कोई जॉब जो इस वक्त पे की जाएगी वो कमाई हलाल नहीं होगी एक मुसलमान भाई के लिए। पहली कौमों को तो पूरा पूरा दिन रुका, असहाबे सब देख चुके हैं हफ्ते का पूरा दिन, आज भी जो बहुत सख्त यहूद हैं वो हफ्ते वाले दिन बिजली का बटन भी नहीं खोलते, काम नहीं करना। नसारा के लिए संडे का दिन था, आपके मेरे लिए जुम्मे की चंद घड़ियां। दौरे हाजिर के मुसलमान नमाज छोड़कर अपने दिल पर स्याह धब्बे लगवाने को तैयार हैं, क्योंकि हदीसें बड़ी सख्त हैं कि जो मुस्तकिल जुम्मा छोड़ता है अल्लाह उसके दिल पर ठप्पा लगाता है, फिर ईमान ही अंदर से निकल जाता है। फिर अहलो याल के फितने में कैसे हैं कि जी क्या करें, फिर बीवी बच्चों को रिस्क भी तो देना है, फिर दुकान बंद कर दी तो क्या होगा, चलो बारी बारी पढ़ाएंगे। आपकी दुकान पे लिखा होना चाहिए क्लोज फॉर जुम्मा, ताकि दूसरे भी देखें कि मुसलमानों को अल्लाह का हुक्म अपने माल पे ज्यादा प्यारा है। अहलो याल को दुनियावी सहूलियात फराहम करने के लिए ज्यादा घंटे काम करना, ओवर टाइम, सारी रात जो ब्रदर काम करते हैं, कहाँ फजर और कहाँ जोहर और कहाँ असर गई, हाँ मगरिब से पहले उठेंगे क्योंकि अगली रात फिर जाना है, जुल्म है अपने ऊपर। मत कमाइए इतना कि आपकी नमाजें फौत हो जाएं। अहलो याल की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दीन को बाजी पे लगा देते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमाए। घरों में ये जो फितने हैं ये डिसऑर्डर है असल में और कुछ भी नहीं, जो सारी रात सोएगा वो दिन में जागेगा, जो दिन में जागेगा वो रात को सोएगा, तरतीब ही बदल गई। तो जुमे का दिन बड़ा अहम है, इसकी सुन्नत और दुरूद शरीफ के फजाइल हैं, मिसवाक करना, गुसल करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, सूरत कहफ की तिलावत करना, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना, तवज्जो से खुतबा सुनना, ये सुन्नतें हैं। इसी तरह दुरूद शरीफ के कुछ फजाइल हैं, एक मरतबा दुरूद पढ़ेंगे तो 10 रहमतें उतरेंगी, क्या पता वो रहमत आपको 10 बीमारियों से दूर कर दे, 10 गुनाह माफ होंगे, हो सकता है आपकी 10 बुरी आदतें छुट जाएं और 10 नेकियां लिखी जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा नज़दीक वो होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद भेजेगा। तिर्मिजी की रिवायत है, बुखारी की रिवायत है 9:10, जिसने जुमे के दिन गुसल किया, खूब पाकी की, तेल या खुशबू इस्तेमाल की, फिर जुमे के लिए चला और दो आदमियों के बीच में ना घुसा, यानी मेहनत रखे, सफ़े नहीं तोड़ी, और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आए और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके इस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह हमें जुमे की नमाजों को मस्जिदों में पढ़ने वाला बना दे। मोमिनों को जुमे के लिए हुक्म क्या है? अजान पर दौड़ो नमाज के लिए, खरीदो फरोख छोड़ दो और लहव लायक में तो पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं। खास तौर पे जुमे के दिन को अहमियत दीजिए, ये एक ईद के दिन की तरह होना चाहिए। अजवाज और औलाद को इसकी अहमियत से आगाह करें, बच्चों को और औरतों को नमाज में जुमे के लिए साथ लेकर जाइए और बच्चों और घरों में खोकर जुमे के कीमती लम्हात को ज़ाया न करें। सिलसिला सहीहा की रिवायत है 2998, आपने फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी कब्र के पास एक फरिश्ता मुकर्रर किया है, जब मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद भेजता है तो वो फरिश्ता मुझे कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां बिन फलां ने आप पर अभी दुरूद भेजा है। सुबहान अल्लाह, तो फिर रोजे पे जाकर इतनी बातें करने की क्या जरूरत है, जहां बैठे अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजिए। क्या सीखा? कुरान पाक आफाकी किताब हिदायत है, बेअमल आलिम ऐसा है जैसे किताबों से लदा हुआ गधा। जुमे का दिन क्या है उसकी अहमियत देखी और तिजारत इबादत और सलातुल जुमा के कुछ मसाइल देखे, और याद रखिए कि जन्नत में भी एक जुमे का दिन होगा जिसको यौमुल मजीद कहेंगे। अल्लाह ताला में फायदे वाला बना दे। सूरत मुनाफिकून, नाम सुन के डर लगता है। तीन गिरोहों का तذکرہ सूरह बकरा के शुरू में देखा था, उसमें तीसरा गिरोह मुनाफिकून था, वो यहाँ भी आ गया। 63 نمبر کی صورت ہے، 11 آیتیں ہیں لیکن اندر جھانکنے پہ مائل کرتی ہیں یہ آیتیں، بغیر ڈسٹریکشن کے سننے والی چیزیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ سننا سن سن کر سن ہونے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ واقعی اس پہ عمل ہو. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. عبداللہ بن ابی کے نام ہے یہ آیت. دل میں کھوٹ تھا لیکن بڑا بننا چاہتا تھا، یہ دکھاتا تھا میں اللہ کے نبی سے بڑا کلوز ہوں اور آپ کو اپنی جھوٹی محبت دکھاتا تھا. جمعہ کی نماز کے وقت مسجد کے بالکل باہر ڈور پہ کھڑا ہوتا، اور ظاہر ہے کہ وہاں تو لوگ خود ہی آ جائیں گے، تو آتوں کو دیکھتا کہتا جلدی آؤ جلدی آؤ، اللہ کے نبی اندر ہیں، بڑا اچھا خطبہ دے رہے ہیں. بھائی یہ بات کہنی تھی تو پہلے بازار میں کہتے، پیچھے لوگوں کو اللہ کے نبی سے کاٹتا، منہ پہ آ کے ایسی باتیں کہتا. اللہ نے اس کے ذکر میں پوری صورت رکھ دی. اس میں عبداللہ بن ابی کے کچھ اور کال بھی آنے والے ہیں. تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک اب اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقین ہے نا آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی اللہ کو ایسے منافقوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. یعنی کلمہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اسلام والے کہلائیں. بعض لوگ اسی طرح نسبتیں جوڑتے ہیں کہ چلو ایک نام تو لکھ دینا، ایک سائن کر دو، کیا حرج ہے، ایک فارم ہی فل کرنا ہے، لگے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پھر جو بھی ہوگا. یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کا دور اور یہ صورتیں آج کے دور میں آپ اپنے پر نہ لے کے سنیے، اس کو اس دور کے رابطے سے سنیے، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ عبداللہ بن ابی پہ اتنا غصہ کیوں ہے اللہ تعالیٰ کو. اندر سے جڑیں کاٹنے والا تھا، اوپر سے نام تک. اتنا غصہ تو کبھی ابو جہل پہ قرآن میں نہیں دکھا ہوگا آپ کو جتنا اس شخص پہ ہے، کیونکہ اسی کی سرکردگی میں پھر بہت سارے لوگ اللہ کے نبی سے کٹے اور اس کے ساتھ جڑ گئے. بس اللہ کی راہ سے رک گئے، بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پھر ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. اب یہ نہیں سمجھتے، جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوش نما معلوم ہوں گے. منافق کو اپنے جسے کی بڑی فکر ہوتی ہے، جسم کی اور چہرے کی، مہرے کی اس کی طرف اشارہ ہے. یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں. یعنی جب باتیں کرتے ہیں تو ایسی میٹھی باتیں کہ اللہ کے نبی کو لگتا تھا کہ عبداللہ بن ابی سے زیادہ کوئی اچھا نہیں ہے. گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے لگائی ہوئی، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف جانتے ہیں. یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچیے، اللہ انہیں غارت کرے، کہاں سے پھرے جاتے ہو. ہائی لائٹ کریں شاید کو. منافق کو سوکھی لکڑی جو دیوار پہ پینلنگ کے طور پہ لگائی جاتی ہے، اس سے دیا گیا تشبیہ. حالانکہ 13ویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں سورت ابراہیم میں کہ مومن کو ایک درخت سے تشبیہ دی گئی. علم تر کئی فرب اللہ مثلا کلیمت طیبت کا شجرت طیبہ. تقابل دکھیے گا، مومن ایک سرسبز درخت ہے، منافق ایک کٹی ہوئی لکڑی ہے. دیکھیے پانی پڑتا ہے نا تو درخت ہرا ہوتا ہے، سبزہ آتا ہے، پتے پھل پھول آتے ہیں. مومن قرآن سنتا ہے نا تو اس کے دل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. منافق کے اوپر جب قرآن کا پانی پڑتا ہے تو وہ پھول جاتا ہے لکڑی کی طرح. آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی مثال ہے نا، میں نے جب پہلی دفعہ اس کو سنا تو مجھے ایسے لگا کہ ایک چکر آ گیا. کنم خوشبو مسندہ، آرام کوش عیش کوش ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن کا پانی اندر جا رہا ہے. یہ نہیں ہوتا. تو منافق قرآن سن کر اور پھولتا ہے، لکڑی پھول جاتی ہے نا پانی میں، گیلی لکڑیاں. تو منافق قرآن میں سے صرف وہ چیزیں چن رہا ہوتا ہے جو اختلافی ہوں اور دوسروں کو فتنوں میں ڈالنے والی. اس کے برعکس مومن قرآن سے جڑا ہوا ہے. ماشاء اللہ آپ کتنے سال سے درختوں کے جڑے ہوئے ہیں نا. میں اسٹوڈنٹس کو کریڈٹ دوں گی کہ جو جڑے پڑے ہیں درخت کی طرح زمین میں کھدے میں، آج تک انہوں نے اپنے آپ کو طالب علمی سے اوپر نہیں سمجھا، اور اگر ساتھ کام بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلا فارم ان کا ہی ہوتا ہے. منافق کٹا ہوتا ہے، رجسٹریشن نہیں کرنی، فائدہ تو اٹھانا ہے، سننا تو بہت ہے، لینا تو بہت ہے، لیکن کوئی کمٹمنٹ فارم فل نہیں کرنا. ہم کام کریں گے فارم نہیں فل کریں گے، تو ایسے لوگوں کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. ایسا شخص جو قرآن کو اتنے ڈیفینسو وے میں سنے، اس کو کیا لگتا ہے قرآن کی آیتوں کو سن کر ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. ہر بات سنتے ہوئے ان کو لگتا ہے یہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو. اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، کہاں سے پھرے جاتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں، کوئی دوست ساتھی سمجھاتا ہے کہ چھوڑو یہ باتیں، پلٹ آؤ، کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی بہت سافٹ ہیں، دیکھنا تمہیں معاف کر دیں گے، تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ رسپانس میں؟ تو اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں. ہم آئیں واپس آئیں، یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل. ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے. یعنی ایسے لوگوں کو پھر نبی کی دعائیں نہیں لگتی، رسول کی دعائیں کہاں لگیں گی، اور کہاں ان کو پھر بڑوں کی دعائیں لگیں گی؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، नोट कीजिएगा, खुद तो करते नहीं, दूसरों को भी रोकते हैं, आप ना करा करें खर्च, आप कितना वक्त देते हैं, आप क्यों माल लगाते हैं, आप फीस क्यों देते हैं, ये टोन थी उनकी, क्यों ना करो। क्योंकि अल्लाह के नबी मक्का से हिजरत करके मदीना में आए थे ना, तो अब्दुल्ला बिन उबई अपने लोगों को एक मशवरा दे रहा है कि देखो ये तो मदीना के लोग ही नहीं थे, बाहर से आए हैं, जरा इनको सपोर्ट करना छोड़ो, खुद ही बिखर जाएंगे, कोई इनको वीजे लगवा कर देने की जरूरत नहीं और कोई इनको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। इस टोन के साथ सुनिएगा, यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं यानी मुहाजरीन, इन पर कुछ मत खर्च करो, यानी इनको भाई बनाकर अपने घरों में ना लाओ, यहाँ तक कि वो खुद ही इधर उधर हो जाएं, दे कैंट सर्वाइव, इनको मत सेटल डाउन होने दो इधर, और ये समझ ही ना सके कि और आसमानों से भी इनके खजाने अल्लाह की मलकियत है, यानी ये नहीं सपोर्ट कर रहे, अल्लाह सपोर्ट करता है इनको। लेकिन ये मुनाफिक बेसमझ हैं, ये कहते हैं अगर हम अब लौट कर मदीने जाएंगे तो इज्जत वाला वहां से जिल्लत वालों को निकाल देगा। ये अब्दुल्ला बिन उबई का जुमला था जो उसने गज़वे बनू मुस्तलक की वापसी पे बोला। सुनो, इज्जत तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए और इसके रसूल के लिए और ईमानदारों के लिए, लेकिन ये मुनाफिक नहीं जानते, तौहीन रिसालत का मुर्तकिब था ये शख्स। अब अल्लाह ने आपको मुझे पुकार लिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मुसलमानों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें, और जैसा करेंगे वही बड़े ज़ियाकार लोग हैं, नुकसान में गए हुए, बैंकरप्ट। और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से हमारी राह में इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए, अल्लाह हमें इसकी तौफीक देना मौत से पहले। तो कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मुझे तो थोड़ी देर की मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं, और जब किसी का मुकर्रर वक्त आ जाता है फिर इसे अल्लाह हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो इसे अल्लाह बखूबी वाकिफ़ है। देखिए क्या खूबसूरत अंदर, यही आपके आयते तदब्बुर है ऊपर हम कर चुके हैं कि साले अजवाज और औलाद की खूबियाँ क्या होती हैं। आयत 9 की रोशनी में अल्लाह की खुशनुदी के लिए मालों को खर्च करने वाले होते हैं, खुद सपोर्ट करते हैं अपने घर वालों को, नहीं बेगम आप और दीजिए, आप और वक्त लगाइए, और मर्दों को बीवियाँ रोकती नहीं है कि अब और आप क्यों दे रहे हैं, पहले इतना पैसा दे दिया आपने। इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल की मदद करने वाले होते हैं, सपोर्टर्स, अंसारुल्लाह, सादिकीन और मुफलहून होते हैं। ऐसे लोग रोज़े क़यामत की हसरत और माजरत से बचेंगे। करना कि अपने अजवाज और औलाद को अल्लाह और रसूल की सुन्नतों से जोड़ दीजिए, मुश्किल भी लगे तो सह जाइए, बातें भी सुन लीजिए, लेकिन कल दोनों सब मिलकर मियाँ बीवी बच्चे जन्नत में इंजॉय करेंगे। फिर देखिए आयत 9, ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, इसकी कैफियत कैसे होती है। इंसान बाज़ुकात माल और औलाद की वजह से सबीलुल गई पर चलना शुरू हो जाता है, यानी रुश्द के रास्ते से उतर कर गुमराहियों के रास्ते पे चढ़ता है, इससे फिर निफाक बनता है दिल में, निफाक का सबब बनता है, और हसरत और खसारा मौत और रोज़े क़यामत पर। क्या ऐसी ख्वाहिशात रखता है ऐसा बंदा, दो तो इधर ही है ना, बाकी भी कुरान पाक में हम पढ़ते हैं, काश माल से सदका करता, असद्दका का लफ्ज़ है, काश माल अहलो याल की बजाय आखिरत के बेहतरी के लिए खर्च करता, काश इनके लिए मसरूफ़ रहने की बजाय दीन सीखने सिखाने फैलाने पर मसरूफ़ रहते, काश अहलो याल पर सारी तवज्जो देने की बजाय आखरत पर ही तवज्जो लगा देते, और काश सालेह लोगों में से होते। क्या मैं और आप चाहते हैं मौत के वक्त ये हसरतें हों। तो देख लीजिए, सबील और रुश्त पर जाने की चीज़ें रहमत बनती हैं, वो चीज़ें जो गई पर जाने का जरिया बनती हैं वो आपके लिए बिल आखिर जहमत है। ये बाप का मेरा तर्ज अमल है कि हम अपने लिए रहमत को चूज़ करते हैं कि जहमत को। इसी तरह रुश्त पे जाने वाले खुशी और इत्मीनान का बायस होते हैं अपने इर्द गिर्द वालों के लिए, जबकि गई पर जाने वाले बायस गम व हुज़न होते हैं। रुश्त वाले दीन सीखते सिखाने वालों के मुआविन होते हैं, जबकि गई पे चलने वाले बुज़दिल और जाहिल होते हैं। और आखरत में कामयाब हैं रुश्त वाले, और आखरत में पकड़ का जरिया होगा गई पे चलने वालों को। आप और मैं खुद देख लीजिए, क्या मेरे अहलो याल और माल मेरे लिए रहमत हैं, खुशी हैं, दीन सीखने सिखाने में मुआविन हैं, तो मुबारक हो कि आखिरत में कामयाब करेंगे। और एक सवाल, क्या मेरे अहलो याल और मेरा माल मेरे लिए जहमत, बायस गम व हुज़न और बुज़दिली और जहालत का सबब है, तो नतीजा तो आज ही रिपोर्ट कार्ड की सूरत में मौजूद है कि आखिरत में पकड़ का जरिया होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत 1895, इसको दिल की तख्ती पर लिखिएगा, कि इंसान के लिए इसके बाल बच्चे और इसका माल और इसके पड़ोसी फितना, यानी आजमाइश और इम्तिहान है, यानी कदम कदम पे इन पे सब्र करना पड़ता है, जिसका कफ़ारा नमाज रोज़ा और सदका बन जाता है। सोचते रहिए बाद में इसको। सही मुस्लिम की रिवायत 2335, आपने फरमाया कि हर आदमी के एक एक जोड़ पे सदका वाजिब होता है, जब सूरज निकले तो दो आदमियों में इंसाफ कर देना भी एक सदका है, किसी की मदद कर देना भी सदका है, इतनी भी किसी सवारी पे चढ़ा दिया, यानी हाथ पकड़ कर किसी बूढ़े को गाड़ी में बिठा दिया, اس کا مال لاد دیا یہ بھی صدقہ ہے، اور فرمایا عمدہ بات یہ بھی صدقہ ہے، اور ہر قدم جو مسجد کو جاتے رہے وہ بھی صدقہ ہے، نماز بھی صدقہ اور تکلیف دہ چیز صدقہ ہے۔ تو صدقہ صرف مال کا ہی نہیں ہوتا، ان چیزوں کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں مال اور اولاد کے فتنوں میں مبتلا نہ کرے، اور نیکیوں کی توفیق عطا کرے، اور ہر نیکی صدقہ اس سوچ سے ہم نیکیاں کریں۔ جب انسان مال اور اولاد کے فتنے کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیا زندگی میں آتے ہیں؟ پہلی بات، انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، حرام اور مشکوک کمائی گھر میں آتی ہے تاکہ یہ خوش رہیں سارے گھر والے، اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں ہونے دیتا کیونکہ پوری نہیں پڑ رہی، بے جا اسراف آنے لگتا ہے، بچوں کی شادیوں خوشیوں کے غموں کے نام پہ، رشتہ داریاں کٹنے پہ مجبور ہو جاتا ہے ایسا انسان، لاحول حدیث میں پڑ جاتا ہے، آخرت سے غفلت ہے۔ تو یاد رکھیے، آخرت میں ازواج اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے، اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا لے، اور نہ انفرادی طور پہ اس کا شکار ہوں اور نہ ہم اجتماعی طور پہ ہوں۔ اجتماعی نقصانات بھی نوٹ کیجئے گا، اللہ کے ذکر سے غافل ہونا، معاشرے پورے کے پورے آج غفلت کا شکار ہے، معاشرے میں خود غرضی اور نفسا نفسی کا برپا ہونا، انفاق فی سبیل اللہ اور انسانی بھلائی کے کاموں سے بندہ رک جاتا ہے، اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی اور مہنگائی کا موجب بنتا ہے، اور پیسہ کمانے کی دوڑ میں مقصد حیات کو بھول جاتا ہے۔ آج تو گھر گھر میں یہ فتنہ اللہ بچا کے رکھے۔ کیا سیکھا؟ اللہ منافقوں کے نفاق کو ظاہر کرتا ہے، اللہ منافق اور نافرمان کو ہدایت نہیں دیتا۔ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے۔ آگے ہے سورت تغابن، 64 نمبر کی سورت، 18 آیتیں۔ دیکھیے، آیتوں کا نمبر کم ہوتا جا رہا ہے اور سورتوں کا نمبر یعنی ترتیب میں بڑھتا جا رہا ہے، یہ بھی چھوٹے چھوٹے غور کے نقطے ہوتے ہیں۔ بس سورت تغابن تو کہہ لیجئے غبن، دھوکا۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ اپنی نیکیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے تو مل نہیں رہیں، پتہ چلا کہ وہ بیوی بچے نیکیاں کھا گئے۔ بہت ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹ ہوں گے قیامت کے دن۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر۔ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، سو تم میں سے بعض تو کافر ہے اور بعض ایماندار ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل اور حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ آسمان و زمین کی ہر ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پہنچی، جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا، بس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بے نیاز بڑی خوبیوں والا۔ ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ بس تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمائی ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے، جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا۔ یہ ہے تھیم آیت آف دی سورت۔ وہ یہی دن ہے ہار جیت کا، کوئی ہارے گا اس دن کوئی جیتے گا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کر دے گا، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اسی کامیابی کا مستحق بنا دے، فیملی کے ساتھ، بیوی بچے شوہروں کے ساتھ جنتوں میں اللہ لے جائے، اکیلے گئے تو کیا اچھا لگے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو چھٹلایا، وہی سب جہنمی ہیں، جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے عقیدہ تقدیر کو پکا کر لیجئے، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، یعنی مشکلات اور مصیبتوں میں سے نکلنے کے راستے دکھاتا ہے، اور ان کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے۔ صبر شکر کرتا ہے بندہ، میرے اوپر کوئی مصیبت آئی تو کیوں آئی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لکھیے، مصیبت انسان کی استاد بن جاتی ہے، بشرطے کہ آپ اس سے سبق سیکھ لیں۔ پچھلی صورت میں حدید میں آپ کو یہ ٹاپک دکھایا، پچھلے پارے میں تقدیر پہ ایمان راضی رہو، جو مل گیا مل گیا، جو تمہارا تھا وہ کوئی نہیں لے سکتا، جو تمہارا تھا نہیں وہ ملنا نہیں، फलाता सोला मा फातकुम। इससे क्या पता चलता है कि कुरान से जुड़ने के बाद बंदा तकदीर पे भी राजी हो जाता है, और इसी से तो सुकून और खुशी आएगी। लोगो, अल्लाह का कहना मानो और रसूल का कहना मानो, बस अगर तुम एराज करो तो तुम्हारे रसूल के जिम्मे सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है। अल्लाह के सिवा कोई माबूदे पर हक नहीं, और मोमिनों को सिर्फ अल्लाह पर ही तवक्कुल रखना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जरा सा शऊर से सुनिए इस आयत को, क्योंकि जल्दी में बाज लोग गलत समझने लगते हैं। क्या कहा? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की आयत है, अल्लाह ने बीवियां बनाई, अल्लाह ने शोहर दिए, तो क्या कह दिया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम। ए ईमान वालों, तुम्हारी बास बीवियां सारी नहीं है, लिखिए बास सम ऑफ, जो दीन से रोकें, जो इस्लाम से रोकें, जो हिजरत से रोकें, जो मुसलमान होने से रोकें, और बास बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, वो बच्चे जो तुम्हें गलत चीज़ों पे मायल करें, जिनको खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करो, जिनकी खुशियों के नाम पे तुम अल्लाह को नाराज़ कर दो, वो दुश्मन है। अच्छा, दुश्मन है तो क्या करो, इनको लग डाल दो, किसी और जगह भेज दो, छोड़ दो, तलाके दे दो, बीवियों को बच्चों को आग करो। नहीं, देखिए डिक्शनरी में तीन लफ्ज हैं माफी के, तीनों इधर इकट्ठे आने लगे हैं, तवज्जो रखिएगा। फ़ख़ज़रूहुम व इन ताफू व तस्फहू व तग़फिरू फ़इन्नल्लाहा ग़फूरुर रहीम। जी, हैं तो दुश्मन, बस इनसे होशियार रहना, और अगर तुम माफ कर दो और दरगुजर कर जाओ और बख्श दो तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ये है अल्लाह का प्यार। इनको छोड़ना नहीं है, तलाकें नहीं लेनी मर्दों से दीन के नाम पे, उनको दीन पे लाना है। अगर आप अच्छी बीवी होंगी आपको नहीं छोड़ेगा। देखिए, आज कई गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाते हैं लड़कियों से शादियां करने के लिए, तो क्या आपने अपने शोहर को इतना प्यार भी नहीं दिया कि वो आपकी खातिर नमाजें शुरू कर लें और आपकी खातिर गलत चीज़ें छोड़ दें? एक दफ़ा शादी होगी, इसको नहीं तोड़ना, ये माँ बाप की लाज रखनी है, शर्त ये कि हिकमत से दीन पे लाना है। एक किताब का नाम याद आ गया, नोट कर लीजिए, अगर किसी के घर में ऐसा कोई इशू है कि साथ रहने वाला साथी ही दीन पे नहीं, तो एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम, नेकी के सफ़ीर, एक बुक है जो हमने पढ़ी थी एटलांटा में, बिगड़े हुओं को कैसे लहजा लहजा कदम कदम लाई, उस किताब में स्टोरीज हैं, बहुत प्यारी बुक है, आप सुनना चाहें सुन लीजिए, ऑडियोज मौजूद हैं हमारे पास, पढ़ना चाहें तो किसी भी दारुस्सलाम के बुक स्टोर से ले लीजिए और फ़ायदा उठाइए उससे। तुम्हारे माल और औलाद तो सरासर तुम्हारी आजमाइश है। देखिए, अगर आज ये फितना है तो इस पर माइंड नहीं कीजिए, कुरान की आयत का तर्जुमा है कि ये माल और औलाद तुम्हारे फितने, और बहुत बड़ा अजर तो अल्लाह के पास है। इन्ना मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल्लकुम। कुछ अहलो याल दुश्मन होते हैं, सब नहीं, आप जैसी अच्छी बीवियां दुश्मन नहीं हो सकती, और आप अच्छे शोहर दुश्मन नहीं है अपनी बीवियों के, ये तो वो चंद हैं जो गलत चीज़ों पे लेते हैं। कौन? देखिएगा, सबीलुर रुश्द से सबीलुल गई का बायस जो बने वो दुश्मन है। अहलो याल की हुब्बे ख्वाहिशात, यानी उनकी ख्वाहिशात की वजह से हराम कमाई पे ले जाएं तो वो दुश्मन है, यानी आपको रुश्द से गई पे डाल दिया। इसी तरह अहलो याल की मोहब्बत में इंसान जिहाद से मुंह फेरे, हाय मैं मर गया तो क्या होगा, मैं मर गई तो क्या होगा, बुजदिली दिखाए, दीनी फराइज से दूर हो, वो दुश्मन होंगे। जहालत का सबब हों जो अहलो याल दीन नहीं सीखने देते, सीख नहीं पा रहे, वक्त ही नहीं, और खर्च की राह में रुकावट, वो अहलो याल जिनके अखराजात इतने ज्यादा हो गए कि इंसान बखील हो जाए दीन के मामले में, और आखिरत में पकड़ किन की है, जो अहलो याल की तरफ के ही होकर रह जाएं और साले अमल ना करें और आखिरत में गम और पकड़ का सबब होंगे। तिर्मिजी की रिवायत है 3317 अब्दुल्ला बिन अब्बास से, एक आदमी ने यह आयत पढ़ी जो भी इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, कि तुम्हारी बीवियां और इस तरह से दुश्मन है। फिर पूछा, ये किसके बारे में उतरी? तो उन्होंने कहा, अहले मक्का में कुछ लोग थे जो ईमान लाए थे और उन्होंने अल्लाह के नबी के पास पहुंचने का इरादा कर लिया था, मगर इनकी बीवियों और इनकी औलादों ने इनकार कर दिया। आज कई लोग इस्लाम दोस्त होते हुए कहते हैं, मूव कर जाते हैं, हम छोड़ देते हैं उन जगहों को जहाँ बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा बच्चे सामने आते हैं, बाज़ दफ़ा बीवियाँ, और बाज़ दफ़ा पैसा जगह बनता है। ये सब चीज़ें आप अपने हालात के मुताबिक सीख सकते हैं। जब इन्होंने इनकार किया कि वो इन्हें छोड़कर अल्लाह के नबी के पास जाएं, फिर जब काफ़ी दिनों के बाद अल्लाह के नबी के पास आए तो देखा कि लोगों ने दीन की फिक काफ़ी हासिल कर लिया, तो उन्होंने इरादा किया कि वह अपनी बीवी बच्चों को इनकी रुकावट डालने के बाद सजा दें। तो इस पर भी आयत उतरी कि नहीं, डोंट बी रूड, अच्छे तरीके से दीन सिखाइए घर वालों को। देखिए, जब किसी को कोई बुरा जौज मिल जाता है ना, शौहर को बीवी और बीवी को शौहर, तो इसके बुरे असरात क्या होते हैं? पहली बात है, वो उसको दीन पे अमल नहीं करने देगा, फिर जौज को दीन पर अमल करने से रोकेगा, दबाव डालेगा, फिर गुनाहों की रग़बत दिलाएगा एक दूसरे को, कपल नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील के लिए हराम कमाई पर उकसाएंगे एक दूसरे को, लाहुल हदीस में मशहूल होंगे, बाद शोहर मजबूर करते हैं बीवियों को गलत चीज़ें देखो सुनो, बाद बीवियां भी ऐसी होंगी तो समझ लीजिए ये बुरी ज़ौजियत है, सुन्नतों की बजाय बिदत की पैरवी पे मजबूर कर देंगे, घरों में लड़ाई झगड़े का बायस बनेंगे और अल्लाह की बजाय दूसरों की अंधी तकलीद का हुक्म दिया जाएगा। और बाज़ दफ़ा तो ऐसे लोग अपने घर के राज दूसरों को बताने लगते हैं, खालिक और मकसद हयात को भूल जाते हैं। अल्लाह बुरे अजवाज को अच्छे बना दे। एक एक जौज बदल लीजिए, ये बड़ा मुश्किल काम है, लंबा खाता है, पता नहीं आगे इससे भी बुरा ना मिल जाए। अल्लाह से मांगिए इन्हीं को अच्छा कीजिए, और आप भी मदद कीजिए अपनी साथी की। क्यों वो आपको छोड़ने का मुतालबा कर रहा है? आप ठीक हो जाइए, अगली को परी तो नहीं मिल जानी आपको, पहले ऐसे थे तो ये मिली, अब तो आप बूढ़े हो रहे हैं, अब क्या मिलेगी आपको? तो लिहाजा अल्लाह के इस फैसले पर राजी रहिए, अपने मौजूदा शोहरों और अपनी मौजूदा बीवियों से राजी रहे, जैसे आप अपने मौजूदा बच्चों से खुश हैं। बच्चे कोई नहीं छोड़ता, मियाँ बीवी क्यों छोड़े? बस जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो और सुनते और मानते जाओ। अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दे, इतना सुन सुना रहे हैं, अल्लाह मानने वाला भी बना दे। और अल्लाह की राह में खैरात करते रहो जो तुम्हारे लिए बेहतर है, और जो शख्स अपने नफ्स की हिर्स से महफूज रखा जाए वही कामयाब है। अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे यानी इसकी राह में खर्च करोगे तो वो इसे तुम्हारे लिए बढ़ाता जाएगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला बड़ा कदरदान और बड़ा बुर्दबार है, वो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, ज़बरदस्त हिकमत वाला है। तो क्या पता चला इस सूरत के पढ़ने के बाद आपको, मुझे खेमने फिक्र करनी है अपनी। बुरे रास्तों की तरफ ले जाने वाले दुश्मन अहलो याल के साथ किया क्या जाए? पहली बात है कि तबई मोहब्बतों के मनफी असरात से होशियार रहें, यानी इतनी मोहब्बत ना हो बच्चे से कि उसको नमाज के लिए नहीं उठा रहे। फिर इसी तरह अफ़ो दरगुजर की हिकमत अमली अपनाएं, गुनाहों की राह पर उकसाने के लिए इन्हें माफ़ कर दीजिए। अहलो याल का फितना यानी आजमाइश है, इससे आगाह हों और इसका इदराक करें। इल्म सीखिए, इस मौजू पर ज़्यादा पढ़िए, इस्तेताद के मुताबिक अल्लाह का डर रखिए, अल्लाह रसूल की इताअत कीजिए। अपने लिए माल खर्च करना, दिल की तंगी और लालच से बचना है, इंशाल्लाह नतीजा बड़ा प्यारा होगा, अजर अजीम और फलाह मिलेगी। अल्लाह ताला ईमान वालों को जो मशवरे देते हैं उसमें क्या है कि जौज और औलाद फितना है मगर इनसे बचते रहो और दरगुजर करो। जैसे बिजली फितना नहीं है, लेकिन आप बिजली से फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं? दिन रात बस यही करना है, बी केयरफुल, वॉच योर स्टेप्स, बस यही करना है कि बीवी आपको गलत पे तो नहीं ले जा रही और शौहर आपको गलत पे तो नहीं ला रहा, बच्चों की मोहब्बत में गलत पे नहीं जा रहे, बस साथ रहकर एक दूसरे को केयरफुल ऑब्जर्व करें। इसी तरह माल और औलाद फितना है तो अल्लाह की इताअत और तकवा इख्तियार करेंगे तो ये फितना बदलेगा इंशाल्लाह खैर में। बुखल से बचेंगे तो मुफले खून का रास्ता मिल जाएगा, और अल्लाह को कर्ज देंगे तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह करने वालों में शामिल होंगे। क्या सीखा इस सूरत से कि आसमान और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है? पिछले वाक़या से सबक लिया, अमल साले करने वालों के लिए अजर है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई मुसीबत नहीं आ सकती, माल और औलाद की आजमाइश में से अल्लाह आपको मुझे सुरखरू कर दे। आगे है सूरत तलाक, जिसको निसाए सुगरा भी कहते हैं, यानी छोटी निसा है। 65 नंबर की आयत है, सिर्फ 12 आयतें हैं, और पूरा तलाक का आप देखिए कि सिनेरियो इसे एक सूरत से भी अल्हम्दुलिल्लाह समझ आता है। निकाह नाम की सूरत कोई नहीं तो तलाक की क्यों है? पीछे भी इतने लंबे चौड़े इसके मसाइल सुने, क्योंकि इस्लाम नहीं चाहता कि तलाक के हों। पहले से समझ लो, अकलमंदी करो, अच्छे बच्चे पैदा करो, अच्छी तरबियतें करो, अपनी तिसला करो, बच्चियों की शादी ना करो जब तक वो अच्छी बीवी बनना ना सीख जाए, जो लड़कों की शादी ना करें जब तक के वो अच्छे शोहर बनने के काबिल ना हो जाए, फिर इंशाल्लाह तलाक की नौबतें नहीं आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबीश। और याद रखिये कि इस्लामी माशरे की ताकत और मजबूत इकाई घर है। एक आइडियल मुस्लिम घर जहाँ अल्लाह के हकूक की पासदारी होती है, शोहर बीवी एक दूसरे के हकूक पूरे करते हैं, दीनी फराइज और इकामतें दीन की जिद्दोजहद में एक दूसरे का साथ देते हैं, अगर ये है तो यह है होम स्वीट होम, आइडियल होम। वो सारे किते निकाल दीजिए जो आपने बाजारों से खरीद के लगाए हुए हैं, और आप अपने घर को पहले आइडियल बनाइए, फिर उसको लेकर चलिए, फिर अच्छा नाम दीजिए। अगर ये नहीं है तो तलाक तो होगी, या अल्लाह का दीन जाता है या घर जाता है, ये दो में से एक काम होगा। अगर ऐसी सूरत हो जाए तो हदूद ऐसी के पासदारी करने वाले बने, तकवा से काम लें तो उलुल अलबाब होंगे, यानी फिर रहें तो अच्छी तरह रखिए, छोड़ें तो अच्छी तरह से छोड़े, ये मुराद है। है नबी अपनी उम्मत से कहिए, जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना चाहो तो इनकी इद्दत के दिनों में ही इनको तलाक दे दो, और इद्दत का हिसाब रखो, और अल्लाह ताला से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरते रहो, ना तुम इन्हें इनके घरों से निकालो और ना वो खुद घरों से निकल जाएं। ये और बात है कि वो खुली बुराई कर बैठे, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद है। जो शख्स अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जाएगा इसने यकीनन अपने ऊपर जुल्म किया, तुम नहीं जानते शायद इसके बाद अल्लाह कोई नई बात पैदा कर दे, इद्दत में रुजू हो जाए। इस्लाम में जैसे निकाह स्टेप बाय स्टेप है। सोच के शादी करते हैं ना, उससे पूछ उससे पूछ, मशवरे करते, इस्तखारे करते, बुजुर्गों से, बड़ों से, उस लड़के के इर्द गिर्द हमसायों से पूछते, लड़की वालों से पूछते, जिस तरह शादी सोच विचार कर की जाती है, तलाक भी सोच विचार से दी जाएगी। उधर भी स्टेप्स हैं, इधर भी स्टेप्स हैं। ये घर टूटने ना पाए, इस घर को दराड़ों से ही तोड़ जोड़ लो, कुछ अल्फियां लगा दो, कुछ प्यार मोहब्बत के बोल बोल दो, स्टेप बाय स्टेप देने में घर बच जाते हैं। ये बातें आज हमारे माशरे में कोई नहीं पढ़ाता, कुरान बता रहा है। कोई नई बात पैदा कर दे, इद्दत के दौरान मियां बीवी साथ रहेंगे। याद रखिए, ये रजई तलाक यानी दो तलाकों के बिटवीन का मामला है कि लड़की लड़के के घर में रहेगी। हम तो पहले ही फारिग होकर आ जाते हैं, हम तो पहले ही रूठे बैठे हैं, हम तो पहले ही अपने घर बांध बूंद के बैठे होते हैं। तो याद रखिए, आज हमें जैसे शादी नहीं करनी आती, माजरत के साथ है, वहां तलाकें भी नहीं देनी आती, और शहादत हक की गवाहियां कहां दुनिया में देंगे, अपने घर में नहीं है। बहुत बिटरनेस होती है इन मामलात में, अल्लाह उसको दूर करने के लिए तकवा का खूबसूरत नुस्खा देते हैं आपको। बस जब ये औरतें अपनी इद्दत पूरी करने के करीब पहुंच जाएं, तो इन्हें या तो कायदे के मुताबिक अपने निकाह में रहने दो, या दस्तूर के मुताबिक इनको अलग कर दो, और आपस में दो आदिल शख्सों को गवाह कर लो, और अल्लाह की रजामंदी के लिए ठीक ठीक गवाही दो। यही है वो जिसकी नसीहत इसे की जाती है जो अल्लाह पर और क्यामत के दिन पर ईमान रखता हो, और जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला इसके लिए छुटकारे की शक्ल निकाल देता है। जो घर पे जाना चाहेगा, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। थोड़ी देर दब जाइए, क्या होगा, फिर सारी जिंदगी आप ही राज करेंगे। और ऐसी जगह से रोजी देता है जिसका इसे गुमान भी ना हो, और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करेगा, अल्लाह इसको काफी होगा। अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके ही रहेगा। अल्लाह ताला ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। तुम्हारी औरतों में जो औरतें हैज से नाउम्मीद हो गई हों, अगर तुम्हें शुबा हो तो इनकी इद्दत 3 महीने है, और इनकी भी जिन्हें हैज आना शुरू ही ना हुआ हो, और हामिला औरतों की इद्दत इनका वजह हमल है यानी डिलीवरी। और जो शख्स अल्लाह ताला से डरे, अल्लाह इसके हर काम में आसानी करे। यहाँ से अब तकवा के बेनिफिट्स नोट करते जाइए खुद ब खुद। ये अल्लाह का हुक्म है जो इसने तुम्हारी तरफ उतारा है, और जो शख्स अल्लाह से डर कर रहेगा, अल्लाह ताला इसके गुनाह मिटा देगा और इसे बड़ा भारी अजर देगा। अल्लाह हमें तकवा की दौलत कूट कूट कर दे दे, भर के दे दे हमारे अंदर तकवा। तुम अपनी ताकत के मुताबिक जहां तुम रहते हो वहां इन तलाक वाली औरतों को रखो, और इन्हें तंग करने के लिए तकलीफ ना पहुंचाओ, और अगर वो हमल से हो तो जब तक बच्चा पैदा हो ले इन्हें खर्च देते रहा करो। फिर अगर तुम्हारे कहने से वही दूध पिलाएं तो तुम इन्हें इनकी उजरत दे दो, और बाहम मुनासिब तौर पर मशवरा कर लिया करो। और अगर तुम आपस में कशमकश करो तो इसके कहने से कोई और दूध पिला लेगी। कुशादगी वाले को अपनी कुशादगी से खर्च करना चाहिए, और जिस पर इसके रिस्क की तंगी की गई उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ताला ने इसको दे रखा है इसमें से अपनी हस्बे हैसियत दे। किसी शख्स को तकलीफ नहीं देता मगर इतनी ही ताकत उसे दे रखी है। अल्लाह ताला तंगी करने के बाद आसानी और फरागत भी देगा। और बहुत सी बस्ती वालों ने अपने रब के हुक्म से और इसके रसूलों से सरताबी की, तो हमने भी इनसे सख्त हिसाब किया और इन्हें अजाब दिया और अनदेखा अजाब दिया। बस उन्होंने अपने करतूत का मजा चख लिया और इंजामे कार इन्हीं का खसारा हुआ। यानी एंड पे नुकसान किसका होता है इन मामलात में? इनके लिए अल्लाह ताला ने सख्त अजाब तैयार कर रखा है। बस अल्लाह से डरो, अकलमंद ईमान वालो, यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नसीहत उतार दी यानी रसूल, जो तुम्हें अल्लाह के साफ साफ अहकाम सुनाते हैं, ताकि इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करें वो तारीकियों से रोशनी की तरफ ले आए, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह ताला इसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह ने इसे बेहतरीन रोजी दे रखी है। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और इसी के मिसल जमीने भी, इसका हुक्म इनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और अल्लाह ताला ने हर चीज को बाएतबार इल्म घेर रखा है। तो ये थी सूरत तलाक। क्या सिखा गई आपको मुझे? तलाक के जिमन में अजवाज एक दूसरे पे ज्यादती कर जाते हैं। कैसे? बतौरे शौहर मारूफ तरीके से तलाक ना दी, मेहर की वापसी का मुतालबा करने लगा, बीवी को इद्दत के दौरान घर से निकाल दिया। बतौरे बीवी क्या ज्यादती होती है? हमल था पेट में, छुपा लिया ताकि इद्दत लंबी ना हो जाए। खुली छुपी बेहयाई का इर्तकाब कर दिया उस बीवी ने, शोहर से बदसलूकी की, नशूस का शिकार हुई। अल्लाह का हुक्म क्या था? मारूफ तरीके से तलाक दो या रजू कर लो, मेहर वापिस ना लो। क्या सीखा इस सूरत से? अल्लाह की हदूद को तोड़ने वाले अपना ही बुरा करते हैं। आइली कवानीन सीखे, खानदानी मसाइल, इद्दत के मसाइल सीखे, तलाक के बाद भी उसने सलूक की हिदायत है, शरीयत पे चलना ही रोशनी का इंतखाब है। एक मशवरा मुझसे भी ले लीजिए, जब शोहर बीवी की आपस में अनबन हो। और देखिए, आज के दौर में या तो बहुत शुरू में होती है, शादी नहीं हुई, नहीं बनी, नहीं निभी, किसी को वो नहीं अच्छा लगा तो किसी को वो नहीं अच्छी लगी, और कुछ से कुछ कहानियां। तो एक असूल जो इस सूरत में 2-3 बार आया है, मेरा मशवरा सबको ये होता है, नई नई शादी हुई है तब भी,
अच्छा, या तो आजकल नई खराब हो रही है या पुरानी खराब हो रही है, बीच वाले बेचारे धक्के के साथ चल ही रहे हैं, गाड़ियों को चला ही रहे हैं। ये आखिरी वालों को क्या हुआ है? उनको बुढ़ापे में कुछ और सूझ गया है, और बीवियां वो कर नहीं सकती मामले। अल्लाह माफ करे सबको। मियाँ बीवी को साथ रहने दीजिए। अल्लाह ने शोहर बीवी के बीच में कैसा गैर महसूस रिश्ता और बॉन्ड जोड़ा हुआ है। मियाँ बीवी लड़ लड़ के भी सारा दिन गुजारेंगे ना, अल्लाह फिर भी साथ रहने की कुछ कशिश डाल देगा। ये जो इद्दत के 3 महीने हैं, बीवी साथ रहे, असल में इसी में उसमें औरत सजेगी, संवरेगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, खाने पकाएगी, घर साफ करेगी, मर्द को लगेगा इतनी बुरी नहीं है, और उसको पता कि इसके बगैर मेरा घर नहीं चलता। आज क्या, पहले लड़कियां अलग हैं, माँ बाप तो पहले ही ले जाए, बेटे तो पहले ही घर से निकाल दें। याद रखिए, शौहर बीवी साथ रहे, कमरे में बंद कर दें कि आपस में समझौता करके मैं बता दो करना क्या है, 90% तलाकें खत्म हो जाती हैं जब बीच में ऊपर के पड़ते हैं। नतीजा अभी लिख लीजिए कि घर नहीं बनेगा। हमारे कल्चर में तो ये इद्दत का सवाल आप सुन के कई लोग मुझे कहते हैं ये सच है, ये गुनाह नहीं है कि तलाक भी दे दी तो लड़की फिर लड़के के साथ रहे। तो आपने दीन पढ़ा नहीं, सजा नस्लों को भुगतनी पड़ रही है। इस मौजू को खुदा के लिए पढ़ें, पूरी किताब पढ़ाई इस पे तलाक के मसाइल। इतने लोग ये मसले पूछते हैं कि मेरा तो कहना चाहिए कि दिल खट्टा हो चुका है इस बात से। क्या आज हमने दुनिया को क्या देना है, हम तो अपने घर नहीं बना पा रहे, इन घरों में दीन कहाँ से आए। आखिरी सूरत है सूरत तहरीम, नबी के घराने की 2 मिसालें आ रही हैं, देखिएगा। 66 सूरत है, सिर्फ 12 आयतें। तहरीम हराम शुदा, अल्लाह के नबी के अजवाज के साथ एक वाकये को बुनियाद बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी, जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया है, इसे आप क्यों हराम करते हैं? क्या आप अपनी बीवियों की रजामंदी हासिल करना चाहते हैं? और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। क्या पता चला अल्लाह के नबी इतने अच्छे शौहर थे कि अपनी बीवियों की खुशी का ख्याल रखते थे, बीवियों को खुश रखना चाहते थे। मर्द को अगर हक है ना कि बीवी उसके लिए कुछ करे, सजे संवरे, सफाई सुथराई का ख्याल रखे, उसका घर साफ करे, उसका खाना पकाए, तो मर्दों के ऊपर भी बीवियों के कुछ हकूक है। उसमें से इस हक की बात इस आयत में हो गई। तहकीक के अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कस्मों को खोल डालना मुकर्रर कर दिया है, और अल्लाह ताला तुम्हारा कारसाज है, और वही पूरे इल्म वाला हिकमत वाला है। और याद करो कि जब नबी ने अपनी बाज औरतों से एक पोशीदा बात कही, बस इसने इस बात की खबर कर दी जो अक्सरी औरतों से हो जाता है, मियाँ की बातें बाहर कर देती हैं। और अल्लाह ने अपने नबी पर इसको आगाह कर दिया, यानी नबी को बता दिया कि आपकी बात लीक आउट हो चुकी है। तो नबी ने थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी टाल गए। फिर जब नबी ने अपनी इस बीवी को वो ये बात बताई, तो वो कहने लगी इसकी खबर आपको किसने दी? सब जानने वाले, पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने मुझे ये बतलाया है। सुभान अल्लाह। ए नबी की दोनों बीवी, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बहुत बेहतर है, यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं। और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी, बस यकीनन इसका कारसाज अल्लाह है, और जिब्रील हैं, और नेक ईमानदार, और इसके अलावा फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। और अगर वो पैगम्बर तुम्हें तलाक दे दें, तो बहुत जल्दी ने इनकार अब तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर बीवियां नायत फरमाएगा। जो इस्लाम वालियां, ईमान वालियां, अल्लाह के हजूर झुकने वालियां, तौबा करने वालियां, इबादत बजा लाने वालियां, रोजे रखने वालियां, बेवा और कुंवारियां होंगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और घर वालों को इस आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर, जिस पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं, जिन्हें जो हुक्म अल्लाह ताला देता है इसकी नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाए बजा लाते हैं। ऐ काफिरो, आज तुम उजर और बहाने मत करो, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे अपने करतूत का बदला दिया जा रहा है, यानी तुमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। अब किसी को मुजरिम ना कहो, लेकिन वहां से पलट कर आने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो लिमा तो हर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक, क्या पता चला कि हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, हत्ता के रसूल को भी नहीं? खिलाफ शरा कसम तोड़ने के बाद कफारा दे दीजिए, अगर गलत बात कह ही दी मुंह से तो कसम तोड़ लीजिए कफारा देकर। अहलिया की मोहब्बत और दिलजोई में शरीयत के अहकाम और हदूद इलाही को पसे पुश्त नहीं करना, यानी बाज लोग बीवियों को खुश करते हैं अल्लाह को नाराज करके, वो नहीं करना। घरेलू जिंदगी में तवाजुन, एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखना और राजों की हिफाजत करना लाजिम है। घर चलता नहीं है अगर शोहर बीवी एक दूसरे के दुख सुख के साथी ना बन जाए। मोमिन औरतों से क्या मतलूब है, यही क्राइटेरियन लेकर आज के बाद रिश्ते ढूंढिएगा, और अपने बेटों को भी बता दें कि ऐसी लड़की लेके आऊंगी, निभानी है तो बताओ, नहीं तो मैं नहीं जा रही, फिर जाओ अपनी मर्जी की कोई ले आओ। अच्छी बच्चियों को लाकर अपने बिगड़े हुए बच्चों के सामने एक ट्रायल एंड एरर ना कीजिए, ये बड़ा जुल्म है आज रिश्तों में। कहते नहीं ठीक कर लेगी, भाई आप 4 साल की अम्मा तो कर ना सकी अपने बेटे को ठीक, वो बेचारी 15, 16, 20 साल की बच्ची आकर कैसे इतने बिगड़े को सही करे? पहले उसको के सही हो, नमाज पढ़ोगे तो रिश्ता करूंगी तुम्हारा। ये गलत हरकतें छोड़ो, नहीं तो जाओ फिर जरा सा सख्त स्टैंड लीजिए। मत कीजिए अपने ऐसे बेटों की शादियां जो नमाज भी नहीं पढ़ते, अल्लाह से ताल्लुक भी नहीं, और ला भी आप उसके लिए नेक साफ बच्ची अपने गांव से हैं। रो रो के गुजारेगी, पता नहीं कितनी आहें पड़ेंगी रोज आपको। तो रिश्तों का मेयार, इताअत गुजार बनो, तौबा करती रहो, अल्लाह की इबादत गुजार बनो, रोजेदार बनो। तो हमें भी फितनों से बचने के लिए अपने अंदर ये खसूसियात लानी है, और अपनी बेटियों को आज से ये लिस्ट दे दीजिए कैसी बनोगी तो तुम मेरी बेटी हो। फिर आयत 6, कु अनफुसकु व अहलीकुम नारा, वाहिद मुकाम है कुरान का जिसमें ईमान वालों को आग से डराया गया। हम तो समझते रहे ये कुफार के लिए, ये आयत बताती है ना ईमान वाले भी जाएंगे आग में। तो बचाना फर्ज है, खुद को पहले बचाइए। हेल्प योर सेल्फ बिफोर हेल्पिंग अदर्स। आप खुद नहीं बचा रहे तो दूसरों को कहाँ बचाएंगे। अहले जाल की तरबियत का खसूसी एहतमाम कीजिए। दीन की समझ बूझ तकवा और फिक्र आखरत अपने अंदर लाइए। अपने अहलो याल में ये फिक्र लाइए। नेक शोहर का होना अहलो याल को जहन्नम से नहीं बचा सकेगा। बेरगबती और गैर जरूरी लाड दोनों रवैये इंतहाई खतरनाक है, और लाडो में ना पालें बेटों और बेटियों को। बस अब लाड हम देखते हैं, भुगतते जाकर फिर दूसरे हैं। आग से बचाइए घर वालों को कैसे, अल्लाह के काम की पाबंदी करते हुए और सुन्नत रसूल की पैरवी करते हुए। हमसे मतलूब क्या है इस आयत में, दीनी तालीम दीजिए। जौज और औलाद की दीनी तालीम का खास इंतजाम करें, नेकियों की रगबत दिलाएं, अखलाकी तरबियत कीजिए। जौज और औलाद को वक्त दीजिए, इनके अखलाक को संवारने की कोशिश कीजिए, और मेरा घर मेरी जन्नत का टाइटल लगा दीजिए फिर अपने घर के बाहर। सही रिवायत है सिलसिला सहीहा की 342, हजरत अबू सईद से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब ये मर्दों के सुनने की बात है, कुरान की तालीम हासिल करो और इसके जरिए अल्लाह से जन्नत का सवाल करो, कबल इसके कैसे लोग पैदा हों जो इसकी तालीम हासिल करेंगे लेकिन इसके जरिए दुनिया का सवाल करेंगे। तीन किस्म के अफराद कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, वो आदमी जो इसके जरिए फख्र करता है, अल्लाह हमें उनमें ना करे, वो आदमी जो इसके जरिए से खाता है यानी दुनिया का बनाता है, दीनदारी को दुकानदारी बनाता है, अल्लाह इसमें हमें ना करे, जो अल्लाह ताला के लिए इसकी तिलावत करता है, अल्लाह हम सब को इसमें ले आए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह के सामने सच्ची खालिस तौबा करो। ये है घरों को बिगाड़ से बचाने का तरीका। ये घरों के फितने खत्म होंगे तो उम्मते मुस्लिमा दुनिया में इज्जत लेगी और घर से सुकून लेंगे, दुनिया को सुकून बांटेंगे, घर से प्यार मिलेगा, बाहर वालों को प्यार बांटेंगे। जो कमी पेशी हुई आज मियाँ बीवी साथ बैठ कर एक दूसरे को माफ करें। ये ना कि आप बुरे या आपको सुनाया जा रहा है, नहीं बोले नहीं मेरा भी कसूर था, आई वॉज रॉन्ग। देखिए जब आप अपनी गलती मानते हैं तो अगला आपको रिफंड करता है, नहीं बेगम कुछ मेरे से भी गलतियां हुई हैं, और आप कहते हैं आप तो, अगला तो फिर दिफाई करेगा ना आपके हमलों के जवाब में। करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करे जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। जिस दिन अल्लाह ताला नबी को और ईमानदारों को और जो इनके साथ है रुस्वा न करेगा, इनका नूर इनके सामने और इनकी दाईं तरफ दौड़ रहा होगा। पुल सरात पे मांगी गई दुआओं में से एक दुआ आपको मुझे भी मांगनी है अपने लिए, ताकि दुनिया के इस पुल सरात से भी बचें। आज हकीकत है एक अच्छा घर बना के चलना रहना, ये एक आज के दौर के लोगों के लिए वाकई पुल सरात से कम नहीं है। बड़े खुशनसीब घराने हैं कि जो इस पुल सरात से आफियत से गुजरे हैं। शरीफ इंसान आज घर चला लेता है, बड़ी बात है। और एक औरत अगर अपने घर में सब चला रही है तो ये अल्लाह ताला की उस पे रहमत है। तो दुआ क्या है, रब्बना तमिमलना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये दुआएं करते हैं कि हमारे रब हमें कामिल नूर अता फरमा और हमें बख्श दे, यकीन तो हर चीज पर कादिर है। ऐ नबी काफिर और मुनाफिकों से जिहाद करो और इन पर सख्ती करो, इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरी जगह है। अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए नूह की और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों की मिसाल बयान की। ये दोनों हमारे नेक बंदों में, यानी बंदे कौन थे, शाइस्ता डिसेंट थे। दोनों नबी हजरत लूत और नूह के लिए कुरान का ये खूबसूरत टाइटल है, नेक बंदों के घरों में थी, फिर इनकी उन्होंने खयानत की, बस वो दोनों नेक बंदे, इनसे अल्लाह के किसी अजाब को ना रोक सके। और हुक्म दिया गया और तो दोजख में जाने वालों के साथ तुम दोनों भी चली जाओ। हर उस बहन के लिए या एक नुक्ता है सोचने का, लम्हा फिक्रिया, कि जिनके शोहर बड़े नेक हैं और वो ये सोची बैठी है कि इनकी नेकियों से मुझे भी जन्नत मिल जाएगी, अल्लाह करेगा। शर्त है कि आप जन्नत में पहले पहुंचे तो सही, टिकट ही नहीं बुक कराई तो आपको कौन फर्स्ट क्लास में ले आए। तो अपने शोहरों की कदर कीजिए अगर वो आपको नेकी की दावत देते हैं। और अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल बनाई। अब यहाँ मर्दों के लिए भी यही मैसेज है कि आप भी नेक बीवियों की कदर कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको आसिया जैसी प्यारी बीवी दे दी और आप फिरौनियत में गुजार चुके जिंदगी, आज तौबा कीजिए। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह गुनाहों को माफ करने में एक मिनट नहीं लगाता। जब किसने दुआ की, रब इब्न लिंदा का बैतन फिल जन्ना, ए मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फिरौन से और इसके अमल से बचा और मुझे जालिम लोगों से खुलासी दे। और मिसाल बयान फरमाई मरियम बिनत इमरान की, जिसने अपनी नामोस की हिफाजत की। रुकी और सोचिए, ऊपर सब शादीशुदा कपल्स की बातें थी जिनकी शादियां हो गई। अब बात हो रही है अनमेरिड बच्चियों की, और ऐसी कंवारी अनमैरिड बच्चियों को यही पैगाम दिया जा रहा है कि मरियम अलैहिस्सलाम की तरह अपनी इज्जत की हिफाजत करें। बच्ची की इज्जत नहीं रहती जब वो सब के सामने एक लड़का बन के दिखती है, जब उसके जिस्म का एक एक अंग दिखता है, और जब वो दोस्तियां करती है और सरेआम स्नैपचैट पे अपनी दोस्तियां लड़कों के साथ दिखाती है। औरत की सबसे कीमती चीज औरत की इज्जत है। तो मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इज्जत की सिंबल बना के पेश किया, फिर हमने अपनी तरफ से इसमें जान फूंक दी, और इस मरियम ने अपने रब की बातों और इसकी किताबों की तस्दीक की। कैसे की होगी? किताब पढ़ी। तो जवान बच्चियों को किताब पढ़ाएं ताकि कुरान की तस्दीक करें, और फिर इबादत गुजारों में से थी। तो आपकी मेरी बच्चियां इबादत गुजार नहीं होंगी आपके कुरान पढ़ने से, और आपके शौहर नेक नहीं होंगे सिर्फ आपके कुरान पढ़ने से। जो पढ़ता है अमल उसमें आता है। तो फिर आपका कसूर यह है कि आपने अपने बच्चों को दीन के साथ नहीं जोड़ा। तो सूरह तहरीम बहुत ही ज्यादा कुछ देकर गई। दो मुख्तलिफ किस्म की औरतों में तकाबुल देखा, एक तरफ ईमान वालियां, दूसरी तरफ कुफर वालियां। ईमान वालियों में फिरौन की बीवी, जालिम और काफिर शौहर के सामने भी कलमा हक बुलंद किया। अल्लाह ने दुनिया में जन्नतें दिखा दी। बाज़ ज़ईफ़ रिवायत में आता है कि जन्नत में इनका अल्लाह के नबी से निकाह होगा। हमें इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन फिरौन जैसे शख्स के बदले में अल्लाह ने नेक शौहर देने का तो वादा इस दुनिया में भी इन औरतों को दिया है जो वाकई इस किस्म के हालात में जमीर है। फिर मरियम बिनत इमरान, दीन की पाबंद और शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरत, इंजाम दोनों का जन्नत। दूसरी तरफ कुफर वालियां, एक नूह की बीवी थी, बीवी नबी की थी लेकिन उसकी तालीमात का असर ना हुआ। बीवी लूत की थी लेकिन बेहयाई करने वाले खानदान का साथ दिया, इंजाम जहन्नुम है। पूरी सूरत से क्या सीखा कि अल्लाह के हलाल को हराम नहीं कर सकते। हमारा घराना और हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो इस बारे को सुनने के बाद मसूलियत का एहसास दिल में पैदा हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिक्र कीजिए आपकी बेटियां क्या पहनती हैं, किधर जाती हैं, आपके बेटे कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या करके आते हैं। ये शौहर और बीवी दोनों की जिम्मेदारियां। मत डॉलर कमाइए जो इनके मुस्तकबिल के लिए, मत इनके नाम के घर लीजिए, गाड़ियां इनको मत दीजिए, अल्लाह आपको नहीं पूछेगा। लेकिन अगर अपने बच्चों को की तालीम और तरबियत ना करके गए, इनको वक्त ना दिया, तो आपकी कब्रों में ये जहन्नुम की खिड़कियां ना बन जाएं। फिर हमने देखा कानून के तहफ्फुज़ के लिए जिहाद भी ज़रूरी है, और सआदतमंद हज़रत आसिया का जिक्र और मरियम का जिक्र पड़ा। तो ये था पारा नंबर 28। गोल्डन वर्ड्स ले लीजिए, खुद को रह लो, याल को जहन्नम से बचाना है। ये जिम्मेदारी है, ये फ़र्ज़, इट्स नॉट एन ऑप्शन, ये कोई मशवरा नहीं है, ये हुक्म है। फिर इसी तरह लो, याल एक नेमत भी है और एक फितना भी है। हिजबुल्ला और हिजबुल शैतान का फ़र्क देखा, गलबा दीन में हमारा क्या किरदार है, जुमे और सफ़ों की अहमियत देखी, और यौमुत तगाबुन, कल कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फ़र्क देखा, और तकवा और हदूद इलाही की पासदारी करना सीखा। अल्लाह ताला हमें खुद को और अपने घर वालों को आग से बचाने वाला बनाए। फितनों का हल लीजिए, अहलो याल नेमत हैं और एक फितना भी है, इस बात को मजीद समझना। वो अहलो याल जो हमें हमारी दीनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मुआविन साबित हों, वो नेमत हैं, इनकी कदर करनी है। तो अल्लाह ताला उन सारे अहल और याल को भी बरकत दे कि जो दीन के इस काम में हमारे मुआविन और मददगार हैं, और कुरान के इस नूर को घर घर पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला उनके जरिए इस नूर को वाकई घर घर पहुँचाने वाला बनाए, कि हमारी कब्रों तक ये नूर पहुँच जाए, कि वहाँ एक रोशनी की खिड़की खुल जाए। और बीवियों को भी कदर करनी चाहिए शोहरों की, कोई बात नहीं अगर कुछ कमी बेशी है, और शोहरों को भी कदर करनी चाहिए। शायद आपकी बीवी की यही कोशिश है आपको अपग्रेड करके असाबिकुन असाबिकुन में ले जाएँ। फिर वो अहलो याल जो हमें सबीलो रुश्द से सबीलो गई की तरफ ले जाएं, वो हमारे दुश्मन हैं, इनकी तरबियत करनी है। अच्छी दीनदार नेक और सालेह और बापर्दा अहलिया का इंतखाब करना है। अब कर चुके हैं तो उसी को ये काम करवाइए, ना कि अब नहीं ढूंढने चले जाएं और झगड़े पड़े घरों में। इसे याद रखना है कि अच्छी माँ औलाद के अंदर नेक जज्बात, ख्यालात और हया मुंतकिल करने का बायस है। तो माएँ अपने भी तो हाल हुलिये देखें, फिर बेटियों को भी मजबूर करें। डांट सकते हैं आप, गुस्सा कर सकते हैं, पूरा हक है आपको। वो बच्ची जिसको आप पूरा समझा बुझा चुके नहीं मानती, और अभी आपकी डिपेंडेंट है, फिर आप जो सख्त एक्शन लीजिए। इब्राहिम ने तो बुत तोड़े थे, आपको चंद कपड़े जलाने और फाड़ने पड़ेंगे, लेकिन सामने एतमाद में रख कर जलाइए कि तुम खुद जलाओ, मैं तुम्हें नहीं पहनने दूंगी। हक है आपका, बहुत कुछ मिला है उनको आपसे अल्हम्दुलिल्लाह। हलाल रिस्क का एहतमाम करना है, और घर के अंदर का माहौल लड़ाई झगड़ों से पाक रखना है। ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखने के अलावा अहले ईमान का दीनी फ़र्ज़, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाना है। اہل و عیال کی ایمانی تربیت کا اہتمام کرنا ہے، گھر دوستوں اور ان کے مشاغل پر نظر رکھنی ہے، اور عباد الرحمن کی طرح اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے کردار کو خوبصورت کرنا ہے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین رول ماڈل بننا ہے، پچھلی زندگی کی کوتاہیوں پر توبہ کرنی ہے، اور آئندہ زندگی میں دین کی راہ پر اہل و عیال کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو وہ جیسے اکثر ڈراپ سین ہوتا ہے فلموں ڈراموں کا کہ پھر وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے، تو وہی جملہ اس پارے کے اینڈ پہ میں بھی بول دیتی ہوں، اس پارے میں جو باتیں ہوئی اس پہ عمل کریں گے تو آپ سب اہل و عیال اور بیوی شوہر بچے ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔